assembled this morning in the name of the Lord Jesus.
आज सुबह प्रभु यीशु के नाम में और बहुत प्रार्थना करने के बाद और आज सुबह मैं जल्दी नहीं उठा। मुझे एक प्रकार से उठने में देरी हो गई थी और अभी मैं समझता हूँ हर कोई जानता है कि ऐसा क्यों हुआ। मैं उस दिन को सुबह घर आया या उस रात को और मेरा पड़ोसी वो और उसकी छोटी बेटी के साथ आंगन में खड़ा था। उसकी पत्नी अस्पताल के प्रसूति विभाग में नर्स है। उसके हाथ में एक छोटी सी छड़ी थी, लगभग इतनी लंबी। उस पर कुछ छोटा सा अनुलेखन था, एक रिबन लगा हुआ था और उस पर चीज लिखी हुई थी। दादाजी ब्रैनम 11 अक्टूबर को लगभग 3:43 या 4:43 बजे, और नीचे बड़े कोष्टक में लिखा था, आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए अब तो मुझे सुबह थोड़ा और आराम करने का मेरे पास वैध रूप से अधिकार है। ये सही है भाई राइट, जब आप दादा बन जाते हैं। और इसलिए बहन किड, मैं समझता हूँ तब एक प्रकार से मुझे क्षमा करना आज सुबह, क्योंकि जब आप ओहियो से आई तो मैं उठ नहीं पाया। लेकिन सच में दादा बनने के बाद मुझे लगता है जैसे मैं 10 साल और बूढ़ा हो गया हूँ। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा एक छोटा पोता यहाँ पर है, लगभग 7 या 8 पाउंड का, कुछ ऐसा ही, सबसे कुरूप छोटा बालक जो मैंने कभी देखा था। कहा, वह बिल्कुल अपने दादाजी जैसा दिखता है, इसलिए, और मैं बस देख रहा था कि वो कहाँ गया, बिल्ली कहाँ गया। तो कल रात मेरे सारे फोन खत्म करने के बाद जब मैं हॉल से नीचे आ रहा था, मैंने जॉर्जिया और आसपास के निष्ठावान मित्रों के एक समूह से भेंट की, और हम सभी वहाँ उन छोटे बच्चों को देख रहे थे, और वे बहुत प्यारे हैं। अब वे बस, मुझे हमेशा कुछ ऐसा महसूस होता था, बिल्ली तुम डरते हो कि तुम उन्हें गिरा दोगे, तुम जानते हो वे बहुत ही छोटे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि यह बहन बिलर ने कहा था, मैं अक्सर सोचता था वह भी यही सोचती थी, लेकिन बाद में उसने पाया कि वे इतनी आसानी से नहीं गिरते, तो मुझे लगता है कि यही सही है। कल दोपहर को मुझे यहाँ हमारी कलीसिया की एक बहन के घर जाने का सौभाग्य मिला, उसकी बेटी के घर, और मैं सोचता हूँ कि वह भी यही कलीसिया में है जहाँ उन्होंने भाई नेविल के लिए एक छोटा सा जन्मदिन का रात्रि भोज आयोजन किया था, और कल उन्होंने एक और मील का पत्थर पार किया, और इसलिए हम भाई नेविल से कहते हैं जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हम में से हर एक जन, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा भाई है, और निश्चय ही उसने अभी 25 को पार किया है, जरा सा फिर मेरी तरह ही, और इसलिए हमने 25 को दूसरी बार पार कर लिया है। यही अब यह बूढ़ा व्यक्ति होने जा रहा है, जब आप उस उम्र को दूसरी बार पार करने जा रहे हैं, आप जानते हैं। मुझे याद है उस सुबह फ्रैंकी वेबर यहाँ आए हुए थे, और वो यहाँ हमारे पड़ोस में रहते थे, उसकी बेटी अब वहाँ रहती है, वो फ्लोरिडा में है, और फ्रैंकी और मैं एक साथ स्कूल जाते थे, और फ्रैंकी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर एक भेंट अर्पित की, और तब मैं लगभग 3 या 4 वर्षों से प्रचार कर रहा था। मैंने फ्रैंकी की प्रभु यीशु की ओर अगुवाई की, और उसने 1/4 में प्रवेश किया। मैं सोचता हूँ कि मैं 22 वर्ष का था, और उसने 1/4 में प्रवेश किया। मैंने सोचा, ओह प्रभु, क्या आपका मुझे बताने का मतलब है कि फ्रैंकी वेबर 25 वर्ष का हो गया है? ओह, मुझे उस समय का डर है जब मैं 25 वर्ष का हो जाऊंगा। अब मैं जल्द ही, तब उसने 3 बार 25 में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा हूँ, तो यह बस समय बीतने में देरी नहीं लगती। जब मैं वहाँ पर देखता हूँ और भाई और बहन किड को उनके 80 के आसपास वर्ष की उम्र में भी मजबूत स्थिति में देखता हूँ, मैं सोचता हूँ प्रभु यीशु 52 वर्ष की उम्र में मेरी शिकायत के लिए क्षमा करें। और वे, आप 80 वर्ष की हैं और भाई किड 81 वर्ष के हैं, क्या यह सही है? 81 वर्ष के, और वे अब भी सेवकाई में हैं, और मैं आपको बताता हूँ इससे हमें हिम्मत मिलती है, क्या ऐसा नहीं है? निश्चय ही मिलती है, निश्चय ही प्रभु हमारे लिए भला है। अब यहाँ सुबह की मीटिंग होने पर मुझे बस एक ही बुरी बात का डर है और वो है, यह एक खराब बात है, ऐसा कहना एक बहुत ही शर्म सा लगता है, लेकिन मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो सभाओं के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। मैं यहाँ इवांस को नहीं देखता, लेकिन वे यहाँ कहीं तो हैं। मुझे लगता है वे कभी एक भी मौका नहीं छोड़ते, और आप जानते हैं कि हर रविवार को प्रचार सुनने के लिए वे कितने मील गाड़ी चलाकर आते हैं, 1300 मील। उन्हें कलीसिया आने जाने में हर सप्ताह कम से कम $60 से $70 खर्च करने पड़ते हैं। ये सही है, जब वे अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आते हैं, और रास्ते में तो इतना खर्च हो ही जाता है। अब केवल इतना ही नहीं, लेकिन यहाँ अलबामा से एक छोटा सा भाई है जो हर सप्ताह लगभग इतनी ही दूरी से गाड़ी चलाकर आता है। भाई, ओ प्रभु, भाई वेल्ट वेस्ट मैं, वह मुझे एक लड़के की तरह ही दिखता है। वो एक पिता है, उसके कई बच्चे हैं, लेकिन वो हमेशा मुझे याद दिलाते हैं। वो बहुत ही युवा दिखते हैं, वो और उसकी पत्नी। भाई वेस्ट, भाई और बहन पाल्मर वहाँ पीछे बैठे हुए हैं, जो वहाँ नीचे दूर जॉर्जिया के मैकॉन से आते हैं, और बहन अनग्रेन, वे आमतौर पर यहाँ मेम्फ्रिस टेनेंसी से आती हैं। क्या वे आज सुबह यहाँ पर हैं? मैं, वे आमतौर पर रहते हैं। बहन अनग्रेन और मेम्फिस का झुंड जो टेनेंसी से आते हैं, दूर, जी हाँ, वहाँ बहुत ही पीछे, और वहाँ कुछ और भी हैं। मैं तो बस नाम लेने के लिए, इनकी संख्या बहुत ही है। इनमें से कुछ वहाँ दूर दक्षिणी कैंटकी में भी हैं, कुछ वहाँ दूर शिकागो के आसपास से हैं, और कुछ शिकागो से हैं और शिकागो के ऊपर आसपास से हैं। रविवार को मुझे पता चला कि एक व्यक्ति कैलिफोर्निया से आया है, और उसके पास बस रुकने के लिए थोड़ा सा समय था, मुझसे मिलना चाहता था। निश्चय ही मैं सभा के बाद व्यस्त हो गया था, और वो व्यक्ति मुझसे मिले बिना ही वापस चला गया। एक और व्यक्ति कहीं तो इलिनॉइस से आया था। यदि वो व्यक्ति आज सुबह यहाँ पर है, तो वे सबसे अच्छे स्वादिष्ट सेब थे जो मैंने कभी खाए हैं, और वह मेरे लिए एक झाड़ी के सेब लेकर आया था। और वहाँ जॉर्जिया के भाइयों में से एक, मैं सोचता हूँ कि ऐसा ही था, या कहीं से तो अखरोट का एक बड़ा पैकेट लाया, लगभग इतने बड़े कागजी छिलके, और ओह, मैं सचमुच उन्हें बड़े मजे से खा सकता हूँ। ठीक इस समय मैं निश्चय ही, मैं इन दिनों मन भावन भोजन नहीं खा रहा हूँ। मेरी माँ के चले जाने के बाद से मैंने नहीं खाया है। मैं एक नए दर्शन के लिए प्रभु से मांग रहा हूँ, बस नरम चीजें खा रहा हूँ, और जैसे कि मैं थोड़ा सा जितना मैं खा सकता हूँ, मैंने 20 पाउंड वजन कम कर लिया है, जो कि अब मैं उपवास नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं, केवल भोजन न करना ही प्रभु के लिए कोई अर्पण नहीं होता है। आप प्रभु को अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं जो आपके पास है। नहीं, मैंने भाई समनर को देखा, और उनके साथियों को भी वहाँ पीछे देखा। अभी बहुत सारे लोग हैं। मैं, जैसे पिछले रविवार को मैं उन लोगों का उल्लेख कर रहा था जो अपनी माँ के साथ बैठे थे, और इत्यादि, और एक सच्ची विश्वास योग्य बहन भी वहाँ पर थी। मैं उस महिला का नाम लेना भूल गया। अब यदि वो आज सुबह यहाँ है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उनमें से एक बहन बिलर थी, और दूसरी बहन और भाई स्टेफी थे, और बहुत सारे। मैं, आप सभी मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, कि आप जानते हैं कि जब मैं किसी नाम या व्यक्ति को अनदेखा करता हूँ, तो मेरा ये मतलब नहीं होता है। वे सभी कितने वफादार थे। वे कभी कभी बस यहाँ बैठे हुए मैं किसी ऐसे व्यक्ति का उल्लेख कर देता हूँ जो बस मेरे मन में अचानक आ जाता है, लेकिन मैं उसके लिए, मेरा मतलब पूरा झुंड होता है। हर एक जन, देखो ये बहुत ही अच्छा है, और फिर हर कोई हमारे प्रति बहुत प्यारा और दयालु है, और निश्चित रूप से इसकी सराहना करते हैं। और अब आज सुबह हम फिर से परमेश्वर के वचन के पास जाने की कोशिश करेंगे। अब मैं इस बयान को देना चाहता हूँ, जिससे कि यह वास्तव में स्पष्ट हो जाए कि मैं किसी भी सभा में ऐसे ही खुद को दिखाने के लिए नहीं आता हूँ। मैं वहाँ ऐसे ही कहने के लिए नहीं आता हूँ, ठीक है, मैं शायद प्रभु से प्रार्थना करना चाहता हूँ, ताकि मुझे एक संदेश दे जो बस लोगों को वास्तव में अच्छा महसूस करने को लगाए और चिल्लाने को लगाए। हमारे यहाँ ऐसे बहुत से संदेश थे, लेकिन, और हम इसकी सराहना करते हैं, ये ठीक है, समझे, ये अद्भुत है, समझे, लेकिन जो मैं जानना चाहता हूँ वो यह है, प्रभु आप मेरे विचारों को किसी चीज में निर्देशित करें, जिससे लोगों के लिए एक सहायता हो, जो उन्हें परमेश्वर के समीप ले जाए, जो उनके लिए कुछ तो करे। कि इतना ही नहीं कि उन्हें आत्मिक रूप से विकसित करे, लेकिन उन्हें परमेश्वर के ज्ञान और चेतावनी में विकसित करे, ताकि वे जान सके कि शत्रु आएगा तो कैसे खड़ा होना है। मैं एक बहन से बात कर रहा था जो इस सप्ताह यहाँ पर आई हुई थी, बहन पाल्मर। उसने कहा, मैं जानना चाहती थी कि मैं अब तक इस देश में कैसे रहा। यह आप बस यहाँ पर आते हैं, और हाँ, हर बार जब मैं घाटी से होकर निकलता हूँ, जैसे ही मैं शहर के अंदर जाता हूँ, मैं बीमार हो जाता हूँ। यहाँ इस घाटी का असर सेहत के लिए सचमुच खराब पड़ता है, हम ये जानते हैं। लेकिन परमेश्वर के पास यहाँ पर बहुत से बच्चे हैं, और इसलिए इन दिनों में से एक मैं अब प्रभु से मांग रहा हूँ कि परमेश्वर की ओर से एक सच्चे सीधे संदेश को पा सकूँ, समझे। और मैं परमेश्वर की सहायता से मुझे बस लक्ष्य को थामे रहना है जब तक वो नहीं आता है, अर्थात जब तक कि वह मुझे कोई बात को नहीं बताता, क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि वहाँ ऐसा होना चाहिए। यहाँ कुछ तो ऐसा है जो यहाँ पर घटित होने जा रहा है, और मैं जानना चाहता हूँ कि यह क्या है। मैं सीधे परमेश्वर से जानना चाहता हूँ ताकि मैं कह सकूँ कि यह यहोवा यो कहता है, समझे। और तब आप कर सकते हैं, आप लोग तब आप जान जाएंगे कि यह मैं नहीं हूँ। इसलिए मैं ऐसा करने की कोशिश करना चाहता हूँ कि आप पहले उसी से सुनूं, क्योंकि यदि वह अपने वचनों को एक व्यक्ति में डालता है तो फिर उसके बाद अब वो व्यक्ति नहीं है, यह तो वो है। तब यदि वो व्यक्ति इसे अपने आप में इसे कह रहा है तो किसी भी तरह से इसका कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन यदि वह प्रभु का वचन व्यक्ति में है तो यह सामने आएगा, और उसके बाद यह बिल्कुल सही होगा। यही है जो हमें बाइबल में कार्य आदेश दिया गया था। मैं समझता हूँ व्यवस्था विवरण के 20वें अध्याय में इसमें कहा गया था, हाँ, देखो, और यदि कोई प्रभु के नाम में बोलता है और यह पूरा नहीं होता है तो उस व्यक्ति पर कोई ध्यान न देना, देखा। लेकिन यदि वे इसे बोलते हैं और यह पूरा हो जाता है, तब बेहतर है कि आप इसे सुने, देखो, क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से आ रहा है। इसी तरह से परमेश्वर ने किया है, उसने अपनी नियमित योजना को यहाँ बाइबल में रखा है। हम जानते हैं कि इसे कैसे पढ़ना है, लेकिन वहाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि कलीसिया के लिए हैं, और समय और बातों के लिए, जिसे उसने बाइबल में यहाँ नहीं लिखा है। इसलिए वो अपनी आवाज को एक व्यक्ति में डालता है और वे इसे आगे बोलते हैं, देखो, इसे आगे बोलते हैं। तो तब उस व्यक्ति को जांचने का तरीका यह है कि पता लगाया जाए कि क्या ये उस तरह से होता है जिस तरह से वह इसे कहता है। फिर यदि ऐसा होता है तो फिर इसी तरह से होता रहता है, तो तब हम जान जाते हैं कि यह प्रभु की ओर से है। तब हमारे पास भरोसा होता है, तब ताकि उन आने वाली चीजों के लिए तैयार हो जाएं। मैं आज सुबह वचनों में से दो या तीन स्थानों से पढ़ना चाहता हूं, और मैं सबसे पहले पढ़ना चाहता हूं निर्गमन की पुस्तक में से,
I believe about the fourth chapter of
और मैं सोचता हूँ लगभग निर्गमन के चौथे अध्याय से यह आरंभ होता है। और अब मैं घोषणा कर सकता हूँ, जब आप इन वचनों को पढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, मैं घोषणा कर सकता हूँ जो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जिसे प्रभु ने मेरे हृदय पर आज सुबह बोलने के लिए डाला है। मैं नहीं जानता कि वह इसके साथ क्या करेगा। लोगों के लिए हो सकता है यहाँ एक व्यक्ति के लिए निर्देशित हो सकता है कोई तो बाहर के देश में टेप सुनने वालों के लिए कहीं तो और हो, लेकिन मैं आज सुबह घोषणा करना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ पिछले रविवार की सुबह मैंने एक सच्चे गवाह पर प्रचार किया, और इस रविवार की सुबह प्रभु ने चाहा तो मैं एक सच्चा चिन्ह जिसे अनदेखा किया गया पर प्रचार करना चाहता हूँ। भाई पाल्मर मुझे पिछली रात को बता रहे थे कि पिछले रविवार की सुबह मैंने इस विषय पर बोला था या कहा था कि मैं इस रविवार को बोलने जा रहा हूँ जो है कलीसिया के चार जंक्शन। और जब मैं पिछली रात को गया, मैं आम तौर पर इसे लिख लेता हूँ। मैं नहीं जानता कि आपको ऐसा करना है या नहीं, लेकिन मेरे पास सोचने के लिए बहुत सी चीजें होती हैं। मुझे कुछ मिलता है तो मुझे इसे एक कागज के टुकड़े पर लिखना होता है, समझे। और मैं जाकर इसकी ओर देखने लगा, और इससे मेरा जो कहने का अर्थ था वो ठीक चार जंक्शनों से नहीं था। मैंने वास्तव में इसे उस तरह कहा था, लेकिन मेरा मतलब था कि कलीसिया की शासन व्यवस्था के चार रूप। और ऐसा करने के लिए मुझे एक साथ बहुत सारे इतिहास को इकट्ठा करना होगा, और हो सकता है अगली बार मेरे पास ये विषय हो, लेकिन उसे तैयार करने के लिए मेरे पास जितना अध्ययन का समय था उससे अधिक समय चाहिए, क्योंकि आपको पीछे जाकर और तारीखें और इत्यादि चीजें एकत्र करनी होगी, क्योंकि आप सभी सब समझते हैं कि यह कई स्थानों से जुड़ा हुआ है। क्यों हम इन बातों को कहने से पहले इन बातों के विषय में निश्चित रूप से पक्का होना चाहते हैं, उन्हें सही सही होना है, क्योंकि हम यहाँ पर खड़े हुए हैं जो संसार के सबसे उच्च पद को पकड़े हुए है, एक सेवक का पद, एक सेवक और सबसे सच्चा और सही सटीक। हमें इसी तरह से होना ही चाहिए। हमें ऐसा करने के लिए अवश्य ही परमेश्वर पर निर्भर होना है। अब निर्गमन की पुस्तक में चौथा अध्याय, और मूसा ने उत्तर दिया और कहा, देखो वे मेरी प्रतीति न करेंगे और न ही मेरी बात को मानेंगे, क्योंकि वे कहेंगे यहोवा ने तुझ पर प्रकट नहीं किया। और यहोवा ने उससे कहा, यह तेरे हाथ में क्या है? और उसने कहा, एक लाठी। और उसने कहा, इसे भूमि पर डाल दे। और उसने उसे भूमि पर डाला और यह एक सर्प आ गया और मूसा उसके सामने से भाग गया। और यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ बढ़ाकर और इसे पूंछ से पकड़। और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे पकड़ लिया और वह उसके हाथ में लाठी बन गई, जिससे कि वे विश्वास कर सकें कि उनके पूर्वजों का प्रभु परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर तुझ पर प्रकट हुआ है। और यहोवा ने उससे यह भी कहा, अपना हाथ अपनी छाती पर रख। और उसने अपना हाथ उसकी छाती में डाला और उसे बाहर निकाला था तो क्या देखा कि उसके हाथ में हीम के समान कोर था। और उसने कहा, अपना हाथ अपनी छाती में फिर से डाल। और उसने अपना हाथ फिर से छाती में डाला और उसे अपनी छाती में से निकाला और देखो यह फिर से उसकी दूसरी देह के समान हो गया था। और ये ऐसा होगा, यदि वे तेरा विश्वास न करें और न ही पहले चिन्ह की आवाज को सुने, तो वे अंतिम चिन्ह की आवाज का विश्वास करेंगे। आप दो चिन्हों पर ध्यान दें, और वो हर चिन्ह की एक आवाज थी। मैं आठवां पद फिर से पढ़ता हूँ, और ये ऐसा होगा, यदि वे तेरा विश्वास न करें और ना ही पहले चिन्ह की आवाज को सुने, तो वे अंतिम चिन्ह की आवाज का विश्वास करेंगे। और ऐसा हो, यदि वे इन दो चिन्हों का भी विश्वास न करें और ना ही तेरी आवाज को सुने, कि तू उस महानंद के जल में से लेकर और उस सूखी भूमि पर उढ़ेल देना, और जो जल जिसे तू महानंद में से निकालेगा वह सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। और अब संत यूहन्ना में पहला अध्याय और छठवां पद, हम इन पदों को पढ़ते हैं, या इस पद को, संत यूहन्ना पहला अध्याय और छठवां पद, और वहाँ परमेश्वर की ओर से एक मनुष्य भेजा गया था जिसका नाम यूहन्ना था। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से भेजा गया जिसका नाम यूहन्ना था। और यज्केल 24:24 में, मैं इस वचन को इसमें रखना चाहता हूँ, इसे पुराने नियम से लेकर भविष्यवक्ताओं और नए नियम तक जोड़ने की कोशिश करते हुए, जिससे कि आप समझ जाएं कि यह निर्गमन से होते हुए ऐसा आरंभ से अंत तक होता रहा है। यज्केल तेरे लिए एक चिन्ह ठहरेगा, जो कुछ उसने किया है तू उसी के अनुसार करना। और जब यह आएगा तो तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु परमेश्वर हूँ। अब आइए हम अपने सिरों को कुछ क्षण के लिए झुकाएं, जब हम आदर पूर्वक उसके पास प्रार्थना के माध्यम से आते हैं। पिता परमेश्वर, हम अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर के नाम में आते हैं, अर्थात धर्मी यीशु मसीह के नाम से आते हैं। हम ये जानते हुए आते हैं कि वह हमारी बात सुनेगा, क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति के समान नहीं आए हैं जैसे कोई ऐसे ही भवन में आया हो, लेकिन हम विश्वास के साथ साहस पूर्वक आए हैं, यह विश्वास करते हुए कि उसने जो प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करेगा। इसलिए आज हम मांगते हैं प्रभु कि आप हम में से प्रत्येक को लें जो उपस्थित हैं, वहाँ पुलपिट से लेकर दूर भवन के पीछे तक, सारे क्षेत्रों में से होते हुए और हर एक हृदय को खोलें और हमारे सुनने वाले कान का खतना करें, जिससे कि जीवित परमेश्वर का वचन आज सुबह स्वर्ग से आ सके और हमारे हृदय के अंदर उढ़ेल दिया जाए, जिससे कि हम विश्वास कर सकें जैसा कि हम प्रभु के वचन को सुनते हैं और जैसा कि आज सुबह हमारे कानों के लिए पढ़ा गया है। और हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, आपका वचन सत्य है। और अब जब हम बुरे समय को निकट आते हुए देखते हैं, तो परमेश्वर का सारा क्रोध ऊपर आकाश में फैल जाता है, और यह किसी भी समय हो सकता है जो कि इस राष्ट्र के साथ कुछ तो घटित होगा, जिसने आपको त्याग दिया है, कि वहाँ पर एक बड़ा विस्फोट होगा जो कि राष्ट्र को पूरी तरह से संसार के नक्शे से मिटा देगा, और इसके पीछे एक अधर्मी देश की धमकी होगी जो ऐसा करने के लिए बहुत उत्सुक है, और जानते हुए कि वे परमेश्वर के निकट आने की बजाय वे और भी दूर होते हुए दिखाई देते हैं, जानते हुए कि प्रकाशित वाक्य की किताब और उन सारे वचनों में से होते हुए इस दिन की भविष्यवाणी की गई है, तब आओ हम चेतावनी को ले लें। प्रभु, हम आलसी न बने और न ही वैसे ही नींद में पड़े रहें। होने पाए हम जागें और अपने आप को हिलाएं। होने पाए आज हमारे पास वो समझ हो जैसी हमारे पास पहले कभी नहीं थी। होने पाए हमारे हृदय इस दिन के बाद आग से जल उठें, कि हमारे प्राणों में भी एक प्रज्वलित आग जल उठे जो इस देश में से होकर फैल जाए प्रभु, और हम जहाँ कहीं भी होते हैं एक जीवित गवाही हो। बीमारों और पीड़ितों को आशीषित करें, वे जो आवश्यकता में हैं, चाहे वे हमारे बीच में हो या हमारे बीच से बाहर, आपके लोग जो हर कहीं पर हैं। प्रभु, आपके वचन को आशीषित करें, अपने सेवक को पवित्र करें और अपने दासों को जो सुन रहे हैं, कि एक साथ हमें उसके प्रकट होने के एक नजदीकी एहसास को लाया जा सके जीवन में पहले से कहीं और अधिक। मैं केवल उनके लिए ही प्रार्थना नहीं करता जो यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन उनके लिए जो संसार भर में टेप को सुनेंगे, ताकि उन्हें जीवित परमेश्वर की कलीसिया में लाया जा सके, क्योंकि हम समझते हैं कि केवल एक ही मार्ग है कि हम इस कलीसिया के एक सदस्य बन सकते हैं, जो कि आत्मा के जन्म से है, तब हम एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लेते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर संसार भर में उनमें से प्रत्येक के लिए, कि आप अपने लिए महिमा को पाएं, और होने पाए हम अपने प्राणों को इस तरह से तैयार करें जो कि संसार भर में एक पुकार के साथ हो, हम चिल्ला सकें फिर भी, हे प्रभु यीशु आ जा। हम इसे यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। एक सच्चा चिन्ह जिसे अनदेखा किया गया, मनुष्य चिन्हों को ढूंढ रहा है वहाँ पीछे फिरौन से लेकर आज के दिन तक, और यीशु ने हमें वहाँ एक समय के लिए बताया चिन्हों को ढूंढने वाले होंगे, और कहा कि एक दुष्ट व्यभिचारी पीढ़ी चिन्हों को ढूंढेगी, लेकिन फिर भी उन्हें एक चिन्ह दिया जाएगा, और उस पीढ़ी को पुनरुत्थान का एक चिन्ह मिलना था, जो कि एक कमजोर दुष्ट और एक व्यभिचारी पीढ़ी होगी जिसे एक पुनरुत्थान का एक चिन्ह दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि यह चिन्ह जो हमारे सामने रखा है यहेजकेल के 24वें अध्याय और 24वें पद में है, इस भविष्यवक्ता को एक चिन्ह बनाया गया था, और यही वो चिन्ह है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ। यह व्यक्ति इज़राइल के लिए एक चिन्ह बना, और सारे वचनों में से होते हुए परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं को चिन्हों के लिए उपयोग किया है और उन्हें हमेशा ही अनदेखा किया गया है। ऐसा लगता है वे उस चिन्ह को कभी नहीं पकड़ पाते हैं। वे हमेशा ही भावना के चिन्ह की तलाश में रहते हैं। यहाँ तक कि यीशु के दिनों में फरीसियों ने भी कहा, हमें स्वर्ग से एक चिन्ह दिखा। लेकिन यीशु ने उनसे उल्लेख किया कि उन्हें एक चिन्ह दिया जाएगा। तुम्हारे पास पहले से ही एक चिन्ह है। कहा, तुम आकाश को देखकर पहचान सकते हो। तुम उस चिन्ह की ओर देख सकते हो। तुम कहते हो, यदि आकाश लाल है तो नीचे कल खराब मौसम होगा। यदि वे एक चिन्ह की ओर देखते तो उन्होंने उसकी ओर देखा होता और जान जाते कि वह उनके लिए परमेश्वर का चिन्ह था, क्योंकि उसके विषय में उनकी भविष्यवाणियां उनकी आंखों के सामने पूरी हो रही थी। लेकिन वे फिर भी एक चिन्ह के लिए देख रहे थे। यह कितनी अजीब बात है कि मनुष्य ऐसा करता है, जो एक चिन्ह के लिए देखता है, जबकि एक चिन्ह ठीक उनके साथ ही होता है, ठीक उनके बीच में होता है। अब इज़राइल इसी स्थिति में आ गया था और कभी कभी उस चिन्ह को जिस यातना से होकर जाना पड़ता है, ये विस्मयकारी होता है। वो यातना जिसमें से यीशु होकर गया, जिससे कि परमेश्वर के चिन्ह को साबित करे कि वो मसीहा था। हम यहाँ पर पाते हैं कि यह युवा भविष्यवक्ता, जिसका नाम येजकेल था, वो निरंतर हर समय एक चिन्ह बना रहा। उसने अपने आप को किस तरह से यातना दी। यहाँ एक जगह हम पाते हैं जहाँ वह 390 दिनों तक अपनी बाई करवट में ही लेटा रहा। परमेश्वर ने उससे कहा कि कुछ फलियां और कुछ सब्जी ले, इन सभी को एक साथ रखकर इसे पका और इसे अपने बगल में रख दे और जाकर एक सपाट पत्थर पर लेट जा और 390 दिनों तक अपने बाईं ओर अकेला पड़ा रह, करवट भी नहीं बदलना। इस पर सोचें और फिर कहा, दाहिनी ओर पलटकर और फिर से 40 दिन तक वहीं पड़ा रह। और उसने यहाँ कहा, येजकेल, तुम जो देख रहे हो, कहा, क्योंकि तुम लोगों के अधर्म का भार उठा रहे हो, मैं हर दिन उनके लिए एक वर्ष गिनूंगा। ऐसा होने पर जब हर दिन वो वहाँ लेटा रहा, इसका मतलब था कि एक वर्ष वे बंधुआई में रहेंगे और उनके अधर्म के काम परमेश्वर को याद रहेंगे और परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को अब और नहीं सुनेगा। लेकिन जिस यातना से उस व्यक्ति को होकर जाना था, इसकी आवश्यकता क्यों थी? बहुतों ने सोचा, एक व्यक्ति के लिए ऐसी चीज को करना क्यों आवश्यक है? ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग वचन को नहीं पढ़ते हैं और वे प्रार्थना नहीं करते हैं। इसलिए परमेश्वर सर्वोच्च है और वह अपने भविष्यवक्ता को एक चिन्ह होने के लिए भेजता है। लोग पढ़ना नहीं चाहते, उन्हें पढ़ने में दिलचस्पी नहीं और वे प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि वे भी उनके पास करने के लिए अन्य काम है। वे प्रार्थना करने के लिए समय नहीं निकाल सकते और बाइबल उन्हें उबाऊ या बोर लगती है। इसमें इन आधुनिक दिनों के लिए या किसी भी दिन के लिए पर्याप्त गतिविधि नहीं है। आप जानते हैं, मैं सोचता हूँ कि यह पौलुस ने कहा था, तुम परमेश्वर की पत्री हो, सारे मनुष्यों के द्वारा पढ़ी जाती है। परमेश्वर लोगों को चिन्हों के लिए उपयोग करता है ताकि अपने चिन्हों को दिखाए, और बहुत सी बार वो चिन्ह, और अधिकतर हर बार जब तक ये चुने हुए लोगों के साथ न हो, उस चिन्ह को अनदेखा किया गया है और आलोचना की गई है, उपहास उड़ाया जाता है, उसे बाहर निकाला गया है। और पुराने नियम में भी यहाँ तक ऐसा माना गया है भविष्यवक्ताओं के दिनों में कि उन्हें मानसिक रूप से परेशान लोग माना जाता था। उन्होंने सोचा कि वे भविष्यवक्ता मानसिक रूप से शंकित थे कि उनके दिमाग में कुछ तो गड़बड़ थी, और वे उन्हें देखते थे कि वे जंगल में से आते और चिन्हों को दिखाकर, और वे मुड़कर फिर से जंगल में वापस चले जाते और वे उनका उपहास उड़ाते, क्योंकि वे लोग वचन को नहीं जानते थे। यीशु ने एक समय फरीसियों को पुनरुत्थान के विषय में बताया। उन्होंने कहा, हमारे पास एक व्यवस्था कहती है कि यदि एक भाई मर जाता है और वह अपने पीछे एक पत्नी को छोड़ता है और उसकी कोई संतान नहीं है, कि उसका भाई उस पत्नी को ले और अपने मरे हुए के लिए बच्चों को उत्पन्न करे और कहा, हमारे पास एक मनुष्य था जिसके सात भाई थे और पहले वाले ने एक पत्नी को लिया और वो मर गया बिना किसी संतान के, और उसके बाद उसके भाई ने उसे लिया और फिर वो मर गया और आगे सातवें तक ऐसा हुआ और अंत में वह स्त्री मर गई। कहा, अब पुनरुत्थान में, कहा, अब उन सातों में से वह किसकी पत्नी होगी? ओह, मैं उस वचन को पसंद करता हूँ। यीशु ने कहा, तुम हमेशा ही गलती करते हो, ना ही वचनों को जानते हो और ना ही परमेश्वर की सामर्थ को। ओह, यदि वो आज यहाँ खड़ा होता तो इसे किस तरह से जोर जोर से कहता, तुम हमेशा गलती करते हो, ना ही वचनों को जानते हो और ना ही परमेश्वर की सामर्थ को। परमेश्वर की सामर्थ वचन में जुड़ी हुई है, तुम बहुत बड़ी गलती को करते हो। तब उसने आगे कहा, पुनरुत्थान में वे न तो विवाह करते हैं और न ही विवाहित होते हैं, लेकिन वे दूतों के समान होते हैं। उसने यह नहीं कहा कि वे अब दूत होंगे, लेकिन वे दूतों के समान होंगे। उनमें यौन ग्रंथियां नहीं होंगी, वे विवाह नहीं करते हैं, न ही विवाह में दिए जाएंगे। हम नैतिकता के दिन में रह रहे हैं, मतलब मरणहार राज्य के दिनों में रह रहे हैं, लेकिन एक दिन आ रहा है जब वहाँ पर एक अमरहार राज्य आने वाला है, और वो अमरहार राज्य वही है जहाँ छुड़ाए हुए लोग रहेंगे, वे लोग जिन्हें छुड़ाया गया है, और वो जीवन जो इस देह को छोड़ता है ताकि परमेश्वर के पास वापस जाए जो इसे देता है, किसी दिन फिर से जीवन के पेड़ से वापस आ जाएगा ताकि हमेशा के लिए राज्य करे। कैसे इस युवा पुरुष ने, युवा भविष्यवक्ता ने बलिदान किया और अपने सारे जीवन को अपने लोगों के लिए एक चिन्ह होने के लिए दे दिया, उस दंड की चेतावनी के लिए जो उन्हें मिलने वाला था, क्योंकि वे वही थे जिन्हें हम लापरवाह कहते हैं। वे परमेश्वर के साथ कुछ भी लेना देना नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं का विश्वास नहीं किया और उन्होंने बस उनका मजाक उड़ाया, और लेकिन इसके अलावा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इस पर कितना भी विश्वास करना नहीं चाहें, परमेश्वर ने देखा कि उन्हें ये किसी भी तरह मिल गया है। इजाबेल यह स्वीकार नहीं करना चाहती थी कि आहाब उसका पास्टर है, लेकिन वो था। परमेश्वर ने देखा कि जो भी हो उसे चिन्ह मिल गया था। आज ये राष्ट्र भी ऐसा ही है। परमेश्वर न्यायी और सच्चा है, इसलिए वह अपने वचन के अनुसार कोई भी आगे की घटना को नहीं होने दे सकता। एक चिन्ह को दिए बगैर उनके पास हमेशा से ये रहा है। अब हमें इसके लिए देखना होगा, और मुझे पक्का है कि वे लोग जिनके पास वचन की अच्छी समझ है, वे जानते हैं कि कैसे देखना है। नूह अपने दिनों में लोगों के लिए आने वाले न्याय का एक चिन्ह था। नूह अपने दिनों में एक कट्टरपंथी माना जाता था, वो एक भविष्यवक्ता था, उसे ऐसा व्यक्ति माना जाता था जिसके पास सही दिमाग नहीं है, और वह व्यक्ति वर्ष दर वर्ष हथौड़े को मारता रहा, एक जहाज को बनाता रहा, जब धरती पर यहाँ तक पानी भी नहीं है सिवाय उसके जो झरनों में था, और उसने कुछ तो भविष्यवाणी की जो कि सांसारिक दिमाग के लिए हास्यास्पद थी। उसने कहा, वहाँ ऊपर आकाश से पानी आने वाला है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत से लोगों ने उससे कहा होगा, मुझे दिखाओ कि यह कहाँ पर है। विज्ञान ने कहा होगा, मैं साबित कर सकता हूँ कि वहाँ पर कोई पानी नहीं है। लेकिन फिर भी यदि परमेश्वर ने उसे बताया कि यह आकाश से आ रहा है, तो परमेश्वर इसे देख लेगा कि उसका वचन पूरा हो। और जबकि वहाँ पर अब भी जल दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि वहाँ आकाश में कभी भी बादल नहीं हुए थे, कभी एक बूंद भी बारिश नहीं हुई थी, वहाँ बारिश जैसी कोई चीज कभी नहीं थी, फिर भी नूह हर समय बारिश के लिए एक जहाज को तैयार कर रहा था। यह एक जीवित प्रमाण था कि इस भविष्यवक्ता ने विश्वास किया कि वह किस विषय में बात कर रहा था, क्योंकि वो इसके लिए तैयारी कर रहा था। और कोई भी व्यक्ति जो वास्तव में विश्वास करता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, आप इसके लिए तैयार हो जाएंगे। क्या मैं ठीक यहाँ पर एक मिनट रुक सकता हूँ? नूह के दिन में जैसा यीशु ने कहा, ऐसा ही मनुष्य के पुत्र के आने पर होगा। यदि आज कलीसियाएं विश्वास करती हैं कि वे किस विषय में बात कर रहे हैं, वे जो कहते हैं तो उसे क्रिया में भी लाएंगे। हम विशाल भवन और स्मारक कैसे बना सकते हैं? भवनों पर लाखों डॉलर कैसे खर्च कर सकते हैं? बड़े बड़े संगठन कैसे फैला सकते हैं और इस तरह की चीजें? और साथ ही यह भी प्रचार करें कि मसीह किसी भी समय आने वाला है। हम कैसे जारी रख सकते हैं? हमारे सभा के लोगों की ओर देखें और उन्हें परमेश्वर की सामर्थ्य से अलग होते हुए देखें और सांसारिक बातों में जाते हैं और इसे कलीसिया के अंदर लेकर आते हैं और इसे एक साथ मिला देते हैं और हम इसकी अनुमति देते हैं। लोकप्रियता के कारण और लोकप्रिय विचारों और सांप्रदायिक मतभेदों के कारण अगले संगठन से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। जो हम प्रचार करते हैं, हम कैसे क्रिया में ला सकते हैं और संसार इसे देखता है, वे ये जानते हैं। इतना तक धर्म एक ऐसी चीज बन जाती है जैसे कि यह केवल किसी नियम से संबंध रखता है या किसी चीज के समाज से संबंधित है। धर्म, मसीह का उद्धार करना, ये एक समाज नहीं है, यह किसी चीज से जुड़ना नहीं है, यह तो एक जीवित अनुभव है। अब नूह वो उत्पन्न कर रहा था जिसके बारे में वो बात कर रहा था। उसने कहा, वहाँ इस अधर्मी पीढ़ी के ऊपर न्याय की एक बाढ़ आने वाली है और परमेश्वर आकाश से बारिश को उंडेलेगा और वह सारी धरती पर बाढ़ को लाएगा। और न केवल वह ऐसा कर रहा था, लेकिन वह बचने के लिए एक मार्ग को बना रहा था और लोगों को इस पर आने के लिए कह रहा था, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी। लेकिन नूह एक भविष्यवक्ता के रूप में उस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह था, एक चिन्ह जिसके विषय में बुरा बोला गया था, एक मनुष्य जिसे एक पागल व्यक्ति समझा गया था, कुछ तो तैयार कर रहा था जिसका कि वहाँ कहीं भी कोई प्रमाण नहीं था या कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि इसके लिए कभी उपयोग हुआ हो। लेकिन आज इसी तरह से लोग सोचते हुए दिखाई देते हैं। वे बम से एक बाहरी बचाव के आश्रय के बारे में सोच सकते हैं। आपके लिए एक बाहरी बचाव का आश्रय क्या भला करेगा, जबकि धरती पर एक पेड़ या पत्थर भी नहीं बचेगा। हमारे पास एक बचाव का आश्रय है जो मसीही लोगों के पास है। जैसा कि मैंने कहा, कुछ रविवार पहले या रास्ते में आते हुए कहीं तो सोचा था, यह कोई बाहरी बचाव का आश्रय नहीं है, यह तो एक भीतरी बचाव का आश्रय है, जहां हम इसमें भीतर जाते हैं तेजी से, अपने पूरे हृदय से और अपने पूरे प्राण से और अपने पूरे मन से मसीह में, परमेश्वर का सुरक्षा का जहाज। लेकिन नूह उस दिन में एक संकी माना गया, मूर्खता का प्रचार करते हुए और लोगों के सामने एक चिन्ह को दिखाते हुए, उन्हें चेतावनी देते हुए संसार को दोषी ठहराया, एक जहाज को बनाते हुए संसार को दोषी ठहराया। जब उसके तैरने के लिए वहाँ पानी नहीं था, उसने संसार को दोषी ठहराया। बाइबल ने कहा इब्रानियों 11वीं अध्याय में, उसने संसार को दोषी ठहराया और अपने खुद के घराने को बचाया तैयारी करने के द्वारा, और उस दिन के आने वाले न्याय का परमेश्वर का एक चिन्ह बना। क्या ही महिमामय बात है। बाद के वर्षों में एक और चिन्ह आया, यह मूसा था, एक भविष्यवक्ता, यह इज़राइल के लिए परमेश्वर का चिन्ह था। वे 400 वर्ष की गुलामी में थे और परमेश्वर ने उनके छुटकारे से ठीक पहले उनके लिए एक चिन्ह को तैयार किया था, और वो इज़राइल के लिए छुटकारे का चिन्ह था और मिस्र के लिए न्याय का चिन्ह था। नूह अपने लोगों के लिए छुटकारे का चिन्ह था और नाश हुए संसार अर्थात अविश्वासियों के लिए न्याय का एक चिन्ह था। वही जल जिसने संसार को दबा दिया और संसार को डुबा दिया, वही नूह को बचाने का एकमात्र साधन था। केवल एक चीज जो उसे बचा सकती थी, वो था न्याय। केवल एक चीज जो आज कलीसिया को बचाएगी वो है न्याय। परमेश्वर न्याय को मापदंड में रखता है। लेकिन नूह ने भी यही प्रचार किया, वो एक चिन्ह बन गया। और अब इसराइल 400 वर्षों के बाद वे छुटकारे के लिए दुहाई देने लगे, और परमेश्वर तब तक स्वयं को प्रकट नहीं करता और न ही स्वयं को दिखाता है जब तक कि उसके लोग उसे लेने के लिए तैयार नहीं हो जाते जो वो दिखाता है। अब ओह, ठीक वहाँ क्या कहा जा सकता है? यदि ऐसा था तो किस तरह से परमेश्वर ने इस राष्ट्र को उघाड़ा छोड़ दिया है? वे बेहतर जानते हैं। अखबारों ने इसे यहाँ से और वहाँ से हर कहीं से प्रकाशित किया है। उसके आगमन के चिन्ह दिए गए हैं। और वे निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं जैसे वे इसे अनदेखा करते हैं। वे बिना किसी बहाने के हैं। हम अंत समय में हैं। परमेश्वर केवल अपने भविष्यवक्ताओं को भेजता है जब लोग किसी भविष्यवक्ता को चाहते हैं। परमेश्वर अपना चिन्ह तब भेजता है जब लोग चिन्ह के लिए तैयार होते हैं। लेकिन बात ऐसी है कि लोग शायद ही कभी वे एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां वे भावनाओं को चाहते हैं, या वे कुछ ऐसा चाहते हैं, हमें स्वर्ग से एक चिन्ह दिखा। लेकिन जब परमेश्वर एक चिन्ह को भेजता है तो वे इसे देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए यह ज्ञानियों और बुद्धिमानों की आंखों से छिपा कर रखता है ताकि उन बालकों पर प्रकट करे जो सीखेंगे। वे इस चिन्ह को अनदेखा करते हैं। इसराइल को किस तरह से जानना चाहिए था जब उस सही बालक का जन्म हुआ था, जब उन्होंने वहाँ ऊपर की ओर देखा और देखा कि वे जिस वर्ष के समय में रह रहे थे। तेरे लोग 400 वर्षों तक पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे, लेकिन उसके बाद मैं उन्हें बाहर निकाल लाऊंगा। उन्हें जानना चाहिए था कि समय निकट है, और जब उन्होंने उस सही बालक को जन्म लेते देखा, यहाँ तक कि माता और पिता अमराम और योकेबेद भी, वे राजा की उन आज्ञाओं से नहीं डरे थे, और उन्होंने उस बालक को नदी में डाल दिया जहाँ पर मगरमच्छ थे। उनमें से कोई भी उसे खा न सका। उन्होंने देखा कि वहाँ एक चिन्ह था, लेकिन उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया। वे इसके लिए तैयार नहीं थे। परमेश्वर ने उसे सीधा अंदर लाकर और उसे फिरौन के महल में रख दिया, और फिरौन को उसे पालने पोसने दिया, और उसने उसे सारी वो शिक्षा दी जो उसे मिल सकती थी, ताकि यह दिखाए कि परमेश्वर किस तरह से वो काम करता है। और फिर उसे रेगिस्तान के पीछे ले गया, उसे इसके विषय में सब कुछ भूलने को लगाया। उस समय फिरौन उसे प्रशिक्षित कर रहा था, अब परमेश्वर उसे प्रशिक्षित कर रहा था। फिरौन के पास उसे प्रशिक्षित करने के लिए 40 वर्ष थे, तब परमेश्वर ने उसे प्रशिक्षित करने के लिए 40 वर्ष लगाए। उसे इसके बारे में सब कुछ भूल जाने दिया। मनुष्य का प्रशिक्षण और परमेश्वर का प्रशिक्षण। फिरौन एक पुत्र को एक अगुवा होने के लिए, एक राजनयिक, एक योद्धा के लिए प्रशिक्षित कर रहा था। एक और फिरौन आने वाला था जो मिस्र को उसके ऊंचे स्थानों पर रखेगा, अन्य सभी राष्ट्रों को नीचे गिराने के लिए, और उन्हें फिरौन का सम्मान करने को लगाएगा। लेकिन परमेश्वर ने उसे रेगिस्तान के पीछे ले जाकर उसमें से सब कुछ निकाल दिया, और उसे 5 मिनट के समय में एक जलती हुई झाड़ी के पास उसे दिखाया कि वो एक जीवित परमेश्वर है, और उसमें से सारा डर निकाल दिया, उसे तैयार कर दिया। वो एक चिन्ह था। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग प्रार्थना करें, और जब इसराइल पर ऐसी स्थिति में इतना टैक्स लगाया गया कि वे आगे नहीं जा सके, उनका समय पूरा हो गया था, और उनका बोझ जो उन्होंने सोचा उससे भी कहीं अधिक बढ़ गया था, तब उन्होंने प्रार्थना करना आरम्भ किया। और जब लोगों ने प्रार्थना करना आरम्भ किया, तब परमेश्वर ने सुनना आरंभ किया। ये परमेश्वर के वचन के पूरा होने का समय आ गया था। और इसलिए जब अमराम और योकेबेद ने देखा कि वचन के पूरा होने का समय आ गया है, तो वे परमेश्वर के पास प्रार्थना करने चले गए। और ये अक्सर वे ही लोग होते हैं जो प्रार्थना करते हैं। जिनके पास बोझ होता है वही लोग कुछ तो पाते हैं। ये वही लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, जो ऐसा करने के लिए परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए हैं। आज सुबह हम नाश्ते की मेज पर बात कर रहे थे, जब हम कलीसिया जाने के लिए जल्दी जल्दी कुछ टोस्ट और इत्यादि खा रहे थे, वहाँ किसी एक व्यक्ति के बारे में कुछ कहा गया था जो यहाँ से दूर था, जो कैंसर से ठीक होने के बाद वह फिर से सिगरेट पीने लगा था। मैंने कहा, क्या ही दयनीय बात है। तो फिर एक ने कहा और कहा, सिगरेट पीना यही है जो सबसे भयानक चीज है, इससे दूर रहना चाहिए। मैंने कहा, मैं ये जानता हूँ क्योंकि यह एक शैतान है। और मैंने कहा, यह एक शैतान है। और मैंने कहा, और आप इसे तब तक बंद नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर की सामर्थ आप पर न हो। मैं अपने आरंभिक जीवन में दो लोगों को जानता हूँ, वे दोनों परमेश्वर के लोग बनना चाहते थे। उनमें से एक को, जैसे ही मैंने उसे मसीह की ओर अगुवाई की, उसने सिगरेट पीना आरंभ कर दिया। वह एक दिन में 5 या 6 पैकेट सिगरेट पीता था, बस बैठकर, और दिन भर बस एक के बाद दूसरी सिगरेट जलाता रहता था। और उसने दूसरी सिगरेट जलाने की कोशिश की और किसी चीज ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। वह चूल्हे के पास चला गया, यह नहीं जानते हुए कि वचन इन चीजों को दोषी ठहराता है, और चूल्हे को जलाकर और पैकेट को चूल्हे में डाल दिया, और इससे बात वहीं समाप्त हो गई। जहां एक और व्यक्ति जो एक मसीही बनना चाहता था, और उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, उसने प्रभु को पुकारा, उसने उन्हें 2 या 3 सप्ताह के लिए छोड़ दिया और वह होश में आया। उस हालत में वह मानसिक रूप से असंतुलित हो गया और वह होश में आया और अपने आप को पीछे के आंगन में पाया। वह एक टीन के टुकड़े को पीट रहा था, मानसिक रूप से असंतुलित हो गया, घर की ओर भागा तुरंत ही और अपनी सिगरेट को पकड़ा, और उस शाम को घर से निकलने से पहले उसने एक पैकेट सिगरेट पी लिया, बस एक के बाद एक, समझे। एक को बुलाया गया था, कोई भी मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक मेरा पिता उसे ना खींच ले, और वे सब जो पिता ने मुझे दिए हैं वह मेरे पास आएंगे। चेतावनी का क्या अर्थ था? यह एक के लिए जीवन था, उसने इसे देखा। आप इसे नहीं देख सकते जब तक परमेश्वर इसे प्रकट नहीं करता। यह ज्ञानी और बुद्धिमान आंखों से छिपा हुआ है और ऐसे बालकों पर प्रकट किया गया है जो कि सीखेंगे। यह सही है। अमराम और योकेबेद जानते थे कि समय आ गया है, घड़ी बहुत ही निकट थी। और मैं इस विषय पर बोलते हुए यह कहना चाहता हूँ, यह न तो उसके लिए जो इच्छा करता है या न ही जो दौड़ता है, यह तो परमेश्वर है जो दया को दिखाता है। यह सही है, यह परमेश्वर है। इसलिए आज, ओ, इस बात को गहराई में जाने दें, यदि आज परमेश्वर ने आपको बुलाया है और आपने स्वयं को संसार की चीजों से अलग कर लिया है, और परमेश्वर की महिमा में सामर्थ्य ने आपको उन चीजों से पवित्र किया है, तो आपको वहाँ संसार में सबसे खुशहाल व्यक्ति होना चाहिए। वहाँ लाखों लोग थे जो इसे करना चाहते, यदि वे कर सकते थे, लेकिन वे नहीं कर सकते। यह उनके लिए नहीं है कि इसे करें। यह वो दिन है जब कलीसिया को बुलाया गया है, अलग किया गया है। यह पहले से भिन्न है जो यह हुआ करती थी। जी हाँ, जब लोगों ने प्रार्थना करना आरंभ किया, जब इसराइल ने भविष्यवक्ता के लिए प्रार्थना करना आरंभ किया, परमेश्वर के पास भविष्यवक्ता था। परमेश्वर के पास हर समय भविष्यवक्ता था, क्योंकि परमेश्वर हमेशा ही उनसे एक कदम आगे रहता है। उसके पास वो मनुष्य तैयार था, लेकिन वो प्रतीक्षा कर रहा था कि लोग प्रार्थना में जाएं। लोगों के इसे चाहने के लिए वो रुका हुआ था। मैं कहूँगा कि आज भी स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है। आज जिसकी हमें आवश्यकता है वो एक बेदारी करने वाले की नहीं है, किसी बड़े संगठन के एक और व्यक्ति की नहीं है जो सारे झुंड को एक साथ संगठित करता है। आज हमें जिस चीज की आवश्यकता है वो है परमेश्वर की ओर से भेजा गया एक भविष्यवक्ता, एक ऐसे संदेश के साथ हो जो संसार को दोषी ठहराए। परमेश्वर के पास मनुष्य हो सकता है यदि बस लोग इसके लिए तैयार हैं। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? हो सकता है उसे संसार में कहीं न कहीं वो मनुष्य मिल गया है, लेकिन लोगों के पास उसकी चाहत होनी चाहिए। परमेश्वर बस उन चीजों को आपके गले से नहीं उतारता है, आपके पास उसकी चाहत होनी चाहिए। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यह सही है। मूसा को पहचान लिए जाने के बाद, मेरा मतलब जब लोगों ने जान लिया कि उन्हें एक अगुवाई करने वाले की जरूरत है, तो उन्होंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। वे परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे कि उनके लिए एक अगुवे को भेजे या कोई तो व्यक्ति उन्हें बाहर निकाल सके, और उसने उनके पास एक व्यक्ति को भेजा, एक भविष्यवक्ता। यह उसका चिन्ह था। अब यदि यह व्यक्ति भविष्यवक्ता नहीं था, यदि वह उठ खड़ा होता, कहता मैं एक प्रतिभाशाली सैनिक हूँ, इसराइल के पास अधिकार था कि उस मनुष्य का अविश्वास करे, क्योंकि परमेश्वर हर समय बिना चूके एक भविष्यवक्ता को भेजता है। बाइबल में ऐसा कोई समय बताएं जब ऐसा न हुआ हो। वह हमेशा एक भविष्यवक्ता को यहोवा यो कहता है के साथ भेजता है। यहाँ तक कि दाऊद स्वयं, जो इसराइल का अब तक सबसे महान सैन्य प्रतिभाशाली था, और तो भी दाऊद एक भविष्यवक्ता था। निश्चय ही वो था, वो भविष्यवक्ता था दाऊद। वह इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि लोगों के हृदय में इच्छा हो कि इस भविष्यवक्ता को सुने जिसे वह भेजने जा रहा था। निश्चय ही वहाँ एक झुंड था जिसने कहा कि उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह बाद में साबित हुआ कि वे सही नहीं थे। वे सब बस भावनाओं में बह गए थे, और बाइबल ने कहा उनके साथ एक मिली जुली भीड़ गई। इससे क्या हुआ? वहाँ जंगल में मुसीबत सामने आ गई, और हर बार यह घटना घटित होती है। ओह, काश मैं इस बात को अच्छी तरह आपके अंदर डाल पाता। हर बार जब परमेश्वर कुछ तो भेजता है, तो वहाँ उसके साथ उसकी कोई अशिष्ट और शारीरिक नकल भी साथ आती है। हर बार हमेशा ही कुछ न कुछ होता है इसमें से नकली या दिखावटी बन जाता है, जिसे लोग आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का एक सच्चा भविष्यवक्ता यहोवा यो कहता है के साथ बना रहता है। वह उस वचन से कभी नहीं हटेगा यदि वो परमेश्वर द्वारा भेजा गया है। मूसा ठीक वचन पर बना रहा। परमेश्वर ने कहा मैं उन्हें बाहर लाऊंगा। उसने मूसा से कहा मैंने तुम्हें उस काम को करने के लिए भेजा है। और मूसा के पास एक अनुभव था, उसकी परमेश्वर से भेंट हुई थी, उसके पास प्रभु का वचन था। परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को इसलिए भेजता है क्योंकि उनके पास प्रभु का वचन होता है। प्रभु का वचन भविष्यवक्ताओं के पास आता है, और यदि उसके पास प्रभु का वचन नहीं है तो वो भविष्यवक्ता नहीं है। युगों युगों में से होते हुए वहाँ बहुत सी शारीरिक नकल हुई है, यह कहने की कोशिश करते हैं कि वे भविष्यवक्ता हैं, लेकिन वे हमेशा ही प्रभु के वचन से दूर होते हैं। लेकिन एक सच्चा भविष्यवक्ता ठीक वचन पर बना रहता है। अब उस प्रमाण को मत भूलना, एक सच्चा भविष्यवक्ता यहोवा यो कहता है के साथ बना रहता है। यीशु ने हमें चेतावनी दी कि अंतिम दिनों में क्या होगा, लेकिन एक सच्चा सेवक, सच्चा भविष्यवक्ता यहोवा यो कहता है के साथ बने रहने में कभी भी चूक नहीं करता। मूसा प्रभु के साथ बना रहा। वो एक चिन्ह था, वो इसराइल के लिए एक चिन्ह था कि उनके छुटकारे का दिन निकट है, और वो मिस्र के लिए एक चिन्ह था कि उनके अंत का दिन निकट था, क्योंकि बाद में फिरौन की सारी सेना, वे वहाँ मृत सागर में डूब गए। वे अपनी सैन्य शक्ति के अंतिम चरण में थे, और एक भविष्यवक्ता एक राष्ट्रीय अंत का चिन्ह था। इस पर सोचें, परमेश्वर कितना महान है और वह कितनी साधारणता में काम करता है। निश्चय ही यदि अशिक्षित इसे समझ सकता है, तो शिक्षित को भी समझना चाहिए। आमीन। यदि मिस्र के कीचड़ से भरे गड्ढों में वे गुलाम इस बात को समझ सकते हैं कि वो परमेश्वर की ओर से एक भविष्यवक्ता था और वह समय निकट आ गया है, तो फिरौन के महल को यह बात और कितनी अधिक समझनी चाहिए थी। लेकिन इसी प्रकार के लोग होते हैं जो इसे नहीं जानते हैं। इसी प्रकार के लोग होते हैं जो इससे हमेशा ही चूक जाते हैं। जब मूसा खड़े होकर उन खिड़कियों में से देख रहा था उन इसराइली बच्चों को जो वहाँ से गुजर रहे थे, इसराइल के लिए फिरौन के लिए वे गुलाम और कुत्ते थे, मूसा के लिए वे परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। बाइबल ने कहा कि मूसा ने चुना, अपना खुद का चुनाव किया कि मसीह की निंदा को सहन करे। उसने इसे पाप के सुख विलास से बढ़कर धन समझा, क्योंकि उसकी दृष्टि उस प्रतिफल पर लगी हुई थी जो उसे मिलने वाला था। मूसा जानता था कि वे कीचड़ में सने हुए तुच्छ लोग नहीं थे, वे प्रतिज्ञा पाए हुए लोग थे। वह स्वयं जानता था कि वो कौन था, वह उन्हें नहीं बता सकता था, उन लोगों को खुद ही इसे पहचानना होगा। वह स्वयं जानता था कि उसका काम क्या था जो कि उसे करना है। वह जानता था कि परमेश्वर ने उसे इसी उद्देश्य के लिए बड़ा किया था, लेकिन वो उन्हें नहीं बता सकता था। और जब तक वे इसके प्रति अंधे थे, उसने कभी भी स्वयं को खुले तौर पर प्रकट नहीं किया। जब तक वे इसे पहचान नहीं लेते, तब उन्होंने उस चिन्ह को देखा और वे इसे जान गए। उसने कहा, मैं इसराइल को एक चिन्ह दूंगा, इस छड़ी को ले, ये सांप में बदल जाएगी। वे इसे नहीं सुनेंगे, फिर अपना हाथ अपनी छाती में डालना, इसे बाहर निकालना, अपने आप को कोढ़ से चंगा करना, तब वे इसका विश्वास करेंगे। और फिर यदि वे इसे नहीं सुनेंगे, तो वहाँ नीचे नील नदी में से पानी को लेना, इसे सूखी भूमि पर उन्हेल देना, और सारा पानी लहू बन जाएगा। यह एक राष्ट्रीय चिन्ह था, लोग इस पर विश्वास करेंगे। जब वे लोग जो इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, वे इसका विश्वास करेंगे। जब वे परमेश्वर के चिन्ह को आगे बढ़ते हुए देखेंगे, लेकिन राष्ट्र को कुछ तो भिन्न करना होगा, इसलिए उसने इन सबको एक चिन्ह दिया। परमेश्वर ने एक व्यक्ति का उपयोग किया, एक नम्र व्यक्ति, एक भविष्यवक्ता, ताकि वहाँ पर उस राष्ट्रीय अवस्था के अंत का एक चिन्ह बने। परमेश्वर हमारे लिए एक और भेजिए, हमारे लिए एक और को खड़ा करें। यदि परमेश्वर के लोग ऐसे किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, तो वो उसे खड़ा करेगा। यही है, लोगों को इस बोझ को लेना होगा, उन्हें जागना होगा, उन्हें इसका एहसास होना है, उन्हें यह जानना होगा कि हम किस दिन में रह रहे हैं और हमारे आसपास क्या परिस्थिति है, इससे पहले कि वे कभी जागें। अन्यथा आप ठीक वैसे ही जीवन जीते रहोगे जैसे आपने हमेशा ही जिया है। इस वर्ष एक नया घर बनाना है, मुझे जॉनसन की तुलना में एक बेहतर कार लेनी है, मुझे ये करना है। ओह, इस पर बहुत जोर दिया जाता है। जब आपको एहसास होगा, कोई मतलब नहीं, यह सब ठीक है, लेकिन आपको अवश्य ही एहसास होना चाहिए भाई कि यह सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी। यीशु ने कहा, उससे मत डरो जो शरीर को मार सकता है, रूस का परमाणु बम, उससे मत डरो जो इस शरीर को कुछ ही मिनटों में ज्वालामुखी की राख में बदल सकता है, लेकिन उससे डरो जो शरीर को उस ओर घुमाकर और प्राण को नरक में डाल सकता है। ऐसा ही है, जब मैं अस्पताल में एक डॉक्टर से बात कर रहा था, जब मेरी माँ भी वहाँ पर थी, वो इस बारे में बात कर रहा था कि शरीर के विभिन्न बीमारियों पर काम करने के लिए विज्ञान कितना महान है, और उसमें दवा को डालते हैं और देखते हैं कि यह किसी रोगाणु को क्यों मारेगा तथा जीवन के जीवाणु की कैसे रक्षा करेगा। मैंने कहा, यह तो अद्भुत है, यह बस बहुत ही बढ़िया बात है। मैंने उसे कुछ देर के लिए सुना, लेकिन मैंने कहा, डॉक्टर, यह बहुत अच्छी बात है, मैं इसकी सराहना करता हूँ, यह बहुत अच्छा है, मैं निश्चित रूप से इसके लिए परमेश्वर का धन्यवादित हूँ। लेकिन देखो, आप अपना सारा जीवन सृष्टि पर कुछ तो खोजने की कोशिश में बिता रहे हैं, लेकिन क्यों न कुछ समय के लिए इस विषय में सोचते हैं कि इसे किसने बनाया, किसने इसकी सृष्टि की, इसका रचने वाला कौन है। इसका रचने वाला परमेश्वर है। सृष्टिकर्ता उस सृष्टि से कितना बढ़कर है जिसे उसने बनाया है। हम उस सृष्टि के ऊपर इतना अधिक जोर क्यों डालते हैं, जबकि हम उस सृष्टिकर्ता के बारे में नहीं सोचते जिसने आकाश और धरती को बनाया और शरीर और जीवन को बनाया। वह जब भी चाहे इसे नष्ट कर सकता है, क्योंकि यह उसका है। एक मनुष्य की देह पर काम करना एक बहुत ही अद्भुत बात है, हम इसकी सराहना करते हैं। वे एक आंख को निकालकर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित कर सकते हैं। उन छोटे छोटे आंखों के तंतु को लेते हैं और एक व्यक्ति के सॉकेट में से आंख को निकालकर और इसे दूसरे व्यक्ति के सॉकेट में डालते हैं, और वो व्यक्ति उस आंख से देख सकता है। यह एक अद्भुत बात है। ऐसा समय हुआ करता था, यदि एक माँ जब वो एक बच्चे को जन्म देने जा रही होती थी और वो बालक जन्म नहीं ले पाता था, वो इस प्रकार से बनी थी कि बालक जन्म नहीं ले सकता है, तो माँ और बालक दोनों ही मर जाते। यह सही बात थी, लेकिन आपने शायद ही कभी इसके बारे में सुना होगा, यह बहुत अलग ही था। हो सकता है कभी नहीं सुना होगा, लेकिन आज वे उस माँ को तब भी बचा सकते हैं जब वो बच्चे के जन्म की स्थिति में पहुंच चुकी होती है। और यदि यहाँ तक कि जब माँ बिल्कुल प्रसव के समय के नजदीक होती है, वे उस माँ को एक कमरे में ले जाकर और उसे थोड़ी सी बेहोशी की दवा दे सकते हैं और बच्चे को सामान्य प्रसव के जरिए निकाल लेते हैं और बच्चे को संभाल लेते हैं। हम इसकी सराहना करते हैं। मुझे कोई एक ऐसी प्रणाली बताइए, आप कहीं बाहर इस शहर की जल आपूर्ति प्रणाली में कोई वाल्व या प्रवाह नियंत्रण यंत्र को बंद कर दें और देखें कि मुख्य वाल्व या प्रवाह नियंत्रण यंत्र पर क्या होता है, ये फट जाएगा। लेकिन फिर भी हम एक पैर को काट सकते हैं, एक हाथ को काट सकते हैं और परमेश्वर के चमत्कार से वह उस लहू को किसी और तरीके से एक सेकंड के समय में इसके रास्ते को घुमा देगा और इसे किसी अन्य दिशा से भेज देता है ताकि उस व्यक्ति का जीवन बच जाए। ऐसा कौन कर सकता है, मुझे बताओ। आप किसी पानी की पाइपलाइन की मुख्य लाइन को यहाँ कहीं से रोक दें, जब यह किसी वाल्व से पंप होकर पानी को खींचा जा रहा होता है तो यह क्या करेगा। एक बार इसे करने की कोशिश करके देखें और देखें क्या होता है। पानी को दूसरे रास्ते से जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है, यह दबाव में वापस जाकर मुख्य जल प्रवाह नियंत्रण यंत्र को फाड़ देगा। यदि परमेश्वर इस लहू के लिए तुरंत कोई विकल्प मार्ग न बनाए तो हृदय तक एक क्षण के लिए भी लहू का रुक जाना आपके मृत्यु का कारण बन जाएगा। हर बार जब आपकी अपनी उंगली को काटा जाता तो तुरंत ही मृत्यु हो जाती। हर बार जब आप कहीं से तो काटते जिससे एक धमनी या कुछ तो खुल जाता तो यह तुरंत ही मृत्यु हो जाती। अपनी उंगली को काटते तो आप मर जाते। ऐसा ही है, यह सीधे फिर से आपके हृदय में वापस जाकर फाड़ देता, यह आपको मार डालता। लेकिन परमेश्वर, अब हम सोचते हैं कि यह अद्भुत है, हम सोचते हैं कि यह अद्भुत है और हम किस तरह से विज्ञान की सराहना करें। वे उन धमनियों को बांध सकते हैं और उन्हें लहू बहने से रोक सकते हैं, यह सब ठीक है। लेकिन वह कौन था जिसने इसकी रूपरेखा तैयार की, समझे। हम सारी सृष्टि की ओर देखते हैं और इसके रचयिता को भूल जाते हैं, समझे। हम स्वाभाविक चीजों की ओर देख रहे हैं और उन सारी आत्मिक चीज को भूल जाते हैं, यही है जो हम करते हैं। अब परमेश्वर के भविष्यवक्ता, उनके पास उसका वचन होता है, यही कारण है कि लोग उन पर विश्वास करते हैं। यही कारण है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा, उसने वहाँ पीछे उत्पत्ति में कहा, बहुत से स्थान, सभी जगह, निर्गमन में, यदि तुम्हारे बीच कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आत्मिक है या भविष्यवक्ता, अब हम इन बातों को कैसे जानेंगे। उसने कहा, जब वह कुछ तो कहता है और यह बात घटित होती है, कुछ और भी कहता है, यह बात घटित होती है, तब इसका विश्वास करना। देखा, यह एक चिन्ह है। इसलिए वह अपना वचन देता है, ना ही अगुओं को, ना ही तानाशाहों को, लेकिन भविष्यवक्ताओं को। खुर्शेव संसार के लिए कोई एक चिन्ह नहीं है, नहीं श्रीमान, हिटलर संसार के लिए एक चिन्ह नहीं था। लेकिन कहीं न कहीं किसी स्थान में परमेश्वर के पास एक नम्र भविष्यवक्ता होता है जो उस घड़ी के लिए रुका होता है। वो एक चिन्ह है, वही वो चिन्ह है जो संसार को दोषी ठहराएगा और कलीसिया को बचाएगा, वो भविष्यवक्ता। एलिया अपने समय में एक चिन्ह था, भविष्यवक्ता एलिया उनके लिए, वो परमेश्वर के वचन का एक चिन्ह था, मिस्र के लिए न्याय और इज़राइल के लिए छुटकारा, यदि वे उस पर विश्वास करना चाहते थे। एलिया के समय पाप से भरे दिन थे, जब सारा इज़राइल परमेश्वर से पीछे हट गया था, वे वापस पाप में चले गए थे, वे व्यवस्था को भूल गए थे, वे भूल गए थे कि परमेश्वर के द्वारा अगुवाई की गई थी और वो महान यहोवा जिसने लाल सागर को खोला था और उन्हें मिस्र में से बाहर निकाला और उनके बीच में मूसा के समान एक महान भविष्यवक्ता को भेजा, वे इसे भूल गए थे। हम इसे भूल जाते हैं, आप मेथोडिस्ट जॉन वेस्ली को भूल जाते हैं, आप लूथरन मार्टिन लूथर को भूल जाते हैं, आप बैप्टिस्ट जॉन स्मिथ को भूल जाते हैं, हम में से बहुत से चार्ल्स फिन्नी को भूल जाते हैं जो उन सभी से सबसे महान था। ऐसा कहा जाता है कि फिन्नी के द्वारा मत परिवर्तन हुए 97% लोग टिके रहे। एक वर्ष में मूडी के 75% लोग पिछड़ गए और वेस्ली का पवित्रता का झुंड यह निरंतर पिछड़ते जा रहा था, लेकिन फिन्नी के पास 97% लोग थे। छोटा सा नाटा, पतला गंजे सिर वाला व्यक्ति पुलपिट पर चलकर जाता है और उस श्रोतागण की ओर देखता है इस तरह से, और मनुष्य बेसुध हो जाते क्योंकि वो एक दिन झाड़ियों में बना रहता जब तक पवित्र आत्माओं से नियंत्रण में नहीं ले लेता। उसने ऐसा किया, वो अंत होने का एक चिन्ह था। लगभग 200 वर्ष पहले उस महान बेदारी का जो वेस्ली और उनके पास थी और न्याय आगे आ रहा था। वो एक चिन्ह था उस पाप से भरी पीढ़ी के लिए और कैसे एलिया वहाँ नीडर और कठोर होकर अकेला खड़ा हो सकता था। उसके साथ कोई भी नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर का चिन्ह था। बाकी के सारे याजकगण अहाब के साथ आधुनिकता की ओर बढ़ गए थे। वो पीढ़ी आधुनिक बन गई थी, लेकिन किस तरह से पुराना अहाब और उसकी सारी बड़ी प्रगति और इसने सारी कलीसिया को कैथोलिक, मेरा मतलब ना ही कैथोलिक वाद में लाया, लेकिन लगभग उसी चीज के अंदर लाया, अर्थात मूर्ति पूजा के अंदर। उन्हें एक ऐसे स्थान पर लाया था जहां वे अस्पष्ट विचार वाले थे। कुछ लोग इस प्रकार से आराधना कर सकते हैं और बस स्वतंत्रता, आप जो चाहे कर सकते हैं, और उस तरह की परिस्थिति में आ गया। और किस तरह से वो एलिया वहाँ खड़ा था हिम्मत से यहोवा यो कहता है वाले वचन के साथ। हे परमेश्वर, हमें भी इस तरह के मनुष्य दे। वो इजाबेल को उसकी अवस्था के बारे में बताने से नहीं डरता था, वो अहाब से नहीं डरता था, वो भयभीत नहीं था कि उससे गलती हुई थी। वो हिम्मत के साथ खड़ा रहा और चलकर अहाब के पास गया और कहा, यहाँ तक कि ओस की एक बूंद भी नहीं गिरेगी जब तक मैं इसे ना बोलूं, आमीन। वो क्या था उस पापी पीढ़ी के लिए एक चिन्ह? क्या इसराइल ने इसे देखा? नहीं, वे उस पर हंसे, उसका मजाक उड़ाया। उसने भविष्यवाणी की कि वहाँ एक सूखा पड़ेगा, कि वहाँ परेशानी उठ खड़ी होगी, भूख भुखमरी होगी। और उसने हिम्मत से भविष्यवाणी की यहोवा यो कहता है के साथ अकेले खड़े होकर। कहा, प्रभु उन्होंने सभी सच्चे लोगों को मार डाला है, उन्होंने उन सभी को मार डाला है, केवल मैं ही एकमात्र बचा हूँ जो आपके वचन के साथ खड़ा हूँ। परेशानी किस विषय में थी? परमेश्वर का वचन। एलिया वचन के साथ बने रहना चाहता था, वो एक सच्चा भविष्यवक्ता था। दूसरे भविष्यवक्ताओं ने कहा था, ओह खैर, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, यहोवा परवाह नहीं करता, आप जानते हैं। यहोवा परवाह करता है, यह उसका वचन ही होना है। और एलिया उस वचन पर हिम्मत से खड़ा रहा यहोवा यो कहता है के साथ। एक दिन परमेश्वर ने उसे एक छोटा सा रहस्य दिया। उसने कहा, मेरे पास 7,000 हैं एलिया, जिनका तू ही यहाँ पर गवाह है। उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि खुलकर सामने आए और इसका दावा करें। वे यहाँ वहाँ झाड़ियों में छिपे बैठे हैं, लेकिन फिर भी उनके हृदय में वे मेरे सेवक हैं। उन्होंने बालाम के सामने घुटने नहीं टेके, वे इसे करने से डरते हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक चिन्ह दे रहा हूँ और तुम स्वयं एक चिन्ह हो। वहाँ पर खड़े रहो और मेरे वचन पर दृढ़ खड़े रहो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उन्हें एक चिन्ह दो। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए कुछ इस तरह से भेजे जो परमेश्वर के वचन का चिन्ह हो, और हर एक प्रतिज्ञा जिसकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है उस व्यक्ति का समर्थन करें, क्योंकि वह एक चिन्ह है, एक भूला हुआ चिन्ह। ओह, उन्होंने सोचा क्योंकि अहाब एक महान राजा था और सभी राष्ट्र उससे डरते थे, यह काफी अच्छा था। लेकिन एलिया वचन का एक चिन्ह था, यह एक सच्चा भविष्यवक्ता था, वचन का एक चिन्ह। इसलिए जब वो वचन का चिन्ह था, उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, उनके लिए उसका कोई महत्व नहीं था। वो विधवा के लिए एक चिन्ह था जब परमेश्वर ने उसे कार्मेल पर्वत पर से दूर भेजा, वहाँ से वहाँ करीब के नाले पर जब उसे कौओं के द्वारा खिलाया गया और नाला सूख गया था, तो उसे वहाँ भेजा गया था। वो इस विधवा के घर चला गया। एक प्रचारक के जाने के लिए क्या ही स्थान है, लेकिन वो वहाँ पर चला गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे जाने के लिए कहा था। लेकिन वो वहाँ पर गया, कहा, मैंने उस स्त्री को तुम्हें खिलाने की आज्ञा दी है। स्त्री एक चिन्ह होना चाहिए था, एलिया एक चिन्ह होना चाहिए था। जब वो वहाँ पर थी, उसके पास इतना ही आटा था कि उसके लिए और उसके लड़के के लिए एक रोटी खाने को बना सके, इतना ही कुप्पी में, और कुप्पी में पर्याप्त तेल था कि इसके साथ थोड़ा सा आटा गूंद कर छोटी रोटी बना सके। उसने कहा, मैं यहाँ दो लकड़ियों को बीन रही हूँ। उस भयानक गर्म धूप वाली सुबह में, जब एक बूढ़े रूखे चेहरे वाले व्यक्ति जिसके सफेद बाल उसकी पीठ तक लटक रहे थे वहाँ पर चलकर गया और उसका गंजा सिर चमक रहा था, फाटक पर झुककर कहा, मेरे लिए थोड़ा सा पानी लाना, और कहा, इसके अलावा मेरे लिए अपने हाथ में एक रोटी का एक कोर ले आना, एक रोटी। तो उसने कहा, मेरे पास पर्याप्त आटा नहीं है, मैं अब यहाँ पर हूँ, दो लकड़ियों को उठा रही हूँ ताकि अपने बेटे के लिए एक छोटी सी रोटी बनाऊं। मेरे पास इतना ही आटा है कि उसके लिए और मेरे लिए एक बनाऊं। हम इसे खाएंगे और मर जाएंगे। उसने कहा, डर मत, क्योंकि यहोवा यो कहता है। यही वो व्यक्ति है जिसकी हमें आवश्यकता है। ऐसा नहीं कहा कि अब ऐसा हो सकता है बहन, ऐसा घटित हो सकता है, मैं नहीं जानता। नहीं नहीं, एलिया सकारात्मक था। यहोवा यो कहता है, ना ही वो आटे का डब्बा खाली होगा, ना ही वो तेल की कुप्पी सूखेगी जब तक कि परमेश्वर धरती पर वर्षा नहीं भेजता है। आमीन, वहाँ आप हैं। ये चिन्ह उसके लिए काफी होना चाहिए था। वो आज की कलीसिया का प्रतिनिधित्व करती है। एलिया के कुछ समय तक उसके साथ रहने के बाद उसका एक छोटा लड़का था, वो बीमार हो गया। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसमें सांस थम सी गई, वो मर गया। फिर उसने क्या किया? कलीसिया तो पहले ही उन चिन्हों को देख चुकी है, लेकिन क्या, जैसे ही एक छोटी सी आपदा आती है, वह जल्दी ही इसके लिए कलीसिया को दोष देना चाहती है। वो एलिया को दोष देना चाहती थी। उसने कहा, हे परमेश्वर के जन, अब तू यहाँ आया है कि मेरे पापों को मुझे स्मरण कराए और मेरे पुत्र के जीवन लेने के लिए यहाँ आए हो। एलिया ने पुत्र को उठाया, उस अटारी में चला गया जहाँ वो सोता था, उसे अपने बिस्तर पर लिटा दिया, उस पर खुद को पसार कर कहा, प्रभु परमेश्वर, हालेलुया, इस लड़के के प्राण को वापस भेज दो। और बालक जाग उठा। उसने उसे वापस नीचे उतार दिया। उस स्त्री ने बालक की ओर देखा और फिर उसकी तरफ देखा, तब वो जान गई कि वहाँ कुछ तो है। उसने कहा, इससे मुझे पता चल गया कि परमेश्वर का वचन तुम्हारे मुंह में है। आमीन। वो उस विधवा के लिए एक चिन्ह था। जब उसने परमेश्वर की सामर्थ को देखा जो जीवित करता है या मार सकता है, उसके मरे हुए बालक को जीवित कर सकता है, तो उसने कहा, इसी बात से मैं जानती हूँ कि तू परमेश्वर के जन हो। वो यह जानती थी। राष्ट्र आज इस पर हंसेंगे जैसे उन्होंने तब किया था। वे इसका विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन वो स्त्री अलग ही जानती थी। उस समय यह एक चिन्ह था, जैसा कि वो एक चिन्ह था कि उस स्त्री के मरे हुए पुत्र को वापस जीवित करे। ये भविष्यवक्ता हमेशा परमेश्वर के चिन्ह होते हैं। जब एलिया ने एक निर्णायक मुकाबले के लिए बुलाया तो कहा, यदि परमेश्वर परमेश्वर है तो उसकी सेवा करें, यदि बाल परमेश्वर है तो उसकी सेवा करें। क्या यह एलिया के लिए आज एक अद्भुत दिन नहीं हो सकता है? यदि राजनीति ईश्वर है तो इसकी सेवा करें। राजनीति में हमें क्या मिला है? हमने क्या किया है? हमें भ्रष्टाचार के ढेर के अलावा कुछ नहीं मिला है। हमें कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन हमने सभी लगभग सभी राष्ट्रों में अपने सभी मित्र खो दिए हैं। यहाँ पर पिछले हफ्ते ही दो या तीन और भी राष्ट्र साम्यवाद में चले गए। हम लोगों से टैक्स वसूलते हैं, उनका पैसा जुटाते हैं और उसे वहाँ भेजते हैं ताकि उन लोगों को खिलाया जा सके। वे जैसे ही मजबूत होते हैं साम्यवाद की ओर मुड़ जाते हैं। यह एक ढोंगीपन है। यह सही है, हम मसीही होने का दावा करते हैं, तो फिर आओ हम मसीह के समान बने, ना ही उन्हें इस प्रकार की चीजों को खिलाने के द्वारा। उसके पास बहुत ही कम है जो साधारण सा अच्छे हृदय वाला व्यक्ति ऐसा करेगा। यह धर्म है, ये उद्धार नहीं है। बहुत से लोग धर्म और उद्धार को एक ही समझकर मिला देते हैं। धर्म का अर्थ होता है विधवाओं और गरीबों को खिलाना और इत्यादि चीजें, यही धर्म है। लेकिन उद्धार एक नया जन्म है, फिर से जन्म लेना, यह अलग है। धर्म मुसलमान एक धर्म है, वहाँ बहुत से धर्म हैं। अब ऊपर कार्मेल पर्वत पर उस दिन जब उसने निर्णायक मुकाबले के लिए बुलाया और उसने अहाब और उनके संप्रदायों के मंदिर से जुड़े हजारों याजकों को बुलाया, उसने उन्हें वहाँ ऊपर कार्मेल पर्वत पर बुलाया, कहा, यहाँ ऊपर आओ, मुझसे यहीं पर मिलो, मैं पूरे झुंड से सामना करूंगा। उसने क्या किया? उसके पास यहोवा यो कहता है वाला वचन था। वो डरा नहीं था। उसने कहा, एक बैल को बलि चढ़ाओ, बालाम को बुलाओ, जो परमेश्वर आग को गिराकर उत्तर देता है वो परमेश्वर है। तो सारा दिन जब तक सुबह से लेकर रात के खाने के बाद तक वे वेदी पर कूद पड़े, उन्होंने खुद को घायल किया, वे चीखने लगे, वे चिल्लाने लगे। एलिया आगे पीछे घूमता हुआ बोला, थोड़ा जोर से चिल्लाओ, हो सकता है वो मछली पकड़ने को चला गया हो या कुछ और करने, किसी और काम में व्यस्त हो या ऐसा ही कुछ। तो क्योंकि उसके पास यहोवा यो कहता है वाला वचन था, वो संतुष्ट था, उसके पास परमेश्वर का वचन था। भाइयों बहनों, किसी व्यक्ति को परमेश्वर की प्रतिज्ञा से बढ़कर और क्या चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि वो इसे करेगा। यह अब्राहम था, उसने भरोसा रखा कि परमेश्वर वह सब करने में सक्षम है जिसके बारे में उसने बोला है। वो जानता था कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है। इसलिए उसने उन्हें वहाँ ऊपर आने के लिए बुलाया और सो उन्होंने अपने आप को घायल किया और पूरे दिन चिल्लाते रहे और चीखते रहे सांझ के बलिदान होने तक। तब एलिया, ध्यान दें कि उसने यह कैसे किया। सबसे पहले उसने जो 12 पत्थरों को एक साथ दुड़काया। परमेश्वर विभाजित नहीं है। संप्रदाय कलीसियाओं को विभाजित करते हैं लेकिन परमेश्वर नहीं। एक कहता है, क्या आप एक मसीही हैं? मैं एक बैप्टिस्ट हूँ, तो इसका कहने का मतलब यह है कि आप एक सुअर थे। कहते हैं मैं एक मेथोडिस्ट हूँ, तो फिर से परमेश्वर के लिए एक सुअर से अधिक कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ, क्या आप एक मसीही हैं? एक मसीह होने के लिए आपको अवश्य ही मसीह के समान होना है। दैविकता आप में वास करते हुए पवित्र आत्मा के साथ, जैसे कि पेंटिकॉस्ट के दिन नीचे उतरा था। ना ही कोई भावना, लेकिन मेरा मतलब एक वास्तविक पेंटिकॉस्टल से है। समझे? सही है। मैं पेंटिकॉस्टल हूँ, मैं वननेस हूँ, मैं त्रिएकता हूँ, मैं ओ प्रभु, ये बस इतना ही है। जैसे आप कुछ तो और कह रहे हैं, इसका परमेश्वर के लिए कोई अर्थ नहीं है। यह तो विभाजित करता है। यही है जो वहाँ उन पुरोहित वर्ग के बीच में हुआ था। लेकिन एलिया ने इन 12 पत्थरों को एक साथ दुड़का दिया, यह दिखाया जा सके कि परमेश्वर उन सभी के ऊपर एक परमेश्वर है। उन्हें एक साथ दुड़काया। अतः जब उसने उन्हें इस तरह से इकट्ठा किया, तो उसने बैल को मारा और उसे वेदी के ऊपर लकड़ी पर रख दिया। उसने कहा, अब यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसमें कोई बनावटीपन नहीं है, जाओ मेरे लिए 12 बैरल पानी ले आओ। और उसने असल में उस लकड़ी को पानी में भिगो दिया। ओ हालेलुया, वह यह दिखाना चाहता था कि परमेश्वर परमेश्वर था। क्योंकि क्यों? उसके पास यहोवा यो कहता है वाला वचन था। वो एक भविष्यवक्ता था, उसके पास परमेश्वर का वचन था। वैसे ही उन्होंने उस दिन ऐसा किया। यदि वे कहते हैं कि वे आपको कलीसिया से बाहर निकाल देंगे, वे ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। यदि आपने यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया है और ये सारी इस तरह की विभिन्न चीजों को किया है, बकवास है। यह यहोवा यो कहता है वाला वचन है। उस रात को एक प्यारे से व्यक्ति ने मुझसे बात की, आकर मेरे चारों ओर हाथ डाले और कहा, भाई ब्रैनम, कहा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहा, यदि आप बस थोड़ा सा समझौता कर लें, यह चीजें जिसके बारे में आप बात करते हैं। मैंने कहा, कौन सी? कहा, यह सब जो बपतिस्मा है। कहा, शिकागो और आसपास की सभी कलीसियाएं, वे बस आपको बहुत ही चाहते हैं, लेकिन वे डरते हैं कि आप इसका उल्लेख करेंगे। मैंने कहा, निश्चय ही मैं इसका उल्लेख करूंगा, निश्चय ही मैं इसका उल्लेख करूंगा। कहा, तो ठीक है, केवल यही एक बात है कि वे आपके विरोध में हैं। मैंने कहा, तो वे फिर मेरे विरोध में नहीं हैं। मैं वो नहीं हूँ जिसने इसे कहा था, इसे तो परमेश्वर ने कहा है। मैं उनमें से किसी को भी चुनौती देता हूँ कि वो आकर इसे गलत साबित करें। देखा? कहा, तो ठीक है, आप देखिए, आपको सहमत होना चाहिए और संगति करनी चाहिए। यह वही बात है जो वे चाहते हैं कि वो करें। आमीन। परमेश्वर समझौता नहीं करता। नहीं श्रीमान, वह समझौता नहीं करता है। उसने कहा, अब भाई ब्रैनम, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या प्रभु के दूत ने कहा, हम सब प्रभु के दूत पर विश्वास करते हैं, क्या प्रभु के दूत ने आपको यह बताया? मैंने कहा, मैं परवाह नहीं करता कि प्रभु का दूत क्या कहेगा। यदि यह प्रभु का दूत है तो वह यही कहेगा, लेकिन यदि उसने कुछ तो विपरीत कहा तो वह प्रभु का दूत नहीं है। मैंने कहा, भले ही दूत या कोई और कुछ भी कहे। और उसने कहा, यदि स्वर्ग से कोई दूत भी तुम्हें कोई और सुसमाचार को सुनाए तो वह शापित हो। दूत और हर कोई, कुछ तो शारीरिक रूप से फूले हुए, कुछ तो दूतों के विषय में कहते हैं, जोसेफ स्मिथ, ब्रिंगम यंग और सारे विभिन्न संप्रदाय एडवेंटिस्टों के और बाकी के हर एक जन, वे इस प्रकार की सभी चीजों को देखते हैं, लेकिन यह हमेशा ही वचन के विपरीत होता है। लेकिन परमेश्वर अपने वचन का समर्थन करता है, यह उसका वचन है। मैंने कहा, यह प्रभु का वचन है। निश्चय ही वह सब जो कुछ भी मैं जानता हूँ, ये मुझे उसी ने सिखाया है। मैं कभी भी धर्म विद्यालय या विद्यालय नहीं गया, ये सब उसी से आता है। लेकिन मैंने कहा, चाहे वह विपरीत था, यदि इसके विपरीत होता था तो मैं उस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन ही है जो सबसे पहले है। बाकी की हर एक चीज झूठ है। परमेश्वर का वचन, इसके साथ बने रहो। इसलिए एलिया, जब वो उनमें से होकर गया तो उसने उन लकड़ियों को हर कहीं से 12 बैरल पानी से भिगो दिया, उन्हें वहाँ ऊपर से उंडेल दिया। उसने वहाँ से बाहर कदम रखा, बस उतना ही शांत जितना वो हो सकता है। क्यों? परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, परमेश्वर ने उसे बताया था। तो उसने कहा, अब्राहम, इजाक और इज़राइल का प्रभु परमेश्वर, आज इस बात को प्रकट करे कि आप परमेश्वर हैं और मैं आपका सेवक हूँ, और मैंने इसे आपकी आज्ञा से किया है, क्योंकि यह यहोवा यह कहता है, मैंने ऐसा किया है क्योंकि आपने मुझे इसे करने के लिए कहा था, क्योंकि यह आपके वचन के अनुसार है। अब यह जान जाएं कि आप ही परमेश्वर हैं। और प्रभु की आग नीचे उतर आई, बलिदान को भस्म कर दिया, पानी से भीगी हुई लकड़ियाँ, चट्टानों को और बाकी की हर एक चीज को साफ कर दिया और सब कुछ ले लिया। तब इसराइल के 7,000 लोग चिल्ला उठे, परमेश्वर परमेश्वर होने दो। एलिया कितना सुंदर है कि उस छोटे से बूढ़े कमजोर से दिखने वाले दुबले पत्ते झुर्रियों से भरे शरीर को देखना, उसके हाथ में वह छोटी सी छड़ी, उसके बगल में तेल की छोटी सी कुप्पी लटक रही थी, उसके चारों ओर भेड़ की खाल का एक टुकड़ा लपेटा हुआ था। क्यों? वे आज उसे जेल में डाल देते यदि वह सड़क पर चलता, लेकिन वे महिलाओं को छोटे कपड़े पहनने देते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से ऐसा नहीं करेंगे। देखो, इस तरह खुलकर सामने आए तो फिर, लेकिन यहाँ वे, यहाँ वह नीचे आया, वहाँ से होते हुए उस पहाड़ी के पार इस छड़ी के सहारे। अब कारमेल पर्वत कोई छोटा खाली स्थान नहीं है जो रेगिस्तान के बीच स्थित हो, यह एक बड़ा पर्वत है। यह इस तरह से एक कोण पर फैला हुआ है और ऊपर चोटी से समुद्र दिखता है। और एलिया और गेहजी दौड़कर ऊपर चोटी की ओर चले गए, और एलिया वहाँ मुंह के बल गिर पड़ा और परमेश्वर की दुहाई देने लगा। उसकी पीठ पश्चिम की ओर थी, सूर्य की ओर। 3.5 वर्ष तक यहाँ तक उसकी बूंद भी नहीं गिरी थी। उसने गेहजी से कहा, जाकर देखो क्या तुम्हें कुछ दिखाई देता है, समुन्द्र के ऊपर एक बादल। इस पहाड़ पर खड़े होकर उस ओर देखते हुए उसने कहा, मैं कुछ भी नहीं देखता। वह ठीक वहीं पर रुका रहा। परमेश्वर, यदि इन लोगों ने पश्चाताप किया है, यदि ये लोग आपके पास वापस आए हैं, यदि वे इन सारी बेकार की चीजों से दूर जाने और आपके वचन पर वापस आने के लिए तैयार हैं, तो आप परमेश्वर हैं कि अपने वचन का उत्तर दें। आज मुझे भी यही बात को कहने दो, इन संप्रदायों को लेकर और उन्हें तोड़ दें, इन सांप्रदायिक मतभेदों को भूल जाएं और लोगों को परमेश्वर के वचन की ओर अर्थात सीधी रेखा पर वापस आने दो। मैं आपको साबित करूंगा कि एक परमेश्वर है जो अब भी अग्नि के द्वारा उत्तर दे सकता है। लोग परमेश्वर को पुकारने दो। आओ, एक व्यक्ति के लिए पुकारें, लोग भविष्यता के लिए पुकारने दो, परमेश्वर उसे दृश्य पर रखेगा। मैं राष्ट्रों को ऐसा करने के लिए चुनौती देता हूँ। अपने मुंह के बल गिरकर परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो एक छुड़ाने वाले को भेजें और देखें कि क्या होता है। बस एक बार ऐसा करें, परमेश्वर उत्तर देगा। परमेश्वर हमेशा ही करता है। नीचे गिरकर और कहा, परमेश्वर आज ऐसा होने दो, ये लोग एक समय आपके विरोध में थे, ये लोग बाहर वहाँ सभी प्रकार के संप्रदायों में टूट कर बिखर गए थे, लेकिन आज आपने खुद को साबित किया है, आप परमेश्वर हैं। और लोगों ने कहा, बालाम को फेंक दो, और मैंने उन हजारों याजकों को मार डाला है, वे अब रास्ते से हट गए हैं। प्रभु, सारी रुकावटें दूर हो गई हैं, वे छोटी छोटी बाधाएं जिन्होंने हमें अलग किया। एक मेथोडिस्ट बैप्टिस्ट के साथ आराधना करना चाहता है, बैप्टिस्ट पेंटिकॉस्टल के साथ संगति करना चाहता है, जो सच्चे हृदय वाले वहाँ पर हैं, वे विश्वास योग्य 7,000, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते। यदि वे ऐसा करते हैं तो उन्हें उनकी कलीसिया से बाहर निकाल दिया जाएगा। उनमें से कुछ परवाह नहीं करते, जो भी है वे आते हैं, यह सही है, लेकिन वे सभी उन पक्षपात को तोड़कर और एक साथ आ जाएं और कहें, हम यहाँ इन सभी मत सिद्धांत और धर्म शिक्षाओं को भूल जाएंगे और हर एक चीज जहाँ से हम पढ़ रहे हैं, आइए हम प्रभु के वचन पर वापस आएं। देखो तब क्या बात जगह लेती है। परमेश्वर उनके लिए एक भविष्यता को खड़ा करेगा, वह निश्चय ही करेगा, जो उसे सीधे उनके पास ले आएगा। यदि वे इसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, सबसे पहले उन्हें प्रार्थना करनी होगी। परमेश्वर रुका रहता है। क्या ये विचित्र नहीं है कि परमेश्वर चाहता है कि लोग भी इसमें भाग लें? जब यीशु ने फसल की ओर देखा तो उसने कहा, फसल पक चुकी है, मजदूर कम है, तुम फसल के प्रभु से प्रार्थना करो। वो वही था, तुम मुझसे प्रार्थना करो कि मैं अपनी फसल के लिए मजदूरों को भेजूं। आपके करने के लिए कुछ भाग है। परमेश्वर अपनी कलीसिया के लिए रुका हुआ है कि उसे पुकारें, उसने हमेशा ही ऐसा किया है। आज परमेश्वर रुका हुआ है कि लोग उसके सेवक को क्रिया में आने के लिए पुकारें, और सेवक क्रिया के अंदर नहीं आ सकता जब तक लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। इसराइल वहाँ पर चिन्हों और अद्भुत कामों के साथ प्रतिक्रिया में नहीं आ सकता था जब तक कि वे मुंह के बल गिरकर किसी एक छुड़ाने वाले के लिए प्रार्थना नहीं करने लगे। परमेश्वर के पास उसका छुड़ाने वाला था। परमेश्वर के पास एक भविष्यवक्ता था जो वहाँ जंगल में ठहरा हुआ था। 40 वर्ष तक उसे वहीं रखा गया। उनके सही होने के लिए रुका हुआ था कि प्रार्थना करें, लेकिन जब उन्होंने सही कर लिया और प्रार्थना करने लगे तब परमेश्वर ने छुड़ाने वाले को भेजा। परमेश्वर आज भी इसी चीज को करेगा। यदि लोग बस एक साथ इकट्ठा होकर प्रार्थना करने लगे तो ठीक है। वह उन झूठे भविष्यवक्ताओं और अहाब के लिए एक चिन्ह था कि वह परमेश्वर का सेवक था, वह परमेश्वर का भविष्यवक्ता था। तब वह इसराइल के लिए भी एक चिन्ह था कि वह आकाश को बंद कर सकता है या आकाश को खोल सकता है जब भी वह चाहे। वो निश्चय ही था। मुझे कोई एक बताएं जो आकाश को बंद कर सकता है, मुझे एक दिखाएं जो आकाश को खोल सकता है। परमेश्वर को छोड़ और परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का वचन भविष्यवक्ताओं के साथ होता है। मिकायाह योशापात के लिए एक चिन्ह था। मिकायाह योशापात के लिए एक चिन्ह था कि परमेश्वर एक सच्चे भविष्यवक्ता को अपने हाथ में रखता है। अब ध्यान देना, उसके पास 400 भविष्यवक्ता थे आहाब के पास, और उसने उन 400 भविष्यवक्ताओं को सामने बुलाया और उन्होंने एक मत होकर उसे बताया। और फिर भी योशापात के हृदय में परमेश्वर का एक जन था। योशापात अपने हृदय में जानता था कि कुछ तो गलत है। वो जानता था कि कुछ तो गलत है। उसने कहा, क्या तुम्हारे पास एक और नहीं है? 400 वहाँ खड़े होने के बाद उसने कहा, ये सभी भविष्यवक्ता हैं, यहोवा के भविष्यवक्ता। वहाँ वे मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, यूनिटेरियन, ओह मेरे प्रभु, ट्रिनिटेरियन और सभी अलग अलग प्रकार के हैं। हम उन सभी को यहाँ लेकर आए हैं और एक सहमति में कह रहे हैं कि यही वहाँ सबसे महान राष्ट्र है। हमें डरने की कोई बात नहीं है, जैसे कि एक छोटा लड़का कब्रिस्तान में डरकर सीटी बजा रहा होता है। आप जानते हैं, आप इसकी चिंता न करें। कहा, क्या तुम्हारे पास एक और नहीं है? कहा, ओह हाँ, यहाँ एक और है, लेकिन कहा, मैं उससे घृणा करता हूँ, समझे? कहा, वो हमेशा ही इस देश के बारे में बुरा कहता रहता है। वह हमेशा कहता है कि हमारे साथ कुछ बुरा घटित होने जा रहा है। योशापात ने कहा, मैं उससे सुनना चाहूँगा। ओह हाँ, वो क्या था? एक चिन्ह। चाहे कितने भी संगठन या संप्रदाय हो, परमेश्वर के पास अब भी एक भविष्यवक्ता है जो वचन के साथ बना रहता है। यहोशापात जानता था कि आहाब का विनाश पक्का था, क्योंकि वह सच्चा भविष्यवक्ता एलिया राष्ट्रों के लिए एक चिन्ह था। कहा, यहाँ आने पर कुत्ते तेरा लहू चाटेंगे। यह सही है। वो जानता था कि इजाबेल और उसके साथ ऐसा ही होने वाला था। वो जानता है कि ऐसा ही था, समझे? और मिकाया ने कहा, उन्होंने उसके पास आकर और कहा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, यदि तुम अगली सभा की संगति में जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना होगा। तुम बस सहमत हो जाना कि ये सारे प्रचारक सही हैं, समझे? तुम उससे कहना, आगे बढ़ो। और कहा, तुम बस सहमत हो जाना। कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे। यदि तुम बस ऐसा करोगे तो हम देखेंगे कि तुम हमारे संगठन में जुड़ जाओ। देखो, यदि तुम इनमें से कुछ बातों पर समझौता करोगे जिसके विषय में तुम बात कर रहे हो, तुम बस यही दिखाना, जाओ उनके साथ सहमत हो जाओ, उनके साथ आगे बढ़ो। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर का एक सच्चा भविष्यवक्ता परमेश्वर के वचन से दूर जा रहा है? क्या आप कर सकते हैं? तो ठीक है, इन लोगों ने कहा, लेकिन हमने एक दर्शन देखा। ये 400 भविष्यवक्ता, हम जानते हैं हम भविष्यवक्ता हैं, हम जानते हैं क्योंकि हम भविष्यवक्ता हैं। मिकाया ने कहा, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो तुमने एक दर्शन को देखा है, मुझे इसमें जरा भी संदेह नहीं है। जो तुमने देखा है एक दर्शन, लेकिन यह उस वचन के अनुसार नहीं है। आमीन। कहा, मैंने भी एक दर्शन देखा है। आमीन। ओह दया, वह एक चिन्ह था, वो एक चिन्ह था। उसने कहा, मैंने एक दर्शन देखा और मैंने इसराइल को भेड़ों की तरह देखा, एक पहाड़ी पर बिखरे हुए देखा जिसका कोई चरवाहा नहीं था। और यह बड़ा अध्यक्ष बिशप उसके पास चलकर गया और उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। कहा, जब परमेश्वर का आत्मा मुझमें से निकल गया तो वो कहाँ गया? उसने कहा, जब तुम जेल में कैद हो जाओगे तब तुम देखोगे। तुम देखोगे। उसने अहाब ने कहा, उस व्यक्ति को जेल में डाल दो, उसे दुख की रोटी खिलाओ और उसे पीने के लिए दुख का पानी दो। कहा, जब मैं शांति से वापस लौटूंगा, कहा, तब मैं उसे संभाल लूंगा। बूढ़ा मिकाया वहाँ यहोवा यो कहता है के साथ खड़ा था। उसने कहा, यदि तुम वापस आते भी हो तो परमेश्वर ने मुझसे बात नहीं की। ऐसा ही है। वो क्या था? वो एक चिन्ह था कि यहोवा के भविष्यवक्ता परमेश्वर के भविष्यवक्ता परमेश्वर के वचन के साथ बने रहते हैं। आपके पास एक भविष्यवक्ता है जो कहता है कि आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के शीर्षकों में बपतिस्मा लेना चाहिए। यह एक झूठा भविष्यवक्ता है। यदि आप कहते हैं कि आपके बीच में एक भविष्यवक्ता है जो कहता है वहाँ तीन परमेश्वर है, यह एक झूठा भविष्यवक्ता है। इसके लिए कोई वचन नहीं है। यह सही है, लेकिन परमेश्वर का एक सच्चा भविष्यवक्ता उस वचन के साथ बना रहेगा। और यदि उसका दर्शन उस वचन के विपरीत है तो वो परमेश्वर का सच्चा भविष्यवक्ता नहीं है। बाइबल में कभी भी किसी को भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के शीर्षकों में कभी बपतिस्मा नहीं दिया गया था। पौलुस की ओर देखो, वहाँ जेल में एक छोटा सा तोते जैसी नाक वाला यहूदी गंजा सिर वहाँ पर पड़ा हुआ था। 20 साल तक एक रोमन जेल में बिताने के बाद उसने इन पत्रियों को लिखा। अब आप क्या सोचते हैं कि महिला प्रचारक ने पौलुस के बारे में क्या सोचा होगा जब उसने कहा, वे स्त्रियाँ कलीसियाओं में चुप रहें, मैं उन्हें बोलने की अनुमति नहीं देता। मैं कल्पना करता हूँ कि वे वास्तव में उसके पीछे पड़ जाते। आपको क्या लगता है उन बिशपों ने क्या सोचा होगा? वे बिशप लोग जब इन सारी भिन्न भिन्न बातों को कहा, इन चीजों को यहाँ छोड़ दो और इसे यहाँ, इसको, उसको, सभी को, पौलुस उन्हें बता रहा है ये व्यक्ति कौन है। जो भी हो, ये व्यक्ति वहाँ जेल में पड़ा हुआ है, लेकिन उसने यीशु से भेंट की थी। वो जानता था कि वह किस बारे में बात कर रहा है। और उसी झुंड में से पौलुस की मृत्यु के बाद उन्होंने अंत में गठन किया उस बिशप और उच्च अधिकारियों के झुंड से नीसियन परिषद को, और जिसने कैथोलिक कलीसिया का गठन किया। वे परमेश्वर के वचन से दूर होते जा रहे थे। वहाँ आपके पिता पुत्र पवित्र आत्मा में आते हैं। मैं किसी को भी कहीं भी किसी भी देश को चुनौती देता हूँ कि इसे गलत साबित करे। यहोवा यो कहता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की शीर्षक का उपयोग करते हुए बपतिस्मा झूठा है। यहोवा यो कहता है, मैं तुम में से हर एक को यहाँ पर या टेप पर आज्ञा देता हूँ, जिसने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा नहीं लिया है वो यीशु मसीह के नाम में फिर से बपतिस्मा को ले। प्रेरितों के काम 5:9-19:5 में पौलुस ने कहा, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया है जब से तुमने विश्वास किया? उन्होंने कहा, हम यह भी नहीं जानते कि वहाँ कोई पवित्र आत्मा भी है। कहा, तो फिर आपने किसका बपतिस्मा लिया था? उन्होंने कहा, हमने बपतिस्मा लिया है, लेकिन मसीही बपतिस्मा में नहीं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, यह मसीही बपतिस्मा नहीं है। बाइबल में या बाइबल के बाद सैकड़ों वर्षों तक किसी भी मसीही ने कभी इस प्रकार का बपतिस्मा नहीं लिया। यह एक कैथोलिक मत सिद्धांत है और ना ही एक मसीही शिक्षा। मुझे बाइबल में दिखाओ। यह एक धोखा है। यह शैतानों का काम है। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है कि जो लोग इस प्रकार से बपतिस्मा लेते हैं वे इस तरह के हैं। परमेश्वर के पास आज वहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो इससे बेहतर नहीं जानते, लेकिन अब समय आ गया है। हमें वचन पर वापस जाना होगा। यदि हम परमेश्वर से इस दिन में काम करने की अपेक्षा करते हैं जैसे उसने तब किया था। मैंने अपनी माँ से कहा जब वो मर रही थी, उसके मरने से पहले मैंने कहा, माँ, जब मैं एक मसीही बन गया एक लड़के के समान, तो मैंने खोजना और पता लगाना आरंभ किया। मैं जानता था कि एक परमेश्वर है उन दर्शनों से जो आप जानते हैं और वे चीजें जो जीवन भर घटित हुई। मैंने कहा, फिर मैंने पाया कि कैथोलिक कलीसिया ने कहा, हम कलीसिया हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाइबल क्या कहती है। हम विश्वास करते हैं कि यह ठीक है, लेकिन हम कलीसिया हैं। हम जो कहते हैं परमेश्वर स्वर्ग में बांधता है, और इसलिए तब वे इसे इस तरह से करते हैं। यही एक देह है। लूथरन ने कहा, वे गलत हैं, हम भी इसे इस तरह से विश्वास करते हैं। बैप्टिस्ट कहते हैं, वे सब गलत हैं, हम इसे इस तरह से विश्वास करते हैं। और वहाँ पर सैकड़ों ऐसी देह है। क्यों? आप भला कैसे विश्वास कर सकते हैं उनमें से कौन सही है? वहाँ एक चीज सही है, मुझे तब पता नहीं था। मैंने कहा माँ, मैंने वापस बाइबल में जाकर और मैंने पाया वे पहले के प्रेरित जिस तरह से थे, उनके पास किस प्रकार की कलीसिया थी, उन्होंने कैसे शिक्षा दी और वे चीजें जो उन्होंने की, मैंने इसे बिल्कुल वैसे ही किया जैसे उन्होंने किया, जिस तरह से बाइबल ने कहा, और मुझे वही परिणाम मिले। आमीन। अभिव्यक्ति के लिए क्षमा करें, लेकिन हलवे का प्रमाण तो उसे खाने पर ही मिलता है। यह सच है, मुझे वही परिणाम मिले जो उनके पास थे। जी हाँ, इसलिए आप किसी ऐसी चीज में भरोसे को नहीं बना सकते हैं जहाँ 900 भिन्न भिन्न मार्ग हैं इस तरह से और उस तरह से जाने के लिए। फिर मैं बाइबल में पाता हूँ कि यीशु ने स्वयं कहा, यदि कोई व्यक्ति इस पुस्तक में एक भी वचन को निकालेगा या इसे बदलेगा, कोई भी जो इसमें कुछ जोड़ेगा या इसमें से कुछ भी निकालेगा, उसी तरह से उसका जीवन की पुस्तक में से भाग निकाल लिया जाएगा। दिखाता है कि उसका नाम वहाँ था तो ठीक है, लेकिन उसे निकाल दिया जाएगा। ओह, हमें इस वचन पर वापस आना होगा। आकाश और धरती टल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन कभी भी न टलेगा। जी हाँ श्रीमान, हर एक मनुष्य का वचन झूठा ठहरे, मेरा सच्चा हो। यीशु ने कहा, आओ हम वचन के साथ बने रहें। जी हाँ, ओह प्रभु, जी हाँ। यहोशापात जानता था कि परमेश्वर एक सच्चे भविष्यवक्ता को रखता है जो उसके वचन पर बना रहता है और उससे समझौता नहीं करता। नहीं श्रीमान, वो ठीक इसके साथ बना रहा। 400 लोग उसके विरोध में थे, उनकी भविष्यवाणियां भी थी, लेकिन उसका परमेश्वर का वचन था, इसमें वही चिन्ह और बातें थी। और आज मैं कहता हूँ, आज हमें एक व्यक्ति की आवश्यकता है, एक भविष्यवक्ता की, जो हमारे बीच में खड़ा हो, जो परमेश्वर के वचन के साथ बना रहेगा, इस बात की परवाह किए बिना कि कोई और क्या कहता है या संप्रदाय जो कुछ भी कहे। मिकाया को कोई सहयोग नहीं मिला था, मूसा को कोई सहयोग नहीं मिला था, नूह को कोई सहयोग नहीं मिला था, उनमें से किसी को भी नहीं, कोई कभी भी सहयोग नहीं मिला। ये सभी उनके विरोध में थे, लेकिन वे बुरे दिनों के चिन्ह हैं, इससे पहले कि परमेश्वर न्याय को भेजे। और परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है और चाहता है कि उसका वचन उसके लोगों के द्वारा पूरा किया जाए। प्रभु की स्तुति हो। अब बंद करते हुए, अब बस कुछ मिनटों के लिए, अब ध्यान से सुने। परमेश्वर की ओर से एक मनुष्य भेजा गया था जिसका नाम यूहन्ना था, एक भविष्यवक्ता का चिन्ह, इससे पहले कि यीशु कभी धरती पर आए, स्वयं को घोषित करने के लिए उसने अपने आगे एक भविष्यवक्ता को भेजा। क्या उसने ऐसा किया? उसने एक भविष्यवक्ता भेजा, पुराने नियम का एलिया, जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि वह पुराने नियम के एलिया की सामर्थ्य के साथ आएगा। उसे एक भविष्यवक्ता का चिन्ह होना था कि यीशु आ रहा था, कि वहाँ एक मसीहा को आना था। और यूहन्ना जंगल से बाहर आया, वो एक चिन्ह था कि मसीहा अपने मार्ग पर था। जब यूहन्ना उपस्थित हुआ तो इज़राइल को उनके भविष्यवक्ताओं के द्वारा ज्ञात होना चाहिए था। यहीं पर लोग चूक जाते हैं, वे अपने भविष्यवक्ताओं का विश्वास नहीं करते, वे विश्वास नहीं करते। हम विश्वास नहीं करते कि पेंटिकॉस्ट के दिन पतरस ने जो कहा वो सही था, वे विश्वास नहीं करते कि यह सही है, वे विश्वास नहीं करते जो पौलुस ने कहा, उसी बात को पतरस ने कहा था, कहा यदि स्वर्ग से कोई दूत भी किसी और बातों का प्रचार करता है तो वह शापित हो, वे इसका विश्वास नहीं करते, समझे, वे इस पर विश्वास नहीं करते। और उन्होंने अपने भविष्यवक्ताओं पर विश्वास नहीं किया, यदि वे जानते होते तो वे जान जाते कि यशायाह ने कहा था, वहाँ जंगल में पुकारने वाले की आवाज़ सुनाई देगी जो प्रभु के आगे मार्ग को तैयार करेगी। उन्हें यह पता होना चाहिए था, वो एक भविष्यवक्ता था, भविष्यवक्ताओं का राजकुमार, उसने उन्हें बताया, लेकिन उन्होंने इसका विश्वास नहीं किया। नहीं नहीं, उसने कहा वहाँ एक मसीहा आ रहा है, यह मनुष्य परमेश्वर का भेजा हुआ मनुष्य था। ओ भाइयों, उसका कोई अनुयायी नहीं था, परमेश्वर ने उसे अनुयायी दिए, एक छोटा सा झुंड, ठीक जैसे उसने एलिया को दिया था। परमेश्वर ने उसे अनुयायी दिए, उसे यह किसी राजनीतिक संगठन से नहीं मिले, उसने वचन का प्रचार किया, परमेश्वर के वचन पर बना रहा, और परमेश्वर ने उसे एक छोटा सा झुंड दिया। एलिया परमेश्वर के वचन पर बना रहा, परमेश्वर ने उसे एक छोटा सा झुंड दिया। इस मनुष्य के पास कोई सहयोग नहीं था, उसका कोई अनुयायी नहीं था, कोई सहयोग नहीं था, वो किसी भी संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं था, कुछ भी नहीं मांगता था और किसी भी चीज से डरता नहीं था। वो यूहन्ना था, क्यों? वो परमेश्वर का भेजा हुआ एक मनुष्य था, यही कारण है कि वो खड़ा था। वो वहाँ पर खड़ा हुआ एलिया था कि लोगों को यह साबित करे कि मसीहा आ रहा था। उसने कहा, मैं जंगल में पुकारने वाले की आवाज हूँ, जैसा कि भविष्यवक्ता यशाया कहता है, प्रभु से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। वे फरीसी और सदूकी वहाँ पर खड़े हुए थे और उनके वस्त्रों और अन्य चीजों के बारे में विवाद कर रहे थे। ठीक जब वे इसके बारे में विवाद कर रहे थे और बहस कर रहे थे, ठीक उनके बीच में मसीहा आकर चल रहा था। यूहन्ना ने कहा, देखो वो वहाँ है, हालेलुया, उसकी ओर ध्यान दो। उसने उसका परिचय कराया था, वहाँ है वो ठीक अब तुम्हारे बीच में खड़ा हुआ है। लगभग उसी समय आकाश में गर्जना हुई, यीशु पानी में चलकर गया और यूहन्ना ने गवाही दी कि उसने परमेश्वर के आत्मा को पिंडुकी की नाई नीचे उतरते देखा। एक आवाज गरज रही है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं रहने से अति प्रसन्न हूँ। ओ मेरे प्रभु, यूहन्ना ने कहा, अब अवश्य है कि मैं घटूं, वो बड़े, ओ क्या ही भविष्यवक्ता है, इज़राइल के लिए एक चिन्ह है। जी हाँ श्रीमान, वो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ मनुष्य था, हालांकि उसका पिता एक याजक था। ओ जी हाँ, उसका पिता जकरया एक याजक था। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया, परमेश्वर उस भविष्यवक्ता को उनके संगठनों के साथ मिश्रित होने नहीं देगा। उसका पिता उसे धर्म ज्ञान के विद्यालय में ले जाता, उस बड़े फलाना और फलाना संप्रदाय में, आप जानते हैं, उसे एक अच्छा सेवक बनाता और उसे अच्छे से प्रशिक्षित किया होता और उसे बहुत सारी चीजें दी होती जिनकी उसे आवश्यकता नहीं थी। लेकिन परमेश्वर उसके प्राण को दूषित होने नहीं देगा। क्या आप समझ रहे हैं, वो उस मनुष्य को संगठनों के साथ मिश्रित होने नहीं दे सकता था। वह उनमें से किसी भी संप्रदाय से संबंधित नहीं था, फरीसी, सदूकी या हेरोदियन या जो कुछ भी हो सकता है, परमेश्वर इसकी अनुमति नहीं देगा। उसका अनोखा जन्म हुआ था, वो एक अनोखा बालक था, वो एक भविष्यवक्ता था। उसके पिता याजक थे, लेकिन उसने यूहन्ना को उनके सभी ढोंगी फरीसी धर्मों और चीजों के साथ मिश्रित होने नहीं दिया। उसने क्या किया, वह उसे बाहर जंगल में ले गया और उसे रेगिस्तान में प्रशिक्षित किया। क्या ही प्रशिक्षण है, आमीन। उसने उसे अनुभव से प्रशिक्षित किया, यही सबसे अच्छा है, परमेश्वर को जानना। जब वो बाहर आया तो वो जानता था कि उसका कार्य अधिकार क्या है। परमेश्वर ने उस कार्य अधिकार को प्रमाणित किया। उसने इसे कहाँ पर प्रमाणित किया, वहाँ नदी पर। अब यदि आप बातों को आपस में जोड़ सको तो समझ जाओगे, समझे, नदी पर। कहा, मैं उस जंगल में की एक पुकारने वाली आवाज हूँ, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसका मार्ग सीधा करो। यूहन्ना एक मनुष्य जो परमेश्वर द्वारा भेजा गया, परमेश्वर उसे इससे दूषित नहीं होने देगा। उसने उसे जंगल में प्रशिक्षित किया परमेश्वर के द्वारा, उसने उसे उनके विद्यालयों में प्रशिक्षित नहीं किया, न ही उनके धर्म ज्ञान में। यदि वो ऐसा करता तो वो उन सारी चीजों से भरा हुआ होता, जैसे आप आज विद्यालयों में से बाहर आते हैं, सभी प्रकार के विद्यालयों से, न ही केवल प्रेस्बिटेरियन, बैप्टिस्ट और मेथोडिस्ट, लेकिन पेंटिकॉस्टल स्कूल भी उतने ही बुरे हैं। उनमें से कोई भी धर्म ज्ञान का विद्यालय उन्हें वहाँ से बाहर लेकर आता है। ओह, उसका आगमन यशाया की आत्मा ने बताया, उसका आगमन यूहन्ना का आगमन, इसकी वचन में भविष्यवाणी की गई थी। यशाया 40:3 में कहा गया है, मैं अपने संदेश वाहक को अपने आगे आगे भेजूंगा, मार्ग को तैयार करूंगा। या यह मलाकी 3 था, कहा मलाकी 3 में कहा कि वह अपने संदेश वाहक को उसके आगे भेजेगा। भविष्यवक्ता, अंतिम भविष्यवक्ता, उसके विषय में कहा, अंतिम बात उसके विषय में बोली गई। याद रखें, पुराने नियम की अंतिम किताब में कहा कि एलिया उस मसीहा को दिखाने से पहले इज़राइल के बच्चों के पास आएगा। क्या आप तैयार हैं? बाइबल की अंतिम किताब प्रकाशित वाक्य हमें दिखाती है कि वहाँ अंतिम दिन में उसकी वापसी होगी। अन्य जाति कलीसिया के लिए एक चिन्ह, वे इसे कैसे चूक जाते हैं? उसने फिर से आने की भविष्यवाणी की है, उस महान और प्रभु के दूसरे आगमन से ठीक पहले। मलाकी में, मलाकी के 4th अध्याय में, प्रकाशित वाक्य में भी, 3rd अध्याय में भी हमें बताता है कि वह अंत के दिनों में यहाँ पर होगा, वही एक जो लोगों के लिए बीच दरार में खड़ा होगा, एक छोटे से झुंड के साथ जो परमेश्वर उसे देगा। वह अंतिम दिनों में आएगा, परमेश्वर ने ऐसा कहा है। वह इस अन्य जाति राष्ट्र के लिए एक चिन्ह होगा कि उसका समय अब और नहीं है। और याद रखें, जब वह दृश्य पर आता है तो समय निकट है। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो उसे भेजे, समय निकट है। जैसे ही उसकी सेवकाई समाप्त हुई, मसीहा ने स्वयं को प्रकट किया। जैसे ही यह एक महान अंतिम दिनों में आएगा, अपनी सेवकाई को समाप्त करेगा, मसीहा स्वयं को प्रकट करेगा। यह ऐसा ही होगा, समय निकट है, इसलिए अच्छा होगा कि हम प्रार्थना करें। अच्छा होगा कि आप प्रार्थना करना आरंभ कर दें। इस युग के लिए उसका परमेश्वर का दिया हुआ चिन्ह यह साबित करेगा कि वो क्या है। हर कोई इसे जान जाएगा, परमेश्वर इसे प्रमाणित करेगा। वो चिन्हों और अद्भुत कार्यों को दिखाएगा जैसे धरती पर कभी भी नहीं किया गया, इसके द्वारा करेगा। मेरा मतलब झटके देना, कांपना और अन्य जुबान में बोलना नहीं है। उसे परमेश्वर के वचन का समर्थन प्राप्त होगा जैसे इस मनुष्य को मिला। क्यों? उसके आने की भविष्यवाणी की गई थी मलाकी 4 और प्रकाशित वाक्य 3 में। इसलिए वो आएगा, उसे कोई भी रोक नहीं सकता, वो आ रहा है। आमीन। वो यहाँ पर होगा। आमीन। लोग अपने मुंह के बल गिरकर और आज परमेश्वर की दुहाई देना आरंभ करें और देखें कि क्या होता है। आप उसे स्पष्ट सामर्थ्य में देखेंगे। जी हाँ श्रीमान, वचन के अनुसार उसका चिन्ह का संदेश मोड़ना होगा। उसका क्या, हम उसकी पहचान कैसे करेंगे? हम कैसे जानेंगे कि ये सही है? आप जानते हैं, इसराइल ने एक बार व्यवस्था विवरण 20वें अध्याय में 20वें पद में पूछा था, मैं विश्वास करता हूँ कि यही है। उसने कहा, हम कैसे जानेंगे कि यह वही वो सही व्यक्ति होगा? हम कैसे जाने? परमेश्वर हमें बताता है कि हम उसे जान जाएंगे। वो क्या करेगा? वो बच्चों के हृदय को आरंभ में मूल पेंटिकॉस्टल संदेश की ओर वापस फेर देगा। ओ प्रभु, एक चिन्ह जिसे अनदेखा किया गया है, वो सच्चा चिन्ह, और वे इससे चूक जाते हैं। वे हमेशा चूक जाते हैं। सच्ची कलीसिया की ओर, सच्चे संदेश की ओर वापस, वह अकेले ही संप्रदाय के विरोध में खड़ा होगा, हिम्मत से और निडर होकर। यहोवा यो कहता है के साथ वह किसी भी संप्रदाय के साथ समझौता नहीं करेगा। उसका किसी से कोई लेना देना नहीं होगा। वह किसी भी चीज के स्वार्थ के लिए अपने स्थान का उपयोग नहीं करेगा। वो सीधे सीधे वचन पर होगा। यहोवा यो कहता है, परमेश्वर उसकी सेवकाई को चिन्हों और अद्भुत कार्यों के साथ प्रमाणित करेगा, वचन का महान प्रकाशन और लोगों के सामने लाने के द्वारा प्रमाणित करेगा। क्या ही एक दिन है जो निकट है। जैसे वह पत्रस और यूहन्ना की तरह खड़ा रहेगा पेंटिकॉस्ट के दिन के बाद, पेंटिकॉस्ट के बाद कि वे पवित्र आत्मा से भर गए, वहाँ बपतिस्मा लिया, तो वे उस महासभा के न्यायालय में खड़े हुए थे। वे वहाँ पूरी हिम्मत के साथ खड़े हुए थे, जितनी किसी में हो सकती है। जब उन्होंने कहा, हम तुम्हें अब आगे यीशु के नाम में शिक्षा देने से मना करते हैं, उसने कहा, क्या ये हमारे लिए सही है कि हम आपकी सुने या परमेश्वर की? आप आपस में ही इस बात का न्याय करें। वे अनपढ़ अशिक्षित थे। आमीन। वे भविष्यवक्ता थे। वे परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त भविष्यवक्ता थे। वे पवित्र आत्मा के चिन्ह थे। वे भविष्यवक्ता थे। वे जानते थे। वे बस यूहन्ना के समान ही थे। वे पेंटिकॉस्ट के दिन पर वहाँ गए थे और उन्होंने कुछ तो पाया था। वे आज के हमारे अधिकांश स्वयं से घोषित प्रचारकों की तरह नहीं थे, इस बात पर घमंड करते हुए कि हमारा संगठन कितना महान है, हमारे पास हमारे महान झुंड में कितने लोग हैं, हम एक महान संगठन के समान खड़े हैं, हम महान मिशनरी का काम करते हैं। ओह दया, ओह हमारे यहाँ उन बाकी सभी की तुलना में बहुत अधिक भीड़ है। यह क्या है? यह एक राजनीतिक खिंचाव है। मैं चाहता हूँ कि आप अगले 2-3 मिनट ध्यान से सुने। एक राजनीतिक खिंचाव, निश्चय ही मैंने कुछ मिनट पहले कुछ कहा है। आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। एक चिन्ह जिसकी भविष्यवाणी की गई है, मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया, इस बात को आपके पल्ले में डाल दिया, समझे? तो ठीक है, ना ही केवल आप जो यहाँ पर हैं, लेकिन वे जो सुनेंगे, ये आपके पल्ले में डाला है। इसके साथ जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वो करें। आप प्रार्थना करें और परमेश्वर को दृश्य पर आगे बढ़ते हुए देखें, उसे उसके वचन को पूरा करते हुए देखें। वो रुका हुआ है। जब वे परमाणु बम और लोग डरे होते हैं और पेंटागन, वे नहीं जानते कि क्या करना है, और आकाश में वे रहस्यमय चिन्ह, उड़न तशरी के चिन्ह और हर एक चीज जिसकी परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी, यह उस एलिया का समय है। वह कहीं तो है, दृश्य पर उठ खड़ा हुआ है। लोगों को, उस छोटे से झुंड को, उन थोड़े से बचे हुओं को जो परमेश्वर उसे देने जा रहा है, उन थोड़े से बचे हुओं को परमेश्वर को पुकारने दो और देखो कि क्या घटित होता है। एक राष्ट्रीय निर्णायक मुकाबला होगा। वहाँ एक सामर्थ होगी जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। परेशानी यह है कि इस बार उनके लिए बहुत देर हो चुकी होगी, दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसलिए याद रखें, हम अंत समय में हैं। प्रार्थना करें। आज जिसे हम सेवकाई कहते हैं उसे देखिए हमें क्या मिला है। अब बंद करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ हमें क्या मिला है। हमें कुछ भी नहीं मिला है। हमारे कुछ सबसे महान अगुवे, हमारे सबसे महान सुसमाचारक, हमारे एक महान सुसमाचारकों में से एक ने कहा, यदि मैं मेरे द्वारा परिवर्तित लोगों में से 10% को भी टिका हुआ पा सकता हूँ एक वर्ष में, तो मैं बहुत ही धन्यवाद करूंगा। जबकि यहाँ तक कि पीछे फिन्नी के परिवर्तित लोगों में से 97% टिके रहते थे। पौलुस के पास तो सैकड़ों के ऊपर सैकड़ों, सैकड़ों के ऊपर सैकड़ों थे। एक बच जाता और वो इतना भर जाता था भाई, वो जाकर और किसी और को बताता, वो किसी और को बताता और वो किसी और को बताता, लाखों में चला गया। क्यों? उनके पास कुछ तो था, वे वचन पर थे। आज हम बस बड़ी भीड़ के बारे में सोचते हैं। ये क्या है? ये एक राजनीतिक संगठन है। यदि हम आते हैं, कोई महान सुसमाचारक शहर में आता है तो सबसे पहले क्या आता है? कुछ लोगों का झुंड। यदि सारे मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, वे सभी, वे एक छोटा सा कार्यक्रम का ढांचा तैयार कर लेते हैं कि वे ये केवल यही प्रचार कर सकते हैं और वो इसका प्रचार नहीं कर सकता है और वो इसे प्रचार नहीं कर सकता है, लेकिन वो इसका प्रचार कर सकता है। आपको क्या मिला है? और वे स्त्रियां वहां ऊपर चलकर आती हैं। मैं पेंटिकॉस्टल की बात कर रहा हूं। स्त्रियां वहां ऊपर वेदी की ओर जाती हैं। वे आगे आने के लिए विनती करती रहती हैं। मैं हमेशा से ही वेदी की पुकार के विरोध में रहा हूं। इसे भी साफ साफ कह देना चाहिए, मैं उन पर विश्वास नहीं करता। बाइबल में ऐसी कोई चीज ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति कैसे आ सकता है? जब तक परमेश्वर उसे नहीं बुलाता है आप उसे रोक कर नहीं रख सकते। आपको किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर ने उसे बुलाया है। वेदी की पुकार एक मेथोडिस्ट विचार है, यह सही बात है। वेदी की पुकार, वे उन्हें पकड़ लेते हैं, कहते हैं, जॉन तुम जानते हो तुम्हारी माँ का बहुत समय पहले निधन हो गया था। हाँ भाई, यह परिवर्तन करना नहीं है। यहाँ कुछ रात पहले लुइसविले में हमने एक दिखावे को देखा था। एक महिला को एक ताबूत में लाया गया था। इसे शास्त्रागार के एक मंच पर रखा गया। सैकड़ों लोग कहा वेदी की ओर दौड़े। सुसमाचार कोई डराना नहीं है, यह कोई सहानुभूति पूर्व भावना नहीं है, यह तो एक विश्वास का परिवर्तन है। इन सभाओं पर ध्यान दें, इन महान सुसमाचारकों पर, और यहाँ तक कि मेरी नम्र छोटी सेवकाई में, ना ही मुझे छोड़ते हुए कभी कभी बाहर जाते हुए मुझे शर्म सा महसूस होता है। यह सही है, हमें अब क्या करना है? खड़े होकर और वेदी की पुकार करते हैं और उन्हें आगे आने के लिए राजी करते हैं। छोटी लड़कियां वहां पर आती हैं और सभी चुंगम चबाती हुई कहती हैं, देखो देखो मैं आगे जा रही हूँ। ये स्त्रियां वहां पर आगे आती हैं, कटे हुए छोटे बालों के साथ और रंगे हुए चेहरों के साथ, पेंटिकॉस्टल, और अंदर जाकर और बाहर आती हैं और कहती हैं कि उन्होंने अन्य जुबान में बोला और अपने बालों को कभी बढ़ने नहीं देती और अब भी वही काम करती हैं जो वे करती थी। आप मुझे बताएं कि यह परिवर्तन है? यह परमेश्वर का उपहास उड़ाना है। बाइबल कहती है यह उनके लिए एक पाप और अपमान की बात है कि वे अपने बालों को काटें। कैसे एक स्त्री जिसके बाल कटे हुए हैं उस स्त्री को दोषी ठहरा सकती है जिसका चेहरा रंगा हुआ है? इसे सुन लेना ही उचित है। वो घड़ी आ रही है जब तक कि कुल्हाड़ी पेड़ की जड़ पर नहीं रखी जाती है, और हर एक पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता वह काट डाला जाता है। क्या मामला है? यह गलत है, क्योंकि हमारे आधुनिक तथाकथित प्रचारक यहाँ पर बड़ी भीड़ और घमंड से भरे हुए, वे संगठन परमेश्वर के विषय में अधिक नहीं जानते हैं, जितना कि एक मिस्र की रात के बारे में हॉटेंटॉट जाति जानती है। जब ये आता है वे वहाँ पर जाते हैं। क्या होता यदि वे लोग पेंटिकॉस्ट के दिन वहाँ पर जाकर और कहते, अब यीशु ने हमें आज्ञा दी है कि हमें यहाँ ऊपर जाना चाहिए और तब तक यहीं बने रहना चाहिए जब तक हमें ऊपर से सामर्थ प्राप्त न हो जाए। अब भाइयों, हम पहले से ही यहाँ 9 दिन से हैं। आइए हम इसे विश्वास के द्वारा स्वीकार कर लें। अब हमारे पास पवित्र आत्मा है। हम बाहर जाते हैं क्योंकि हम यहाँ पर रह चुके हैं। हमने वही किया जो यीशु ने हमें करने के लिए कहा। तब वहाँ कभी कोई अनुभव नहीं मिला था। मैं आपको कुछ तो बताना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह टेप पर है, लेकिन जो भी हो, यहाँ ये आता है, सुनना, मैं आपको कुछ तो बताने जा रहा हूँ। यह शर्म की बात है, लोग कोशिश करते हैं। मैंने कभी भी यह विश्वास नहीं किया कि पवित्र आत्मा ऐसे हिलना होता है। मैंने कभी यह विश्वास नहीं किया कि पवित्र आत्मा अन्य जुबान में बोलना या रोना या चिल्लाना इसका प्रमाण है। वे भावनात्मक अनुभूतियां हैं। मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा ऐसा कर सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा तो दैविकता का वास करना है। मैं विश्वास करता हूं कि लोगों का एक बड़ा झुंड जो पवित्र आत्मा होने का दावा करता है उसके विषय में एक चीज भी नहीं जानता है। आप परमेश्वर से भेंट करते हैं, कैसे पेंटिकॉस्ट के दिन उन्होंने कहा, अब जैसे कि आज के बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और मेथोडिस्ट, मैं पूछता हूँ क्या आप विश्वास करते हैं कि आपके पास है? ओह हाँ, हम इसे विश्वास के द्वारा स्वीकार करते हैं। विश्वास के द्वारा कुछ भी नहीं, ये ऐसा नहीं है, यह एक सनसनी है। आपको सूर्यास्त देखना पसंद है, आप खड़े होकर और सूर्य को डूबते हुए देखते हैं और रोते हैं और आंसू बहने लगते हैं। यह परमेश्वर नहीं है, यह भावना है किसी चीज से जो आप में है। जब आप किसी के बीमार होने या किसी के मरने की खबर सुनते हैं, आप चिल्लाते हैं और रोने लगते हैं। यह परमेश्वर नहीं है, यह मानवीय भावनाएं हैं। कैसे परमेश्वर? मैंने लोगों को एक गेंद के खेल में देखा है, वे इतने खुश हो जाते हैं कि उनके होठ हकलाने लगते हैं, बाकी की हर एक चीज करते हैं। मुझे मत बताओ, हमें बेदारी की आवश्यकता है, एक उद्धार की। और पेंटिकॉस्टल लोग आते हैं, लोगों को भावनात्मक रूप से उत्तेजित करते हैं और उन्हें बताते हैं, जब वे अन्य जुबान में बोलते हैं तो उन्हें पवित्र आत्मा मिल गया है, और उसके बाद में उनमें से कुछ लोग हर प्रकार का जीवन जीते हैं। सुनो भाई, पेंटिकॉस्ट के दिन ऐसा नहीं था, उन्होंने कभी किसी अन्य भाषा या किसी चीज पर निर्भर नहीं थे। जब वे वहाँ पर थे, एक स्थान पर खड़े हुए थे, एक चित होकर परमेश्वर नीचे उतर आया, सचमुच उनके बीच उतर आया। उन्होंने देखा कि उनमें से हर एक के ऊपर आग की दीप की लपटें लगभग इस तरह से उनके सिर के ऊपर ठहरी हुई हैं। परमेश्वर वहाँ पर था, ऐसा नहीं था इसे विश्वास या किसी भावना के द्वारा स्वीकार करें। वे पवित्र आत्मा से भर गए और फिर बाहर जाकर अन्य जुबान में बोलना आरंभ किया, लेकिन पहले उन्होंने परमेश्वर से भेंट की। आज यही मामला है, लोग उत्तेजित हो जाते हैं, जोश में आते हैं, भावुक हो जाते हैं, और यह पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा दैविकता का वास करना है, आपके शब्द उसके वचन होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आज हमें जिस चीज की आवश्यकता है वो है एक बुलावट। लोग अंदर जाते हैं, ऐसी महिलाएं अंदर जाती हैं, अन्य जुबान में बोलती हैं, वापस बाहर आ जाती हैं, और आप उनके स्थानों पर जाते हैं जहाँ पर उनकी कलीसियाएं होती हैं। काश की बिल्ली यहाँ पर बैठा होता। मुझे अभी कुछ दिन पहले ही कहीं से एक पत्र मिला जिसमें एक महिला ने कहा, मैं किसी एक बड़ी पेंटिकॉस्ट के सबसे बड़े संगठन, बड़े ट्रिनिटेरियन संगठन से थी। उन्होंने कहा, हमारी सभी स्त्रियों ने, भाई ब्रैनम, सभी ने अपने बाल काट डाले हैं। मेरे लंबे काले बाल थे। उसने कहा, मैंने हमेशा ही इस बात को पसंद किया क्योंकि मैंने विश्वास किया कि यह प्रभु की ओर से है। कहा, मैंने कभी श्रृंगार नहीं किया, पर हमारी कलीसिया में सिखाया जाता है कि यह पुराना फैशन है। कहा, वे मुझे बताते हैं कि जब मैंने अपने बालों को पीछे की ओर जूड़ा बांधा था, कहा, देखो तुम्हारा पिछला टायर पंचर हो गया है, और इसी तरह की बातें करते हैं। कहा, तुम अपने सिर के पीछे एक पंचर टायर को लेकर चल रही हो। और कहा, अंत में मेरे पति ने कहा, तुम अपने बाल क्यों नहीं कटवाती हो और बाकी महिलाओं की तरह क्यों नहीं बन जाती हो। अब मैं उसके लिए जवाबी पत्र भेज रहा हूँ। उसने कहा, क्या ऐसा है? मैंने आपका एक टेप सुना है कि मसीही बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में है। अब आप जानते हैं कि उसे क्या मिलेगा, क्या आप नहीं जानते? उसने कहा, मुझे बताएं भाई ब्रैनम, मुझे भूख लगी है, मैं जानना चाहती हूँ कि मैंने क्या किया है। मैं कहने जा रहा हूँ, आपके उस पिछड़े पति पर शर्म आती है, और वो परमेश्वर रहित झुंड जिसके साथ आप आराधना कर रहे हैं उनमें से बाहर आ जाओ। ठीक है, परमेश्वर नहीं बदल सकता। जब परमेश्वर कुछ कहता है तो उसका अर्थ वही होता है। मैं परवाह नहीं करता कि कितने पिछड़े हुए प्रचारक जो समझौता करना चाहते हैं एक बड़े संगठन या एक झुंड को लेने के लिए। हमें उद्धार कर्मियों की आवश्यकता है, वे पुरुष जो खड़े होकर और अपनी पत्नियों को ऐसा करने देते हैं। मुझे आपके मसीही होने के अनुभव में थोड़ा कम भरोसा है। सही है, पश्चाताप करें या तो नाश हो जाएं। हे प्रभु, इस तरह से अंदर जाते हैं, कलीसियाओं से जुड़ते हैं, पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं से जुड़ते हैं, वापस बाहर आते हैं और कभी जरा भी नहीं बदलते, उसी चीज में बने रहते हैं, कभी भी थोड़ा सा भी नहीं हिलते। ओह दया करें, ये क्या है? आधुनिक इजाबेल बाइबल में केवल एक ही महिला है जिसने अपने चेहरे को रंगा और परमेश्वर ने उसे कुत्तों को खिला दिया। आधुनिक इजाबेल अपने आहाब को कॉलर से घसीटते हुए यहाँ वहाँ फिरती हैं। कोई भी छोटा सा डरपोक पुरुष जो अपनी पत्नी को ऐसा करने देता है, छोटे कपड़े और आधी आधी पहनने देता है और यहाँ सड़क पर निकलती हैं और ऐसे कपड़े पहनकर ऐसा दिखाई देता है उसकी खाल कसी हुई है जैसे मांस के ऊपर खाल चढ़ी होती है। और जाकर मैं ये मजाक में नहीं कह रहा हूँ, यह मजाक करने का स्थान नहीं है, यह परमेश्वर का वचन है, यह सच है, सही है। सड़क पर इतना तंग कपड़े पहनकर चलती हैं, इतना तक कि वो चल भी नहीं सकती, तब कोई पुरुष उसके विषय में कोई टिप्पणी करता है और आप उससे लड़ना चाहते हैं, आपको तो आपके गाल पर थप्पड़ मारने की जरूरत है, यह सही है, क्योंकि उसे ऐसा करने देते हैं। यह दिखाता है कि आप किस चीज से बने हैं, यह बिल्कुल सही है। हमें जिस चीज की आवश्यकता है वो है सुसमाचार। परमेश्वर किसी ऐसे व्यक्ति को उस दृश्य पर खड़ा करे जो सीधे वचन की ओर वापस जाए। परमेश्वर ने कहा कि यहाँ तक कि एक महिला का बाल कटवाकर कलीसिया में आना और प्रार्थना करना भी सभ्य बात नहीं है, और एक महिला जो अपने बाल काटती है एक पुरुष को उससे तलाक लेने का पूरा अधिकार है, वो एक अपमानजनक महिला है, बाइबल ने ऐसा कहा, वह अपने पति के लिए अपमानजनक है। हो सकता है उसे ये पता न हो, कोई भी महिला जो छोटे कपड़े पहनती है ये अपमानजनक बात है, वो शायद यह नहीं जानती हो। महिला, मैं आपको ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको आग की झील से और नरक से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, पश्चाताप करें। ठीक है, आप कहते हैं मुझे पवित्र आत्मा मिला है, फिर इस तरह से व्यवहार करते हैं जिस तरह से परमेश्वर आपके अंदर वास करता है, वही परमेश्वर जिसने आपको ऐसा करने के लिए कहा है। तो ठीक है, आप कहते हैं मैंने अन्य जुबान में बोला, मैंने शैतानों को अन्य जुबान में बोलते देखा है, मैंने देखा है अफ्रीका में मनुष्य की खोपड़ी से लहू पीते हैं और अन्य जुबान में बोलते हैं और शैतानों को पुकारते देखा है। मैं जादूगरों और जादू टोना करने वालों के शिविरों में रहा हूँ जहाँ वे अन्य जुबान में बोलते हैं और इसका अनुवाद करते हैं। मैंने देखा है कि पेंसिलें मेज पर रखी होती हैं और अज्ञात भाषाओं में लिखती हैं और कोई व्यक्ति वहाँ पर आकर इसका अनुवाद करता है। यह सच होता था। मुझे अन्य जुबानों के विषय में न बताएं, हमारे पास अभी इसकी बहुत अधिकता है, फिर भी मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के पास एक अज्ञात भाषा है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर अन्य भाषा में बोलता है, लेकिन उस पर निर्भर ना रहें। पौलुस ने कहा, भले ही मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियाँ बोलूँ और मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है तो मैं अब भी कुछ नहीं हूँ, भले ही मैं पहाड़ों को हटा सकता हूँ। बहुत से लोग यह कहने की कोशिश करते हैं, ओह यह परमेश्वर का एक महान व्यक्ति है, तुम्हें महान अद्भुत कार्य को देखना चाहिए। क्यों? शैतान चंगा करता है, शैतान बाहर निकलकर और इस तरह की चीजों को करता है। मैं ऐसी जादूगरनियों को जानता हूँ जो बाहर जाकर और इस तरह की चीजें करती हैं। उसके चारों ओर एक इस तरफ से एक बड़ा रुमाल होता है, वे लोग उसमें पैसे डालते हैं, वो अपने सिर के पीछे से बाल निकालकर उन्हें खून में लपेटती है और उसमें डाल देती है। और वे लोग ईमानदार लोग होते हैं, वे इस पर विश्वास करते हैं, यह वो मनुष्य नहीं है, ये ऐसे लोग होते हैं जो विश्वास करते हैं कि वे जादू टोने के जरिए से परमेश्वर के पास जा रहे हैं। क्या यीशु ने नहीं कहा, उस दिन बहुत से मेरे पास आएंगे और कहेंगे मैंने बड़े बड़े चंगाई के अभियान किए थे। ये कोई चिन्ह नहीं है, यह एक चिन्ह है कि हम अंत में हैं। क्या यीशु ने मत्ती के 24वें अध्याय में लगभग 24वें पद में भी नहीं कहा, 24:24, और उसने कहा अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह दिखाएंगे, यहाँ तक कि वे चुने हुए को भी भरमा देंगे यदि यह संभव होता तो। लेकिन चुने हुए वचन पर खड़े होते हैं, वे जानते हैं कि एक सच्चा चिन्ह क्या होता है। कैसे एक मनुष्य जो इन चीजों को कर सकता है, जो परमेश्वर के विश्वास का इनकार करता है, कहता है कि वह प्रभु की ओर से एक भविष्यवक्ता है? आखिर एक व्यक्ति भला कैसे हो सकता है? वो एक भविष्यवक्ता हो सकता है, जैसे वे आहाब और यहोशापात के समय में थे जब मिकाया खड़ा हुआ था, लेकिन उनके पास वहाँ एक व्यक्ति था जो वचन पर खड़ा था, एलिया। प्रभु का वचन लिखा गया था कि आहाब उसके अंत में आ जाएगा और एलिया का दर्शन उसके साथ था। और कोई भी मनुष्य जो खुद को आत्मिक या भविष्यवक्ता कहता है, स्वीकार करता है कि इसका हर एक वचन सत्य है, वो भला कैसे एक त्रिएकतावादी हो सकता है? वह कैसे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दे सकता है और कहता है कि वो आत्मा से अभिषिक्त है? वो भला कैसे लोगों को उस गलत बात को सिखा सकता है और फिर भी कैसे आत्मा से अभिषिक्त हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, यह असंभव है। मैं समझता हूँ कि यह लोकप्रियता नहीं है, लेकिन हम लोकप्रिय नहीं होना चाहते, आपको ईमानदार होना चाहिए। अब इजाबेल और वे आहाब, जी हाँ श्रीमान, क्यों वे ऐसा क्यों करते हैं? वे स्त्रियां ऐसा क्यों करती हैं? अपने बालों को काट कर रखती हैं और श्रृंगार करती हैं और बाहर जाकर छोटे कपड़े पहनती हैं। जब पुरुष वहां से गुजरते हैं और इस तरह की चीजें करती हैं, उनके पति ऐसा करते हैं क्योंकि उनके पास उनके पुलपिट में एक सच्चा भविष्यवक्ता नहीं है जो कि उन्हें सच्चाई को बताए, वे उन्हें बताते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें कोई बात नहीं, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। आपका यह प्रभु का वचन है। बाइबल ने कहा कोई भी स्त्री जो पुरुष के वस्त्र पहनती है वो परमेश्वर के सामने एक घृणित बात है। परमेश्वर नहीं बदलता, वो कैसे बदलकर और परमेश्वर बना रह सकता है? वो तो अनंत है। उन्हें एक सच्चे भविष्यवक्ता की आवश्यकता है जो उन्हें बताए कि यह अंत का चिन्ह है। बाइबल ने कहा कि वे इसे करेंगे। यशाया 5वां अध्याय कहता है कि स्त्रियां अंतिम दिनों में ऐसा करेंगी। बिल्कुल, तो वहाँ पर वे हैं, लेकिन वे कहते हैं कि उनके पास पुलपिट में एक भविष्यवक्ता है जो परमेश्वर के वचन से डरता है, ना ही वह तो सभा के लोगों से डरता है। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे लिए उस अंतिम उजियाले को भेजे, उस सांझ के उजियाले को, हमारे लिए एक को भेजे जिसे भेजने की उसने प्रतिज्ञा की है, चुनी हुई कलीसिया के लिए, जो उन्हें बताएगा कि सच्चाई क्या है, परमेश्वर के वचन पर खड़ा रहेगा। इजाबेल और वे आहाब को, तब वे उन्हें अलग कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। याद रखें, जब महिलाएं इस तरह से व्यवहार करना आरंभ करती हैं, अब जरा सा पीछे की ओर जाएं, जब उन्होंने अपने बालों को काटना आरंभ किया और इस प्रकार का व्यवहार करने लगी, जब स्त्रियां इस प्रकार का व्यवहार करने लगती हैं, तो यह उस समय और उस ऋतु में होता है जब अंतिम दिनों में एलिया अंत समय के चिन्ह के साथ दृश्य पर प्रकट होना है, अंत समय के चिन्ह के साथ, जैसे यह लूत के दिनों में था। देखा, अंत समय का चिन्ह, जब महिलाएं इस प्रकार का व्यवहार करना आरंभ करती हैं, वे अभी इस तरह का व्यवहार कर रही हैं। यह उस समय पर होता है जब एलिया को दृश्य पर प्रकट होना है, वो चीजों को साफ करता है और पुकारता है, डांटता है और फटकार लगाता है। ठीक उसके पीछे परमेश्वर के चिन्ह के साथ वो आगे बढ़ता है। वो अब किसी बड़े झुंड को नहीं बुलाएगा। बाइबल ने कहा डरो मत छोटे झुंड, ये तुम्हारे पिता की भली इच्छा है कि तुम्हें राज्य को दे। यह सही है, यह बिल्कुल सही है। उसे छोटे झुंड को छोड़ सभी के द्वारा अस्वीकार किया जाना है, क्योंकि वह अपने 700 लोगों के साथ एलिया के जैसे है और यूहन्ना अपने छोटे झुंड के साथ है। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि हम आज कहाँ खड़े हैं। हमें मूल पेंटिकॉस्ट की ओर वापस जाना होगा, हमें परमेश्वर की बातों की ओर वापस जाना है, हमें वापस जाना होगा। भाइयों बहनों, अपने अनुभव में भरमाए मत जाओ, हम उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप बस इसे ना लें। मैं ऐसी आशा करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास के द्वारा इसे स्वीकार करता हूँ। आप ऐसा न करें, आप परमेश्वर से आमने सामने भेंट करते हैं और आप आत्मा से भर जाएंगे और फिर आप देखेंगे कि क्या होता है। और यदि वो आत्मा आप में है जो इस वचन के विपरीत होती है, तो आप उस आत्मा को छोड़ दें, जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करें कि तब आपको उसकी आत्मा दे। जब यह आत्मा अंतिम दिन में उठेगी, तो यह उनके विरुद्ध एक चेतावनी होगी, वे जो झूठे हैं। देखा, क्योंकि यूहन्ना ने कहा अपने आप में भीतर ही भीतर ये मत सोचो कि हमारे पास हमारा पिता अब्राहम है, हमारे पास हम हमारे पूर्व पिता मेथोडिस्ट बैप्टिस्ट प्रेस्बिटेरियन या पेंटिकॉस्टल थे। तुम यह कहने के लिए मत सोचो परमेश्वर और तुम अब्राहम की संतान हो, क्योंकि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान को खड़ा कर सकता है। यह मत सोचें क्योंकि आप पेंटिकॉस्टल हैं तो आपको क्षमा कर दिया जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान को खड़ा करने में सक्षम है। यह बिल्कुल सही है। जी हाँ श्रीमान, बस परमेश्वर के वचन को बोलो, अंतिम दिन की सच्चाई में उसकी भविष्यवाणी है। यदि आप चाहें तो मैं बस एक मिनट के लिए यहाँ वापस आऊँगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे पता लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत से वचन लिखे हुए हैं, मैं बस उनका उल्लेख कर रहा था। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। आइए हम व्यवस्था विवरण को लें, 18वां अध्याय, और हम देखेंगे। बस एक मिनट, बस वैसे ही इससे पहले कि हम यहाँ बंद करें, तो मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ सकता हूँ व्यवस्था विवरण में 18वां अध्याय। तो ठीक है, और आइए अब हम देखें 18वें अध्याय का 20वां पद, व्यवस्था विवरण 20। परंतु जो भविष्यवक्ता ऐसा मानकर मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे कहने के लिए न दी हो,
that shall speak in the name of other gods,
वह पराय देवताओं बहुवचन के नाम से कुछ कहे वह भविष्यवक्ता भी मर जाएगा। यह सही है, आत्मिक रूप से मर जाता है तो ठीक है, जो प्राण पाप करता है वो मर जाएगा। हमारे पास एक परमेश्वर है, ना कि बहुत से परमेश्वर। और यदि तू अपने मन में कहता है कि जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम वचन को किस रीति से पहचाने, हम कैसे पहचानेंगे? उनमें से बहुत से होंगे, हम कैसे पहचानेंगे? यह एक ऐसा कहता है, दूसरा इस प्रकार से कहता है, तो एक ऐसा कहता है और दूसरे ने ऐसा कहा और इत्यादि। अब ध्यान दें, हम जानते हैं जब एक भविष्यवक्ता यहोवा के नाम से बोलता है, तब यदि वह वचन घटित ना हो और पूरा ना हो तो वह वचन यहोवा का बोला हुआ नहीं। परंतु उस भविष्यवक्ता ने वह बात अभिमान करके कही है, तो उससे भय न खाना। यदि परमेश्वर ने इसे नहीं कहा है तो इससे डरो मत, यह सब ठीक है, बस आगे बढ़ो और इसके बारे में भूल जाओ, समझे? अब उसकी ओर देखो, हम आज क्या सुनते हैं? प्रेरितों का मत सिद्धांत, मेथोडिस्ट का मत सिद्धांत, बैप्टिस्ट का मत सिद्धांत, पेंटिकॉस्टल का मत सिद्धांत, मत सिद्धांत, मत सिद्धांत, मत सिद्धांत। एक मत सिद्धांत क्या है? आपको ये कहाँ से मिलता है? मैं किसी को भी चुनौती देता हूँ कि मुझे बाइबल में प्रेरितों का मत सिद्धांत दिखाए। मैं सोचता हूँ कि वहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है। यदि प्रेरितों के पास कोई सिद्धांत था जिस पर वे कभी टिके रहे, तो यह यहाँ है। तुम में से हर एक जन पश्चाताप करे और अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले और तुम पवित्र आत्मा के दान को पाओगे, क्योंकि प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए है। क्या आप नहीं देखते कि हम कहाँ पर हैं मित्रों? हम एक भयानक स्थिति में हैं। यह क्या है? एक सच्चा चिन्ह जिसे अनदेखा किया गया है। अब आप में से अधिकांश पुरुष और महिलाएं, और आप परमेश्वर की संतान हैं, इसे अनदेखा न करें। याद रखें कि हमारे पास ये चीजें होनी चाहिए, उन्हें इस दिन में घटित होना है, इस घड़ी में जिसमें हम अभी रह रहे हैं। यह वो घड़ी है, मसीहा के आने से ठीक पहले वहाँ परमेश्वर की ओर से एक घोषणा होनी चाहिए। मुझे आपके लिए इसे पढ़ने दो। आइए हम वापस मलाकी की ओर जाएं। यह पुराने नियम के अंतिम में है और सुनिए कि वो यहाँ मलाकी में क्या कहता है, तब हम इसे अब कुछ क्षण के लिए सुनना। अब यदि आप ध्यान दें, मलाकी 3 बोल रहा है कि यीशु ने यूहन्ना के आने के बारे में कहा, देखो मैं अपने संदेश वाहक को भेजूंगा और वो मेरे आगे आगे मार्ग को तैयार करेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। यहाँ तक वाचा का वो संदेश वाहक जिससे तुम प्रसन्न होते हो, देखो वो आएगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। यह यूहन्ना था जो यीशु के आगमन की घोषणा कर रहा था और वो मंदिर में आया, ठीक वही जो उसने कहा, वाचा का संदेश वाहक, वो दूत जो कि जंगल में चेलों के साथ था, मेरा मतलब इज़राइल के साथ। क्या आप विश्वास करते हैं कि यह वही संदेश वाहक था? तो उसने कहा, मैं परमेश्वर से आया हूँ और मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ। अब पौलुस को एक बीमारी क्यों दी गई थी? उसे नम्र बनाए रखने के लिए। यीशु के मरने और गाड़े जाने और फिर से जी उठने के बाद, लंबे समय के बाद, पौलुस की उससे दशमिश के मार्ग पर आमने सामने भेंट हुई। उसने कहा, मैं परमेश्वर से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। पौलुस ने ऊपर की ओर देखा, वहाँ एक बड़ा उजियाला था, वही अग्नि का स्तंभ। क्या आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? वही अग्नि का स्तंभ। और पौलुस ने उससे बात की और उसने वापस पौलुस से बात की। लोगों ने उसे नहीं सुना, उन्होंने उसे नहीं सुना, लेकिन पौलुस ने उसे सुना। उसने कहा, शाऊल शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, प्रभु आप कौन हैं? उसने कहा, मैं यीशु हूँ, अब उठकर और सीधी कहलाने वाली गली में चला जा, तुझे वहाँ से आगे बताया जाएगा। मेरा एक भविष्यवक्ता है जो वहाँ पर आ रहा है कि तुझे बताए कि क्या करना है, तू देखना। और कैसे पौलुस ने वहाँ जाकर बपतिस्मा लिया और प्रभु को पुकारा, पवित्र आत्मा को पाया। और पौलुस ने कहा, मेरे शरीर में एक दुर्बलता थी जो मुझे दी गई थी, एक शैतान, शैतान का एक दूत जो मुझे घूसे मारता है। यह इस तरह से है, एक के बाद एक बार वह अच्छा हो जाता है और फिर इसे लेता है और फिर से मारता है। कहा, मैंने 3 बार प्रभु से परामर्श किया कि इसे मुझसे दूर ले जाए, लेकिन प्रभु ने कहा, पौलुस मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। फिर कहा, इतना तक कि प्रकाशन की बहुतायत से मैं फूल न जाऊं। उसके पास याकूब, यूहन्ना या पतरस, उनमें से किसी से भी अधिक प्रकाशन था। उसके चले जाने के बाद उसने उसे देखा क्योंकि हो सकता है दो वर्ष या उससे अधिक एक अग्नि के स्तंभ में खड़ा हुआ उससे बात कर रहा था। 2000 years. आज वो कितना अधिक महान है 2000 वर्ष के बाद और वो अब भी जीवित है। आमीन। कहा मुझे इसे दिया गया था इतना तक कि मैं फूल न जाऊं। कहते हुए अब भाई मैं आप सभी से ऊपर हूं। देखा मैंने उसे उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद देखा है और मैंने उससे बात की है। मैं यहां तक मैं वहां खुद को ऊपर न उठाऊं। वहां मुझे कुछ तो दिया गया था ताकि मुझे नम्र बनाए रखे। जी हाँ वही वो एक था जिसने उन्हें यीशु के नाम में फिर से बपतिस्मा लेने के लिए कहा। कहा यदि स्वर्ग से एक दूत, उसने कहा मैं उनके विद्यालयों में नहीं गया जहाँ कहीं भी वो थे। कहा मैं तुरंत ही यरूशलेम नहीं गया और ना ही 14 वर्ष तक। कहा मैं वहाँ मिस्र में चला गया, वहाँ नीचे एशिया में, और उसने प्रभु से परामर्श किया। वो वहाँ पर लगभग 3 वर्षों से था, पुराने नियम का अध्ययन कर रहा था, इस सब के साथ तुलना करके देख रहा था। जब वो वापस आया 14 वर्ष के बाद पतरस और उन लोगों से मिला और उनके पास वही सुसमाचार था, उसी तरह का बपतिस्मा और उसी चीज को किया। आमीन। वो जानता था कि यह सही था। जी हाँ श्रीमान। अब मलाकी को सुनना, यहाँ पर मलाकी 3। अब यदि आप कर सकते हैं तो मैं आपके लिए इसे स्पष्ट कर दूं, मैं विश्वास करता हूँ। आइए हम अब बहुत ही सहजता से मती के 11वें अध्याय की ओर जाएं और देखें कि क्या मैं, हो सकता है मैंने गलत लिया है। मैं सोचता हूँ कि मुझे यह मिल गया है। मुझे इसे समझने के लिए शायद पहले देखना होगा। मती 11, आइए हम देखें, यहाँ से आरंभ करें। और ऐसा हुआ जब यीशु अपने 12 चेलों को उसकी आज्ञा को देना समाप्त कर चुका, वो वहाँ से शिक्षा देने और उनके नगरों में प्रचार करने को चला गया। और अब जब यूहन्ना ने सुना कि वो कैद में मसीह के कामों को सुना था, जो कैद में मसीह के कामों को सुना, उसने अपने 2 चेलों को भेजा और उससे कहा कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जो है। यूहन्ना की उकाब की आँख ने वहाँ कैद खाने में फिल्म को देख लिया, समझे। यीशु ने उत्तर दिया और उससे कहा जाकर यूहन्ना को इन बातों को फिर से सुनाओ जो तुम सुनते और देखते हो। यूहन्ना एक भविष्यवक्ता है और यदि वह इसे सुनेगा कि क्या हो रहा है, वो जान जाएगा कि मैं कौन हूँ, समझे। उसने कहा कि अंधे को उनकी दृष्टि मिलती है और लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जलाए जाते हैं और सारे संप्रदाय एक साथ हैं। यह इस तरह से नहीं कहता है, क्या ये कहता है? नहीं, ये ऐसा नहीं कहता है। इसने कहा लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध होते हैं, बहरे सुनते हैं और मुर्दे जलाए जाते हैं और उन कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। यहाँ वो चिन्ह है, देखो। और जब वे चले गए, और धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर नहीं खाता है। अब ध्यान दें, धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर नहीं खाता है, दूसरे शब्दों में, या मुझसे लज्जित नहीं होता है। धन्य है वो जो मुझसे लज्जित नहीं होगा। देखा, जब वे वहाँ से चल दिए तो यीशु भीड़ से यूहन्ना के विषय में कहने लगा, तुम वहाँ जंगल के अंदर क्या देखने गए थे? अब इस भविष्यवक्ता को देखें, तुम वहाँ जंगल के अंदर क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? ना ही यूहन्ना को। ओह नहीं, तुम घास में छुपे सर्प की पीढ़ी हो, उसने उन संप्रदायों से कहा जिसने तुम्हें चेतावनी दी है कि आने वाले क्रोध से भागो। यह कहना आरंभ न करना, हम इस और उससे संबंध रखते हैं क्योंकि परमेश्वर इन पत्थरों से संतान को खड़ा कर सकता है। ओह भाई, यह उसके साथ हवा से हिलता हुआ एक सरकंडा नहीं था। हवा से हिलते हुए एक सरकंडे को, या तुम किस बात को देखने के लिए वहाँ गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए एक मनुष्य को? क्या प्रचार करते समय उसे 2 या 3 बार अपने कपड़ों को बदलना पड़ता है? देखो, वे जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे कपड़े राजभवनों में होते हैं। वे वो सेवक हैं जो वहाँ पर जाकर और छोटे बच्चों को चूमते हैं, आप जानते हैं, और युवा लोगों का विवाह करवाते हैं और विद्यालय जाते हैं और बौद्धिक बातें करते हैं, और आप जानते हैं ये सारी छोटी छोटी कायरता की बातें करते हैं। देखा, देखा, वो यहाँ सामने की पंक्ति में 2-धारी तलवार को नहीं चलाता है। तुम वहाँ क्या देखने जाते हो? इस प्रकार के किसी व्यक्ति को वो उनसे पूछ रहा था। लेकिन तुम क्या देखने के लिए वहाँ गए? एक भविष्यवक्ता को? सुनना, हाँ, और मैं तुमसे कहता हूँ, और एक भविष्यवक्ता से भी बढ़कर। जी हाँ श्रीमान, वो क्या था? कहे तो वो भविष्यवक्ता से भी बढ़कर है। वह एक भविष्यवक्ता था, उसके साथ वह उस युग का संदेशवाहक था। तुम क्या देखने के लिए वहाँ गए? एक भविष्यवक्ता? हाँ, और मैं तुमसे कहता हूँ, और एक भविष्यवक्ता से भी बढ़कर, क्योंकि यह वही है जिसके विषय में लिखा है कि देखो मैं अपने संदेश वाहक को अपने आगे आगे भेजता हूँ कि उस मार्ग को मेरे आगे तैयार करे। यहाँ मलाकी 3 में देखें, देखो मैं अपने संदेश वाहक को अपने आगे आगे भेजता हूँ। देखो अब मलाकी 4, मुझे इसे पढ़ने दें, वह फिर से आने वाला है। देखो वो धधकते भट्टे का सा दिन आता है और सारे अभिमानी, हाँ यही आज है। मैं वहाँ सड़क पर चलता हूँ और इन लोगों को देखता हूँ, आप उनसे बात कर सकते हैं और वे आप पर हंसते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ यह क्या है। उस दिन की बात है, मैं यहाँ नीचे चौक के किनारे किनारे चल रहा था, मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था और उन्होंने इतना ही कहा, ओह वे लोग आगे चले गए। किसी ने तो तब मुझसे कहा, वे परमाणु बम का चारा है, जल्द ही जमीन पर बिखरी हुई राख बन जाएंगे, उन्हें अपने हार में छोड़ दो, तुमने अपनी बात बोल दी है, तैयार हो जाओ और यहाँ से निकलो। हालेलुया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं समझता हूँ, अपने आप को तैयार करो, अपनी कमर बांध लो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यही कारण है कि मैं रुका हुआ हूँ, क्योंकि देखो वो धधकते भट्टे का सा दिन आता है। हाँ वे सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूटी जैसे बन जाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही होगा। क्या होता है जब एक बड़े आप में से कुछ किसान, जब एक गेहूं के खेत में एक भीषण आग लग जाती है, जब ये बस अनाज की ठूंठ रह जाती है, पीछे राख के साथ वह बस सपाट पड़ी रहती है, यही है जो करेगा जब यह जलने लगती है। वो दिन आता है कि वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका ना कोई जड़ बचेगा ना कोई शाखा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, उनमें से कुछ भी नहीं बचेगा। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसके पंखों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई खलियान में कूदोगे और फांदोगे, यही सहशताब्दी है, और तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, क्योंकि मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पाँव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, वहाँ आते हुए सहशताब्दी में दुष्टों की राख। याद रखो मेरे दास मूसा की व्यवस्था, अर्थात जिसकी मैंने होरेब में उसे आज्ञा दी थी सारे इसराइल के लिए उस अधिनियम और न्याय के रूप में। अब ध्यान से सुनना, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। अब यह यूहन्ना नहीं हो सकता था, यह नहीं हो सकता, क्योंकि तब संसार नष्ट हो गया होता, लेकिन यहाँ उसने कहा मती 3 में वह अपने आगे एक संदेश वाहक को भेजता है, और यीशु ने कहा यही एलिया है जो आने वाला था ताकि मेरे आगे मार्ग को तैयार करे। लेकिन इससे पहले यह बड़ा परमाणु बम गिरे, मैं तुम्हारे पास एलिया भविष्यवक्ता को भेजूंगा, और वह पूर्व पिताओं के हृदय को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के हृदय को उन पूर्व पिताओं की ओर फेरेगा। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी को शाप के साथ सत्यानाश करूं। भविष्यवाणी इस दिन में, लेकिन अब आप कहते हैं ओह वो एलिया, यह तो यूहन्ना होना था, वाचा का संदेश वाहक वास्तव में यूहन्ना था। यह बिल्कुल सही है, यीशु ने ऐसा कहा और इसे ठीक यहाँ पर प्रमाणित किया, यही वो एक है जिसके विषय में मैंने बात की है। लेकिन आप देखते हैं यह एलिया नहीं हो सकता है जो आने वाला था, देखा यह नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखते हैं यदि ऐसा होता है तो भविष्यवाणी गलत थी, पृथ्वी पहले वहाँ पर नष्ट नहीं हुई थी, देखा। लेकिन यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया को भेजूंगा और वह लौटाएगा, उसके पहले आगमन पर ध्यान दें, पिताओं के हृदय बच्चों की ओर, यही है जो उसने पहले किया, नए समय काल के संदेश को लाया। अब मसीह का आगमन पुराने रूढ़िवादी पिताओं को उस रूढ़िवादी विश्वास से दूर खींचते हुए एक नए विश्वास में जो अभी अभी जन्मा था, फिर जब वो दूसरी बार आता है और बच्चों के हृदय को पेंटिकॉस्टल पिताओं की ओर फेरता है, मूल संदेश की ओर। अब यहाँ प्रकाशित वाक्य 3 में जाएं और आप इसे फिर से ठीक वहाँ पर देखेंगे। सो इसकी भविष्यवाणी की गई है, हम अंत समय पर हैं मेरे भाई, यह सही है। जैसे कि 400 भविष्यवक्ता मिकाया के विरोध में थे, वे कहते हैं कि हम उस अंतिम दिन में हैं। हम जानते हैं झूठे भविष्यवक्ता झूठे चिन्हों को दिखाते हैं संप्रदायों में जुड़ते हुए। वे कहते हैं आकर और जुड़ जाओ, आओ हम जुड़ जाएं, आप आकर और हमारी कलीसिया में जुड़ जाएं, अपनी सदस्यता को लेकर आएं, हमारे द्वार आज सुबह आपके लिए खुले हैं ताकि आप अपनी सदस्यता को उस कलीसिया से इस एक में स्थानांतरित करें। ओह बकवास, आपकी सदस्यता से आपका क्या लाभ होगा, यदि आपके पास स्वर्ग में विरासत नहीं है तो इसके बारे में भूल जाएं। झूठे भविष्यवक्ता झूठे चिन्हों को दिखाएंगे। लेकिन देखो सच्चे भविष्यवक्ता वे परमेश्वर के वचन के साथ बने रहेंगे। सच्चे चिन्ह परमेश्वर के सच्चे वचन को एक सच्ची कलीसिया के लिए लेकर आएंगे और सच्ची कलीसिया वचन को ग्रहण करेगी और इस पर आनंदित होगी जब वो छोटा झुंड जिसे अंत के दिनों में दिया जाएगा जो अन्य जातियों के शेष बचे हुए होंगे जिन्हें आगे ले जाया जाएगा। जब यीशु आया वहाँ कोई नहीं था लेकिन वहाँ बहुत थोड़े ही थे जिन्होंने विश्वास किया। यूहन्ना का छोटा झुंड ही वो एक था जिसने विश्वास किया। यीशु ने उन्हें वहीं से ले लिया, उन्हीं में से चेले बनाए और आगे बढ़ गया। जब एलिया जब विनाश आया जब नूह का समय आया वो एक चिन्ह था और वह लोगों को जहाज में लेकर गया। जब एलिया आया उसने लोगों को उस उलझन में से बाहर निकाला जिसमें वे थे। जब यूहन्ना आया वे सारे भविष्यवक्ता चिन्ह 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 थे और उसने हमसे अंतिम दिन में एक चिन्ह की प्रतिज्ञा की है। अंत के दिनों में एक चिन्ह होगा या एक अनदेखा किया गया चिन्ह है। लोग इसे नहीं देखते हैं, वे बस इसे अनदेखा करके निकल जाते हैं और उसे ऐसे ही जाने देते हैं। भाइयों बहनों कलीसिया में ना जुड़े, मुझे यह कहने दो बस बंद करते हुए, यदि आपको केवल किसी भावना का अनुभव हुआ है किसी सनसनी का तो आप उस पर विश्राम ना करें, आप ऐसा ना करें। आप लोगों के लिए आप मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, मैंने उन्हें वहाँ पीछे टेप रिकॉर्डर के बटन को दबाते सुना। ठीक तभी मैं अब कलीसिया से बात कर रहा हूँ, देखा सुनना आप नहीं, मैं उनमें से बहुत सी बातें कभी कभी इस तरह से कहता हूँ ताकि लोग बाहर देश में यहाँ परमेश्वर के साथ बने रहें। अपने सच्चे चिन्ह के लिए देखें, आप इसे देखेंगे, यह आपके आसपास ही होगा लेकिन लाखों लोग इसके साथ साथ चलेंगे और इसे नहीं देखेंगे। जब यीशु आया उन्होंने उसे नहीं जाना, उन्होंने एलिया को नहीं पहचाना। आप जानते हैं जब एलिया ऊपर गया तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उस मूर्खता का विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा यह बकवास है, बच्चे ठीक वहाँ पर अपने ही नगर में जहाँ वो रहता था वो वहाँ पर रहा, वहाँ पर प्रचार किया, चिन्ह और अद्भुत कामों को ठीक वहाँ उस देश में किया। जब वहाँ पर एक चेतावनी आई हम एलिया को नहीं ढूंढ सकते, प्रभु ने उसे एक भवंडर में ऊपर उठा लिया। वे इस तरह की चीज पर हंसे। यहाँ एलिया आता है, एलिशा आया उसी चिन्ह के साथ जो उस पर थे, मसीह और उसकी कलीसिया का एक नमूना। यहाँ एलिया आता है, एलिशा आया उसी चिन्ह के साथ जो एलिया के पास थे, ठीक नीचे आता है इसे करते हुए। यहाँ तक कि उनके छोटे बच्चे भी उसके पीछे पीछे जाते और कहते बूढ़े गंजे सिर वाले तुम एलिया की तरह ऊपर क्यों नहीं गए। देखा उन अनादर करने वाले बच्चों के साथ क्या हुआ। आज वे हंसते हैं और मजाक उड़ाते हैं, चिंता मत करो भाई, न्याय ठीक अभी आकाश में मंडरा रहा है, यह हर एक अमेरिकी के चेहरे पर लिखा हुआ है, यह सही है, न्याय आकाश में मंडरा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सारा क्रोध, जो भले हैं उन्हें तुच्छ समझते हैं, भक्ति का भेष तो धरते हैं लेकिन उसकी शक्ति का इनकार करते हैं, ऐसों से परे रहना। आप किसी सनसनी को ना लें, आप किसी भावना को ना लें, जब तक आप परमेश्वर से आमने सामने भेंट नहीं करते हैं तब तक आप कुछ भी ना लें और परमेश्वर की आत्मा को आपके अंदर आने दें, वह आपके हृदय और प्राण को सामर्थ्य और प्रेम और जोश के साथ भर देगा। परमेश्वर अगले कुछ दिनों में कहीं तो मेरे स्थान को पाने में मेरी सहायता करे, वहीं पर बना रहूं जब तक मैं देख नहीं लूं कि मेरा अगला कदम कहाँ है। हमने लंबे समय तक प्रतीक्षा की है, मैंने लंबे समय तक प्रतीक्षा की है। मुझे याद है मैं वहाँ पीछे अपने आंगन की घास काट रहा था जब मैंने इस भवन को यहाँ पर बनाया। प्रभु ने मुझे बुलाया, मेरी पत्नी रो पड़ी क्योंकि वह अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने कहा हो सकता है उसकी देखभाल नहीं होगी, और मैंने सोचा मेरी भी एक बूढ़ी माँ है। मैं वहाँ बैठा हुआ था एक दिन घास को काट रहा था, मैं नीचे बैठ गया, बिल्कुल स्पष्ट एक आवाज आई, कहा अपने आप को अलग करो तब मैं तुम्हें आशीष दूंगा। मैंने कहा प्रभु परमेश्वर यहाँ मुझे खुश रखें, आप देख रहे हैं मैं किस चीज का सामना कर रहा हूँ। वे सारी बातें अब समाप्त हो चुकी हैं, माँ ब्रॉय महिमा में चली गई हैं, माँ ब्रेनम भी। मेरा अगला कदम कहाँ है प्रभु। इन दिनों में से एक दिन इस देश पर न्याय प्रहार करेगा, ऐसे दूसरे राष्ट्र भी हैं जिन्होंने सुसमाचार को नहीं सुना है, वहाँ ऐसे स्थान हैं। आप जो कुछ भी करें आप मेरे शब्दों को मत भूलना, क्या आप नहीं करेंगे? इस बात को लंगर होने दो। परमेश्वर एक लोहे की कलम को लेकर और इसे आपके हृदय में खो दे ताकि आप इसे नहीं भूलें। इसे मत भूलना। यहोवा यो कहता है, अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के पास लौटें, वापस आ जाएं, भावना, सनसनी या किसी भी चीज पर निर्भर न रहें। जो कुछ आप में है उसके साथ परमेश्वर को ढूंढें, जब तक आपके साथ कुछ तो नहीं होता है जिसे आप ठीक करना चाहते हैं। आप धर्मी होना चाहते हैं, आप परमेश्वर का भय मानते हैं, आप सही तरह से जीना चाहते हैं, इसे करें। आप इसे मत भूलना, क्योंकि हम अंत के समय में हैं। अब याद रखें, हम अंत समय में हैं। और इसे याद रखना, जैसा कि मैं बंद करता हूं कि प्रार्थना करूं, एक मिनट में मत भूलना, मुझे सुनना आराधनालय। और यदि यह अब भी टेप हो रहा है तो मुझे सुनना दुनिया में, या यह टेप जहां भी जाएगा एक चिन्ह उठेगा, एक सच्चा चिन्ह। हो सकता है ये पहले ही उठ गया हो और इसे अनदेखा कर दिया गया हो। एक सच्चा चिन्ह जो परमेश्वर ने हमेशा दिया है, जिसे अनदेखा किया गया है। आइए हम प्रार्थना करें। नासरत का यीशु, जैसा कि उस दिन उस महान आवाज ने वहाँ उस दिन बोला, कुछ सप्ताह पहले किनारे पर खड़ा हुआ, जब मैं उस पेड़ के लट्ठे को पार कर रहा था पेड़ के पास, और वो आत्मा जो उन पेड़ों के ऊपर से होते हुए नीचे उतरा और कहा, नए नियम का यीशु ही पुराने नियम का यहोवा है। हे परमेश्वर, मैं इस चट्टान पर खड़ा हूँ, बाकी की सारी भूमि धसती हुई रेत है, बाकी की सारी भूमि धसती हुई रेत है। लगभग 30 वर्षों से प्रभु मैं यहाँ इस घाटी में से होते हुए चिल्ला रहा हूँ। इस संदेश को मैं इससे एक इंच भी नहीं हिला हूँ, जहाँ से मैंने आरंभ किया था, बस वही संदेश, वही चीज, लोगों को वापस बुलाते हुए, न ही एक सनसनी के लिए, लेकिन परमेश्वर से भेंट करने और उसकी आत्मा से जन्म के अनुभव के लिए। ओह, न्याय को छोड़ और क्या बचा होगा? वे जो उस संदेश को अस्वीकार कर रहे हैं प्रभु, उनके लिए वहाँ कुछ भी नहीं बचा है। आपने अपने वचन को इस प्रकार से पूरा किया है, जिससे कि अंतिम दिन के चिन्हों को घोषित करें और इसे अचूक रूप से साबित करें कि आप परमेश्वर हैं और हम यहाँ पर हैं। इच्छा तक, जबकि हम आज देश के बड़े बड़े सुसमाचार के प्रचारकों को सुनते हैं, वे सब चिल्ला रहे हैं और हमारे राष्ट्र की राजधानी और दूसरे राष्ट्रों की ओर संकेत करते हैं और भय छा रहा है। और जब हम इन बड़े बड़े लोगों को सुनते हैं, यहाँ तक फ्रांस में भविष्यवाणी कर रहे हैं कि पहला बम लुइसविल केंटकी में गिरेगा, सैकड़ों मील तक यह देश को साफ कर देगा। हे परमेश्वर, उनके पास सुनने का एक मौका था, लेकिन वे नहीं सुनेंगे। समाचार पत्र, कलीसिया की चीजें, टेलीविजन, रेडियो, इस बात से भरा हुआ है, वहाँ कोई बहाना नहीं है। तब प्रभु आपने कहा, वे सब जिसे पिता ने मुझे दिया है वो आएगा, और कोई भी मनुष्य नहीं आ सकता जब तक पिता उसे पहले ना खींच ले। अब पिता, मैं इस प्रार्थना को अपने आप के लिए करता हूँ। मैं यहाँ पर हूँ, अब मैं एक बूढ़ा मनुष्य होते जा रहा हूँ, और मैं नहीं जानता कि हमारे पास कितने दिन बचे हैं प्रभु। आज का दिन भी हमारे पास शायद नहीं हो, लेकिन जो कुछ भी बचा है प्रभु, और जो मेरे जीवन में बचा है, हे परमेश्वर, क्या ये संभव है कि आप इसे लेकर और आपकी महिमा के लिए इसके साथ कुछ तो कर सकते हैं? मैं पहले अपने खुद के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, कि आप मुझे आपकी इच्छा को दें, आपकी इच्छा पूरी हो जाए प्रभु, चाहे ये जो कुछ भी हो। मैं चाहता हूँ कि इसे उस दिन पर कहा जाए जब मैं आपसे भेंट करने आऊँ, इसे सही तरह से किया गया था, यदि यह बड़ा है या यदि यह छोटा है, जो कुछ भी आपके महान हृदय में मेरे जीवन के लिए है प्रभु, मैं यहाँ हूँ। एक दूत को आग के कोयले के साथ भेजें और हमारे होठों को शुद्ध करें और हमें पवित्र करें प्रभु, उस अंतिम बड़ी कोई तो चीज के लिए जो पृथ्वी पर प्रहार करने पर है। आओ, हम पाप के जंगल में पुकारने वाली आवाज बने, परमेश्वर से भेंट करने के लिए तैयार हो जाओ। यह छोटी कलीसिया, ये लोग जो दिन प्रतिदिन आते हैं और सैकड़ों मील गाड़ी चलाकर, हे अनंत और प्रेमी, और कभी एक काम को भी नहीं भूलते हैं, अब्राहम, इजाक और याकूब का परमेश्वर, जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया और अब वो ऊंचे स्थान पर महामहिम के दाहिने हाथ पर बैठा हुआ है। परमेश्वर देह में वास करता है। इन लोगों को आशीषित करें जिन्हें मैं आपके नाम से आशीषित करता हूँ। होने पाए वे हमेशा ही याद रखें और जानें कि वहाँ एक चिन्ह है, अंत का एक चिन्ह। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें देंगे और उन्हें दूसरों को जीतने वाले बनाएंगे। उनके काम पर वे कहीं भी हो सकते हैं, रास्ते के कोनों में, पेट्रोल पंप में, या कहीं भी ये हो सकते हैं कि किराना दुकान में गवाही को दें, कि दूध वाले को गवाही दें, चाहे ये जो कुछ भी हो प्रभु, यदि उनके हृदय पर कुछ तो चेतावनी देता है तो होने पाए वे एक गवाह बने। होने पाए वे ऐसे धर्मी और पवित्र जीवन को जिए इच्छा तक कि वे सारे मनुष्यों के द्वारा पढ़ी जाने वाली पत्रियां बन जाएं। परमेश्वर हमारी महिलाओं को आशीष दे। ओह परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे उनके चेहरे को धो डालें। वे जो नहीं करते, वे उस इजाबेल का श्रृंगार उनके चेहरे से साफ हो जाए। उनके पास मसीही लोगों का साहस हो और परमेश्वर का इतना आत्मा उन पर हो, ताकि ये जान जाएं कि उन्हें वे अशुद्ध कपड़े नहीं पहनने चाहिए जो वे पहनती हैं। उनके बालों को स्त्रियों की तरह बढ़ाएं, क्योंकि यह बाइबल में लिखा है, प्रभु की दृष्टि में वह छोटी डाली बहुमूल्य है जो इन सारी चीजों से बच निकलेगी जो अंत के समय में सामने आ रही है। यह परमेश्वर की दृष्टि में महिमा में होगा, जैसा कि भविष्यवक्ता ने इसे पहले से बताया है। परमेश्वर इसे प्रदान करें। मैं अब और कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने अपनी तेज आवाज से वर्ष दर वर्ष चिल्लाया है प्रभु, और जब तक आप अब आगे नहीं बढ़ते हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप बढ़ेंगे, और मैं जानता हूँ कि आप बढ़ेंगे, क्योंकि आपने अपने वचन में इसकी प्रतिज्ञा की है, और यही है जहाँ मैं खड़ा हूँ। मैं केवल एक गवाही को दे सकता हूँ प्रभु, और कोई भी मनुष्य नहीं आ सकता है जब तक आप उसे ना खींचे, और वह सब जिसे पिता ने दिया है वो आएगा। मेरे पास ये आश्वासन है कि आपके वचन का ख्याल रखा जाएगा। हमें आशीष दे प्रभु। और यदि यहाँ वे लोग हैं जो केवल एक सनसनी पर निर्भर हैं, हो सकता है उन्होंने चिल्लाया हो, वे हो सकता है उनके पास पवित्र आत्मा हो, या हम ऐसा नहीं मानते हैं प्रभु, क्योंकि हमने लोगों को गेंद के खेल में चिल्लाते हुए देखा है। हमने लोगों को संसारिक मनोरंजन करते देखा है, वे चिल्लाते हैं। हमने उन लोगों को इतना खुश देखा है, इतना तक वे बाहर फर्श पर रोने लगते हैं, नाचते हैं, और वे सारी चीजें करते हैं। यह आप नहीं है परमेश्वर, लेकिन आपसे भेंट करना और आपके साथ बात करना, और आप वापस हमसे बात करें, यही है जो हम चाहते हैं प्रभु। ओह, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इसी मिनट पर कि आप उस पवित्र आत्मा को कमरे में भेजें, इस छोटे से नम्र स्थान में। उसके योग्य कोई भी स्थान नहीं है कि वो आए, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि आप अपने तरीके से कि आप उसे ठीक अभी कमरे में भेजें, प्राणों को भरोसा दिलाएं। जैसा कि मैंने कुछ समय पहले कहा था प्रभु, हो सकता है आपने किसी के मार्ग में ठोकर का कारण रखा हो। इन वेदी की पुकार के विषय में वे विनती करते हैं और लोगों को आगे जाने के लिए राजी करते हैं, और जब हम अगले वर्ष वापस आते हैं तो हम उन्हें पहले की तुलना में भी अधिक दुगने नरक की संतान पाते हैं। वे कैसे आ सकते हैं महान पवित्र आत्मा, जब तक आप उन्हें भरोसा नहीं दिलाते हैं और उन्हें दोषी होने का एहसास नहीं दिलाएं। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु परमेश्वर, यदि वो पापी पुरुष या महिला, लड़का या लड़की आज सुबह इस भवन में है कि पवित्र आत्मा ऐसी दोषी ठहराने वाली सामर्थ के साथ आए, यहां तक कि आंसू उनके गालों पर से बहने लगे और उनके प्राण में टपकने लगे प्रभु, कि वे उनके हृदय की गहराई से विश्वास करें और मसीह को स्वीकार करें, इसे प्रदान करें प्रभु। उन्हें किसी वेदी की आवश्यकता नहीं होगी, उनका प्राण ही उनकी वेदी होगी। इसे प्रदान करें प्रभु, तब वे पूरे हृदय से आपके पास आ जाएंगे और कहेंगे, मैं अब अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना चाहता हूँ, जिसका मैंने पश्चाताप किया है। इसे प्रदान करें प्रभु, उन्हें पवित्र आत्मा से भर देना। आज संसार में हमें सुसमाचार के प्रचारक को देना, न कि ऐसे लोग जो राजी करते हैं और खींचते हैं और सांप्रदायिक बच्चों को तैयार करते हैं। परमेश्वर अपने लिए कुछ बच्चों को उठाकर खड़ा करें, ऐसे लोग हों प्रभु जो प्रार्थना करें। मैं कुर्नेलियुस के घर के विषय में सोच रहा हूँ, ऐसा पहले कभी किसी अन्य जाति के साथ नहीं हुआ, लेकिन वे उपवास कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे, और जब वो परमेश्वर का जन, वो भविष्यवक्ता वहाँ खड़ा हुआ, और जब वो इन शब्दों को बोल ही रहा था तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा जिन्होंने वचन को सुना। परमेश्वर इस प्रकार की सभा को प्रदान करें। जब पत्रस इन शब्दों को बोल ही रहा था, हे परमेश्वर, वे तैयार थे। वे उपवास कर रहे थे, वे रुके हुए थे, वे ईमानदार थे, वे बस रुके हुए नहीं थे, वे तब तक रुके हुए थे जब तक वे प्रेरित तब तक रुके रहे जब तक परमेश्वर उनके बीच में नहीं आ गया और वे उसे देख सकते थे और उससे बात कर सकते थे। वे ऐसे हृदय के साथ बाहर गए जिसने संसार को जलाकर खाक कर दिया। वे नीडर लोग थे और ऐसे उन स्थानों के बीच में खड़े रहे जहां उनके लिए इसका परिणाम हो सकता था कि उनका अपना सिर भी कट जाए। उन्होंने कहा, क्या यह हमारे लिए सही है कि हम तुम्हारी बात सुने या तुम्हारे संगठनों की या तुम्हारे सांप्रदायिक लोगों की, या क्या हम परमेश्वर की सुने? तुम इसे देखो। और ठीक जैसे ही उन्हें जाने दिया गया, उन्होंने सीधे बाहर जाकर और फिर से यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया। हे परमेश्वर, हमें ऐसे लोग देना प्रभु, इस एक को हमारे लिए उठाकर खड़ा करें जिसके विषय में आप वचनों में बोल रहे हैं, उसका अभिषेक करें प्रभु। मैं उसके लिए पुकारता हूँ, उसे भेजें प्रभु। हे परमेश्वर, हमारे भूखे हृदय रो रहे हैं, उसे भेजें प्रभु, जो लोगों को फिर से पूर्व पिताओं के विश्वास की ओर वापस फेरे, जो उन्हें इस सांप्रदायिक कठपुतलियों से दूर करेगा परमेश्वर के साथ एक सच्चे अनुभव में, जैसे उन्होंने पेंटिकॉस्ट पर किया था, फिर से एक सच्ची कलीसिया जलती हुई उसी संदेश के साथ, उसी विश्वास के साथ, वही शिक्षा, वही बाइबल, वही परमेश्वर, उसी चिन्ह के साथ हमारे लिए एक भविष्यवक्ता को उठाकर खड़ा करे प्रभु। आज हमारे बीच में बीमारों को चंगा करे प्रभु। यहाँ वे लोग हैं जो जरूरतमंद हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। मैं इतनी देर से आज सुबह से रुका हुआ हूँ और यहाँ पर वे लोग बैठे हुए हैं। एक रात जब प्रेरित पौलुस सारी रात प्रचार कर रहा था, एक युवक इमारत से गिर गया और खुद को मार डाला। उसे नींद आ गई थी, उसका ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन उसे नींद आ गई थी और वह गिर गया और उसका जीवन चला गया था। और प्रेरित ने प्रार्थना की और फिर से उसमें जीवन वापस आ गया। हे प्रभु परमेश्वर, यहाँ बहुत से हैं जो बीमारी में गिर गए हैं, और जबकि हम बहुत समय से रुके हुए हैं, कलीसिया की सभा को समाप्त करने के समय से आगे निकल चुके हैं, वहाँ वे लोग हैं जो बीमार हैं। हे परमेश्वर, उस सामर्थ को, वो पवित्र आत्मा जो व्यक्तिगत रूप से अग्नि के स्तंभ में आता है, जो स्वयं को घोषित करता है और स्वयं को ज्ञात करवाता है कि वो कौन है, और हम उस पर विश्वास करते हैं, वो आज यहाँ पर हर एक व्यक्ति को घेर ले, बीमारों को चंगा करें, आत्मा से भर दें, हर प्रकार से छुटकारे को दे प्रभु, जिसकी हमें आवश्यकता है। हमारे हृदयों को विश्वास से भर देना परमेश्वर, ना खत्म होने वाले विश्वास के साथ, ना समझौता करने वाले विश्वास के साथ कि हमारे पास यहोवा यो कहता है वाला वचन है, इसे प्रदान करें प्रभु। यह आपके लोग हैं, आपका संदेश, आपका वचन, आपके सेवक हैं, और शैतान का हम पर कोई अधिकार नहीं है। वो यहाँ तक हमें नष्ट भी नहीं कर सकता जबकि यह भवन नष्ट भी हो जाए, क्योंकि यदि यह धरती पर का भवन नष्ट भी हो जाए तो हमारे पास पहले से ही एक प्रतीक्षा कर रहा है। वह हमें कोई हानि नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि हर एक चीज जो हमारी शत्रु है, ये आपकी शत्रु है, क्योंकि हम आपके हैं। हमें यीशु के बहुमूल्य लहू की कीमत के साथ खरीदा गया है। इसलिए तुम शैतानों, जिसने इन लोगों को बीमारी से बांध कर रखा है, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम में कि उन हरेक में से बाहर आ जा। परमेश्वर के एक सेवक के रूप में इस वचन के सत्य होने का दावा करते हुए तू उन्हें छोड़ दे, तेरे पास कोई अधिकार नहीं है। हर चीज जो तूने कभी होने का दावा किया है, उसे कलवरी पर रद्द कर दिया गया था, और तू उन्हें अब और अधिक पकड़ कर नहीं रख सकता। अब परमेश्वर यहाँ पर हर एक पुरुष और स्त्री को, लड़का या लड़की को भरोसा करने के लिए विश्वास दें। वचन को बोला गया है, यदि तुम इस पहाड़ से कहो हट जा और अपने हृदय में संदेह न करो। विश्वास की प्रार्थना बीमारों को बचाती है। तुम्हारे पास वो होगा जो तुम मांगते हो। हम ये जानते हैं, हमें परमेश्वर में वो भरोसा है। यदि हमारे पास जरा भी विश्वास है, यदि परमेश्वर हम में रह रहा है, तो हम यह विश्वास करते हैं। और मैं जानता हूँ कि ऐसा ही है प्रभु, इसलिए आज इसे बीमारी और उद्धार के लिए प्रदान करें। या मैंने अवश्य ही कहा होगा, या कहना चाहिए था, पहले उद्धार और उसके बाद बीमारी, इसे प्रदान करें प्रभु, क्योंकि प्राण शरीर से अधिक मूल्यवान है, लेकिन वे लोग कभी कभी उनके प्राण बच जाते हैं और यह पुराना शरीर अब भी शैतान का बना रहता है और वो जानता है कि वो इसे अंत समय में ले लेगा, वो इसे कुचल देगा और इसे वापस भेज देगा जब तक कि धरती के कीड़े इसमें रेंगकर और इसे खा न लें। लेकिन वो उस प्राण को कभी नहीं छू पाएगा क्योंकि यह परमेश्वर का बहुमूल्य खजाना है और उस जीवन में से होते हुए जैसे एक पत्ती में से यह परमेश्वर की ओर वापस लौटता है जो इसका देने वाला है, अगले ऋतु में सामने आएगा एक नए शरीर के साथ जिसे शैतान कभी भी छू नहीं सकता है, ना ही बुढ़ापा या कोई और चीज इसे कभी छू सकती है। यह एक महिमावंत देह होगी, हम इसके लिए देख रहे हैं प्रभु। अब अपने लोगों को आशीषित करें, वे आपके हैं और मैं उन्हें आपके हाथ में सौंपता हूँ। मैं इसे यीशु के नाम में मांगता हूँ।
This day I say unto thee, for I have walked among thee, and have come this morning to surely bring the sign that shall be to this generation. For I say unto thee, these words which thou hast listened to, has it not been well said unto thee to give ear to these things which thou hast heard? Truly I say unto thee, my servant, yea, I have give great diligence in my spirit to come unto thee for this occasion. And because of this, thou hast set in motion, according to my spirit, the beginning of those things which thou hast spoken about. Glory. Truly I say unto thee this day, ye people, yea, I say, give diligence to these things, and gird thyself under my truth. For I say that the impending things that are now taken place shall increase, and the spirit of destruction and madness shall surely take thee unawares. Yea, I say, give heed this morning, for mine invitation is to whosoever will. Yea, I say, look unto this word which thou hast heard this morning, and believe the sign which is brought into thy presence, for I am the Lord thy God that speaketh unto thee. Hallelujah.
Praise.
I speak unto thee, my prophet, this morning. I say, thou hast well broken my bread of life. And I say unto thee, I have cleaned thy heart. Thou art in a time of need, because thou needs a leading of thy spirit in this day and hour as never before, saith the Lord. And I say, my sheep are wandering about in the world. But I say, I have ordained thee from the foundation of the world to go. Especially to my lost sheep of Israel, for they require signs, and I have given thee that sign. I say unto thee, my people, that sign is within thy midst this morning. Thou must take heed of the word. For I say, my servant broke the word of life the way that I would have it to, for I have anointed it just with clay for this purpose, saith the Lord.
That is not my word. That is his word.
यह मेरे शब्द नहीं है, यह उसका वचन है। ओ, हमें इस घड़ी में इसी की आवश्यकता है जिसमें हम रह रहे हैं। क्या आप नहीं समझ रहे हैं मित्रों कि परमेश्वर बड़े बड़े हस्तियों के पास नहीं आता है, वो नम्र छोटी नम्र चीजों के बीच में वास करता है। आप शायद इस बात को महसूस नहीं कर सकते हैं कि ठीक अभी क्या हो रहा है, इस इमारत के बीच में क्या चल रहा है, इन लोगों के बीच ठीक अभी क्या चल रहा है। आत्मा ने क्यों पहले कहा, इससे पहले कि मैंने उन्हें जो कुछ भी बनाया, भाई हिगनबॉथम के जरिए से कहा, इस संदेश पर ध्यान दो क्योंकि मैंने इसे लाया है, इसी तरह से कुछ तो और, ताकि तुम्हें इस बात की चेतावनी दूं जो आगे आ रहा है। देखो क्या हुआ, कुछ बातें, वे वचन जो मैंने यहाँ लिखे हुए थे, मैंने यहाँ तक उन्हें छुआ भी नहीं, और ये बातें उन लोगों में से बाहर आईं, मेरी वहाँ पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई की गई थी। देखा, कुछ वचनों के विषय में जिसे मैंने कभी छुआ भी नहीं, मैं बस पूर्ण रूप से किसी और बात पर चला गया। कभी कभार कुछ तो आते हुए सुनते हैं, पलट कर और देखते हैं कि यह कहां पर था। आत्मा अब हर दिशा से बोल रहा है। ओ लोगों, ईमानदार बने, सच्चे बने, इस पर विश्राम करने का यत्न न करें। देखिए, आप कुछ तो बड़ी और चमक दमक वाली चीज के लिए देखते हैं। जब सारे भविष्यवक्ता यहाँ तक कि दाऊद ने कहा प्रभु के आगमन पर कि हर एक पहाड़ को नीचे लाया जाएगा और निचले स्थानों को ऊंचा किया जाएगा, कहा पहाड़ छोटे मेंढों की तरह उछलेंगे और सारे पत्ते अपने हाथों से ताली बजाएंगे, तो लोगों ने क्या सोचा होगा कि ऐसा होगा जब यीशु आएगा? यह क्या निकला? एक पुराना नम्र प्रचारक जिसके पास कोई शिक्षा नहीं थी। 9 वर्ष की उम्र में वो जंगल में चला गया, न ही मनुष्य के द्वारा प्रशिक्षित होने के लिए, लेकिन परमेश्वर से प्रशिक्षित होने के लिए। जंगल से बाहर आया और अपने चारों ओर भेड़ की खाल के टुकड़े को लपेटे हुए खड़ा था। उसके पूरे चेहरे पर ऊन लगी हुई थी, पूरा शरीर रोएदार था और उसके गर्दन के नीचे बाल लटक रहे थे। वह जंगल में रहता था, टिड्डियाँ अर्थात जंगली टिड्डे और शहद खाकर जीवन बिताता था। जब वो जंगल में रहता था और आकर किनारे पर कीचड़ में खड़ा हो गया और मसीहा के आगमन की घोषणा की और मसीहा सीधे वहाँ नीचे चलकर गया लोगों के बीच में एक साधारण सा मनुष्य, और उसने बपतिस्मा लिया था और सारे भविष्यवक्ताओं ने सबसे महान चीजों में से एक चीज होने की घोषणा की जो कभी घटित हुई, और यह थी देखा वे कुछ तो बड़े चमक दमक किसी चीज के लिए देख रहे हैं कि जगह ले। देखा पवित्र आत्मा जगमगाता नहीं है, यह चमकता है। जगमगाहट संसार की होती है, चमक परमेश्वर की होती है। मुझ पर चमके प्रभु, मेरी प्रार्थना है मुझे नम्र करें, मुझे लेकर मुझे ढालें और मुझे बनाएं। जीवते परमेश्वर की आत्मा मुझ पर ताजा हो जाए, मुझे ढालें, मुझे बनाएं, मुझे अपना बना ले प्रभु, बस मुझे ले लें। मैं अब इस बात से अवगत हूँ कि मसीह का आत्मा आज सुबह यहाँ इस भवन में से होते हुए मंडरा रहा है। परमेश्वर जो संसार का न्याय करेगा वह ठीक अभी यहाँ पर है। ये बिल्कुल उतना ही निश्चित है जितना कि मैं इस पुलपिट में खड़ा हूँ। इस वचन की 1, 2, 3 बार पुष्टि हो चुकी है, बिल्कुल ठीक वही जो बाइबल ने कहा। उसके बाद क्या आपने सुना उस समय पर ये बात वहीं पर रुक गई? 1, 2, 3 हर एक चीज आत्मिक क्रम में है, हर एक वचन के क्रम के अनुसार है। ओ अपने हृदय को खोलें और समझें। ओ ऐसा समय, इस समय पर क्या हो सकता है? वे ऊपरी कोठरी में थे, सभी एक चित होकर रुके हुए थे, क्योंकि वे जो प्रभु पर रुके रहते हैं वे उनके नए बल को प्राप्त करेंगे। वे उकाब की नाई पंखों के साथ ऊपर उड़ेंगे। बस वहाँ ऐसे ही जाकर और यह न कहें, प्रभु मैं अपने पापों के लिए शर्मिंदा हूँ, अब मैं विश्वास के द्वारा स्वीकार करता हूँ कि मैंने पवित्र आत्मा को पाया है, और चले जाएं। वे जो प्रभु पर रुके रहते हैं सप्ताह दिन या जो भी है, वे उनके नए बल को प्राप्त करेंगे। वे उकाब के पंखों के साथ ऊपर उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं। यदि वो चलेंगे वे मूर्छित नहीं होंगे। मुझे सिखाएं प्रभु, मुझे सिखाएं प्रभु, रुके रहना सिखाएं, प्रभु पर रुके रहें। दिन और रात निरंतर हन्ना मंदिर में थी, निरंतर प्रार्थना कर रही थी दिन और रात। जब वे यीशु को अंदर लेकर आए तो वो अंदर आई, अंधी इमारत में से होते हुए उसके पास आई। एक अंधी स्त्री ने उस पर हाथ रखा और परमेश्वर को धन्य कहा, क्योंकि उसके शारीरिक अंधेपन में, उसकी आत्मा में, वह आत्मा के द्वारा चलाई चली जहाँ पर वो खड़ा हुआ था। वहाँ शिमोन उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, वहाँ पीछे प्रार्थना कक्ष में। जानता था कि उसके पास पवित्र आत्मा के द्वारा एक प्रतिज्ञा थी कि वो नहीं मरेगा। एक बूढ़ा व्यक्ति 80 लगभग 90 वर्ष का था और उसने लोगों को खुले तौर पर बताया, मैं मृत्यु को नहीं देखूंगा जब तक मैं मसीह को नहीं देख लेता। और उसी मिनट पर एक छोटा सा बालक, वो कौन था? ना ही एक प्रसिद्ध व्यक्ति कि सारे पहरेदार सावधानी पूर्वक खड़े हुए हों जब वे मसीहा को अंदर लाएं। छोटे बच्चों की तरह जो समर्पण के लिए लाए जाते हैं, वैसे ही बहुत मधुर और अच्छे ढंग से लपेटे हुए, सजे सवरे, मसालेदार और इत्र से महकाए हुए हों। लेकिन एक छोटी सी माँ जिसके बारे में बुरा कहा गया था, कहा गया उसके पवित्र विवाह से पहले उसे एक बालक हुआ था, चिथड़े हुए कपड़े में लिपटा हुआ, जुए का, बैल के जुए का कपड़ा उसके चारों ओर लिपटा हुआ, इमारत में से होते हुए चलकर जा रही थी और हर कोई उससे अपनी दूरी बनाए हुए था। लेकिन वहाँ वो छोटा झुंड आता है, वो छोटा सा समूह, हन्ना उस एक के लिए, शिमोन एक और पंक्ति में से होते हुए चलकर जा रहा था, नहीं जानते हुए कि कब इस पर उसकी आंख पड़ने जा रही है, और अपने हाथों को उठाकर और कहा, प्रभु अब अपने सेवक को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा होने दीजिए, क्योंकि मेरी आंखें तेरे उद्धार को देख रही हैं। देखा ना ही कुछ भी बड़ा जगमगाता हुआ, एक चमक। और भले ही इसके विषय में बुरा बोला गया, यह एक चिन्ह था, और आज उस चिन्ह के विषय में बुरा बोला गया है, इसका कोई समर्थन नहीं है। यह इसके विषय में बुरा कहा गया है और हर एक चीज बोली गई है, लेकिन यह एक चिन्ह है जिसे अनदेखा किया गया है, एक चिन्ह जिसके विषय में बुरा बोला गया है। बाइबल इस विषय में बोलती है एक चिन्ह जिसके विषय में बुरा कहा गया है। आइए हम इसे याद रखें जब हम अपने घरों की ओर यात्रा करते हैं। आप इस संदेश को कभी भी अपने हृदय से मिटने न देना। आप जो कुछ भी करते हैं आप इसे ना करें। आप दिन और रात इस पर मनन करें और प्रार्थना करें दिन और रात परमेश्वर से कि अब उसकी गवाही को ऊपर उठाए। हम तैयार हैं क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ जल्द ही समय और नहीं रहेगा। हम आ रहे हैं, कैसे, यह कब होगा भाई ब्रैनम? मैं नहीं जानता, हो सकता है आज, हो सकता है ये कल हो। यदि ये आज नहीं होता है तो मैं कल इसके लिए देखूंगा, और ये हो सकता है इस वर्ष हो, अगले वर्ष, 10 वर्ष में हो सकता है 30 वर्ष। मैं नहीं जानता कि यह कब होगा, लेकिन मैं कहता हूँ अब से आगे आप हर मिनट तैयार रहें और किसी भी चीज को बस सामान्य रूप से ना लें। ऐसा न करें, आप विश्राम न करें दिन और रात जब तक आप परमेश्वर से बात नहीं कर लेते हैं। अपने आप को कट्टरता से दूर रखें, भावनाओं में बहकर उत्तेजित ना हो जाएं। ऐसा ना करें, यही है जो बहुत अधिक उग्र चीजों को लाती है और लोगों को इससे डराती है। देखो यह उग्र कट्टरता के कारण होता है। आप इसे स्वीकार न करें, बिल्कुल नहीं, आप ठीक वहीं पर बने रहें जब तक आप परमेश्वर से बात नहीं करते। आखिरकार ये आपका प्राण है और आप ही एक हैं जो वहाँ उस ओर अनंतता को बिताने जा रहे हैं। और आप सुनिश्चित करें कि आप बस हाथ मिलाकर और एक मत सिद्धांत को न कहें या विश्वास के द्वारा कुछ भी स्वीकार न करें। आप ऐसा न करें, आप परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर को आपसे बात करने दो और देखो आपके साथ क्या होता है। अपनी इच्छाओं पर ध्यान दें और क्या होता है, तब आप जान जाएंगे कि आपने परमेश्वर से बात की है या नहीं। आप लोगों के लिए जिन्होंने आज सुबह उस पर विश्वास किया है, आपके लिए, और मैंने वेदी की पुकार के विषय में कहा, क्या आप जानते हैं कि उन्होंने इसे बाइबल में कैसे किया? जितों ने प्रभु पर विश्वास किया उन्होंने उनके पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था। यदि आपने कभी भी, हमारे पास कभी भी वेदी की पुकार नहीं हुई थी, उन्होंने कभी भी लोगों को आगे नहीं बुलाया था। जब आप ऐसा करते हैं तो हर प्रकार के लोग आ जाते हैं। यहाँ एक व्यक्ति वेदी पर आता है, घमंडी सा दिखने वाला और घुटने टेकता है क्योंकि किसी ने उसे आगे लाने की कोशिश की। आपको दो गुना मुश्किल होती है कि उसे फिर से कभी ला सकें। देखा, और आप क्या करते हैं? आपको इसमें हर एक चीज मिलती है। और यीशु ने कहा, वो सब जिसे पिता ने मुझे दिया है मेरे पास आएगा। उस वचन के साथ बने रहें, बाकी परमेश्वर करेगा। यह सही है, यह सही है, इसका बाकी का परमेश्वर करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ कि आज रात आपसे फिर से मिलूंगा। आशा करता हूँ आप में से हर एक जन से जो आ सकते हैं, मैं जानता हूँ कि आप में से बहुतों को बाहर रहना होगा, दूर जाना है। मैं आज रात, यदि यह परमेश्वर की इच्छा होगी, तो मैं अपने भाई को सुनने के लिए आऊँगा। मैं उसके दोनों संदेशों को नहीं लेना चाहता हूँ। और भाई नेविल परमेश्वर का एक प्यारा व्यक्ति है और मैं जानता हूँ कि कौन, जब मैं उसे प्रचार करते सुनता हूँ, मैं जानता हूँ कि यह सीधे उसके हृदय से आता है। मैं यह जानता हूँ। और भाई नेविल, जैसा कि उन्होंने उस रात को कहा, इस समालोचना को कहा, मैंने एक टिप्पणी की, किसी दिन मैं उसे यीशु के नाम में बपतिस्मा दूंगा। मैंने दिया, क्यों? मैंने उसमें ईमानदारी और सच्चाई को देखा। मैं जानता था कि यदि वह उसे कभी भी दिया जा सकता है, और उसे देखा और वह वास्तव में इसे देख सकता है, उसकी आंखें खुल जाएंगी, वह इसे ग्रहण करेगा। मैं रुका रहा और कलीसिया को बता रहा था, आप चिंता ना करें, वो मेथोडिस्ट प्रचारक अवश्य ही आ जाएगा। और आज वो यहाँ पर है, आराधनालय का एक पास्टर, काम में उतना ही मजबूत है जितना वो संदेश में हो सकता है। वो परमेश्वर पर विश्वास करता है। और मैं जानता हूँ, जब मैं सुनता हूँ कि भाई नेविल से कुछ तो आता है, तो मैं जानता हूँ कि यह वास्तव में परमेश्वर की ओर से आ रहा है, क्योंकि वो उस प्रकार का एक मनुष्य है। मैंने अपने हाथों को यहाँ आपके रुमालों पर रखा है जिस पर प्रार्थना की गई है। भरोसा करते हुए आप में से हर एक ने परमेश्वर से आशीष को पाया है। भरोसा है कि परमेश्वर आपके हृदय में है। हम यहाँ केवल आशीष को पाने के लिए नहीं आते हैं, उतना अधिक जब हम यहाँ आते हैं, हर एक दिन हम एक सांस को लेते हैं, हमें परमेश्वर से आशीष मिलती है। हम यहाँ जो करने के लिए आए हैं, ये एक सुधार है, ताकि काटे, ताकि हमारे हृदय का खतना करे और परमेश्वर के सामने आकर और अपने पूरे हृदय से परमेश्वर पर विश्वास करें। प्रभु के वचन को याद रखें और भूले नहीं और चूके नहीं कि परमेश्वर की ओर से भेजे गए सच्चे चिन्ह की ओर देखें। और फिर मैं सभा को भाई नेविल की ओर सौंपने जा रहा हूं, उन्हें वो कहने दो जो भी वे कहना चाहते हैं।
I'm telling you, I've known that God confirmed what we expected in the first of the service. As I look across this number of faces this morning, I know that it has been well that you have been here. And it has been good that I have been here. And I was supposed to be here, and you were supposed to be here. Your mission has been correctly fulfilled if you esteem it to be so. What you have this morning, you can have because you received it of God. And immediately we're having baptism service following this, and Brother Willard Collins will be officiating in the baptism service, and we have two or more candidates, and we'd like to see 100 candidates for Amen. Baptism in the name of Jesus Christ this morning.
Amen.
Determined to display your faith in a manifest fashion. Faith is never worth... Faith spoken of is no good, but faith demonstrated is the order of the Bible.
Amen. That's
through right. obedience, faith can be demonstrated. May God grant to anyone this morning that's here that feels disposed to so do. May you come if this is a little out of your order of what you'd planned, or maybe you had an appointment immediately to make or something. If you can afford to delay that and go through with this act of obedience, I believe as your humble brother in Christ and as a co-worker together with the prophet of God, I believe it'd be your best choice to make that decision now.
God grant.
And grant that you will come and take your place among the others who are to be baptized, that you might be in this number making up the little flock. Oh, it's wonderful, isn't it? To be one of His and to be according to His word. Shall we all stand together as we get ready to dismiss? Next Sunday, Brother Branham will be back with us again. Let's remember that announcement. He said he would be down here tonight, but he didn't say he would minister. However, my desire is always that he would. And he need have no fear about where I stand on that. My desire is most certainly, knowing that the message and the office that he has is a great need of this last day. I give place any time. I'll say this in the presence of the people and him. I am gladly give place.
Yes.
Any time.
Amen.
In any service.
Amen.
For this important
yes.
message,
Amen.
Which I believe
yes.
because God spoke through two of us this morning, signifying the sign of this. And I am delighted to have the privilege of being able to just be one that can give place to it.
Yes.
And I would tonight that I would be glad to if our brother and God's servant and prophet was so disposed to do so, I most gladly will give place to it. Just only at His word, whatever He feels. But He has spoken, and we'll just rest the conclusion of the whole thing in the hands of Almighty God.
आप एक सच्चे भाई से इससे अधिक मीठा कुछ भी नहीं मांग सकते, या आप मांग सकते हैं? कारण कि मैं देखो मित्रों, मैं जानता हूं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं, आप भाई नेविल से प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर के सारे लोगों से प्रेम करते हैं, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। यदि कोई समय रहा है कि हमें एक दूसरे से अधिक प्रेम करना चाहिए, तो ये आज है। हमें एक साथ इतने नजदीक होना चाहिए भाई कि हम सच्चे लहू के भाइयों और बहनों से बढ़कर होते हैं। यही वो प्रेम है जो हमारे हृदय में एक दूसरे के प्रति होना चाहिए। आदर और सम्मान सर्वोच्च, और मैं इसे पसंद करता हूँ। मैं इस वास्तविक चीज को पसंद करता हूँ। और यहाँ भाई नेविल और भाई हिगन बॉथम, भाई मैं विश्वास करता हूँ कि वह भाई पंक थे। ये यहाँ तक ऐसा नहीं लगा कि यह वो थे जिसने वहाँ पहले उस संदेश को दिया। वो आकर वे संदेश परमेश्वर की ओर से आए थे। मित्रों, उन्होंने वास्तव में प्रचार किया। जिस किसी के पास आत्मिक परख है वो इसे समझते हैं। लेकिन असल बात यह है, यहाँ आने का कारण मैं भाई नेविल को बहुत पसंद करता हूँ, जो कि मैं ऐसा सोचता हूँ। आप जानते हैं मैं कुछ भी कहना पसंद नहीं करता जब तक कि मेरे पास वास्तव में आपको बताने के लिए परमेश्वर की ओर से कुछ नहीं होता है, समझे। और यह मेरे हृदय में लगभग 2 या 3 दिन पहले आया था और पिछली रात तक मैंने इसकी ओर अधिक नहीं देखा। कुछ वचनों में से होकर गया। यही कारण है कि मैं इसे प्रचार करने आया। यह अब मेरे हाथ से बाहर है, आप समझे। आप इसके साथ जो कुछ भी करते हैं यह आप पर है, आप देखिए। लेकिन यह मेरे हाथ से बाहर है। लेकिन भाई नेविल और मैं, हम बस इसी तरह से हैं। यदि मैं यहाँ पर आता हूँ बस कभी कभार बोलने के लिए और ऐसा ही कुछ, और भाई नेविल के पास परमेश्वर की ओर से एक संदेश होता है तो मैं सीधे बैठ जाता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, मैं हमेशा ही परमेश्वर के संदेश को स्थान देता हूँ। देखा, इसी तरह से हम एक दूसरे के लिए करते हैं। और यही कारण है कि मैं कहता हूँ कि मैं, यदि परमेश्वर मुझे कुछ भी नहीं देता है तो हो सकता है बस ऐसे ही बोलने के लिए। और यदि परमेश्वर भाई नेविल को कुछ भी देता है, और मैं यहाँ रविवार सुबह पुलपिट पर होता हूँ, रविवार की रात जब भी ऐसा अवसर होता है, भाई नेविल बस वे एक भाई की तरह ही रहेंगे। वह मेरे पास आकर कहते हैं, भाई ब्रैनम, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर के सेवक हैं, लेकिन प्रभु ने मुझे अभी एक संदेश दिया है, आप ऐसा करेंगे क्या, आप नहीं करेंगे? जी हाँ श्रीमान, मैं उसके साथ भी ऐसा ही करूँगा। यदि वो बोलने जा रहे हैं, मैं कहूँगा, भाई नेविल, क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? परमेश्वर ने मुझे एक संदेश दिया है, मुझे इसे ठीक अभी लोगों को देना है। और वो भाई नेविल सीधे रास्ते से हट जाते हैं। या तो हम में से एक दूसरे के लिए ऐसा ही करेंगे। देखा, इसी तरह से हम करते हैं। और फिर यदि मेरे पास कोई विशेष चीज नहीं है तो मैं उसे प्रचार करते हुए सुनना पसंद करता हूँ। मैंने उसे सुना है, कितने लोगों ने उन्हें सुना। पिछले रविवार की रात को मैं आपको बताता हूँ, क्या ही अद्भुत संदेश था। यह ठीक इसमें जुड़ता है जो सुबह को कहा गया था। और लोगों, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास परमेश्वर का पर्याप्त वचन है। ये आपको निश्चित रूप से सही जीना चाहिए और सही होना चाहिए। परमेश्वर अब आपको आशीष दे, भाई नेविल।